आगे सबक देखिए भाई। काला व इन हुफिरा लहा फिर रजमी जाजली अन्नहु अलैहि सलातु व सलामु हफरा लिल गामिदियति रजी अल्लाह तआला अन्हा इला सदवतिहा وحفر علي رضي الله تعالى عنه لشراحة الحمدانية وإن ترك لا يضره لأنه لم يأمر بذلك وهي مستورة بثيابها والحفر أحسن لأنه أستر। भाई गुज़श्ता सबक में فصل في كيفية الحد وإقامته हमने शुरू की थी। साहिब हिदाया ने आपको हद कायम करने का तरीका बतलाया कि अगर जानी जो है वो मोहसन है तो उसको रजम किया जाएगा, और मैंने बतलाया था कि मोहसन जो है रजम के अंदर, रजम के मामले में मोहसन उसको कहते हैं जिसमें सात चीजें पाई जाएं, सात शर्तें हैं भाई। एक ये कि वो आजाद हो, आकिल हो, बालिग हो, मुसलमान हो, उसने निकाह सहीह किया हो, और फिर उसके बाद बीवी से उसने सोहबत भी की हो, और बीवी भी इसी की तरह मोहसना हो भाई। तो फिर इस सूरत के अंदर अगर जानी मोहसन है तो फिर उसको रजम किया जाएगा यहां तक कि वो मर जाए। और दलील इसकी यह है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने हजरत माइज रजी अल्लाह तआला अन्हु को रजम फरमाया था और वो मोहसन थे। और इसी तरह एक हदीस के अंदर आता है कि किसी मुसलमान का खून हलाल नहीं है मगर तीन वजह से, और उनमें से एक वजह जो है मोहसन होने के बाद जिना करना है, और दूसरी वजह जो है इस्लाम के बाद मुर्तद होना, और तीसरी वजह जो है किसी को नाहक कत्ल कर देना। और नीज इस पर सहाबा का इजमा है कि जब जानी मोहसन हो तो उसको रजम किया जाएगा। चुनांचे रजम के लिए काजी जो है इस जानी को खुले मैदान में लेकर निकलेगा, और अगर ये जिना गवाहों से साबित हुआ है तो गवाह जो है वो रजम की इब्तिदा करेंगे। और मैंने आपको बतलाया था कि गवाहों का इब्तिदा करना ये शर्त है, और शर्त है तो मशरूत है, शर्त नहीं तो मशरूत भी नहीं। लिहाजा अगर गवाहों ने रजम से इनकार कर दिया तो इसका मतलब यह है कि ये रुजू कर रहे हैं अपनी गवाही से, लिहाजा हद साकित हो जाएगी। लेकिन इसकी वजह से खुद इन गवाहों पर हद कज़्फ जारी नहीं की जाएगी, इसलिए क्योंकि उन्होंने जुबान से रुजू नहीं किया बल्कि सिर्फ उनके फेल को हमने दलील बना दिया। और इसी तरह अगर ये गवाह गायब हो गए या ये गवाह जो है मर गए तो इस सूरत में भी हद साकित हो जाएगी। और अगर ये गवाह बीमार हैं, इतने बीमार हैं कि रजम कर ही नहीं सकते, तो फिर भी इनको वहां लाया जाएगा, और फिर वहां पर जो हाकिम या काजी है वो इब्तिदा करेगा रजम की इनकी मौजूदगी में। तो गवाहों से रजम की इब्तिदा करवाना यह हीला है कि किसी तरह हद को टाल दिया जाए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इदरउल हुदूद बिशुबहाती, कि हुदूद को शुबों की वजह से टाल दिया करो, उनको छोड़ दिया करो। तो लिहाजा बाज औकात कोई आदमी गवाही देते हुए तो जुर्रत कर लेता है और झूठी गवाही दे देता है, लेकिन जब रजम का मौका आया, अब एक इंसानी जान जा रही है और उसको पत्थर मार मार कर कत्ल किया जाएगा, तो उसको खौफ आ जाता है और उस वक्त वो रुजू कर लेता है भाई। और अगर जानी का जीना जो है वो इकरार से साबित हुआ है तो फिर जो हाकिम है, जो काजी है, वो इब्तिदा करेगा, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम ने गामिदिया रजी अल्लाह ताला अन्हा को चने के दाने के बराबर एक छोटी सी कंकरी मारकर रजम की इब्तिदा फरमाई थी, और उन्होंने भी जीना का एतराफ किया था। उसके बाद साहिब हिदाया ने यह भी बतलाया कि रजम की वजह से जब मुजरिम मर जाए तो फिर उसको गुसल भी दिया जाएगा, कफन भी दिया जाएगा, उसकी नमाज जनाजा भी अदा की जाएगी भाई। और अगर वो जानी मोहसन नहीं है अलबत्ता आजाद है तो फिर उसकी हद जिना जो है वो 100 कोड़े हैं। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं الزانیت والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئت جلدہ, کہ زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ. اور یہ آیت تو مطلق ہے لیکن محسن کے حق میں یہ منسوخ ہے ایک دوسری آیت کی وجہ سے جو علماء ذکر فرماتے ہیں کہ الشیخ و الشیخت اذا زنایا فرجموہما البتتا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم, کہ یہ بھی آیت ہے البتہ اس کی تلاوت منسوخ ہو گئی لیکن اس کا حکم ابھی بھی باقی ہے. تو یہ آیت جو ہے یہ ناسخ ہے محسن کے حق میں اس حکم کے لیے جو الزانیت والزانی آیت کے اندر ذکر کیا گیا ہے. اور نیز میں نے بتایا تھا یہ آیت بھی ناسخ ہے اور نیز حضور علیہ السلام کا عمل بھی ناسخ ہے, آپ نے بھی محسن کو کوڑے نہیں لگائے بلکہ اس کو رجم فرمایا. اور پھر یہ بھی بتلایا آپ کو کہ یہ ضرب جو لگائی جائے گی یہ درمیانے درجے کی ضرب ہوگی, نہ بہت سخت ضرب ہو اور نہ ہی بہت ہلکی ضرب ہو بلکہ متوسط درجے کی ضرب, حتیٰ کہ کوڑا لگانے والا اپنے ہاتھ کو سر سے اونچا نہیں کرے گا بھائی. اور اگر کوڑے پر کوئی گرہیں پڑی ہوئی ہیں یا اس کی شاخیں وغیرہ ہیں تو ان کو ہٹا دیا جائے گا. اور پھر اس کے بعد صاحب ہدایہ نے یہ بھی بتلایا کہ اس ضرب کی بنیاد سختی پر ہے, لہذا مرد کو یہ ضرب لگائی جائے تو اس کی قمیص اتار لی جائے گی, کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی کا حکم دیتے تھے بھائی. جبکہ اس کے مقابلے میں حد قذف جو ہے اس کے اندر جب ضرب لگائی جائے گی تو وہاں مرد کی قمیص نہیں اتاری جائے گی. اور پھر یہ بھی بتایا صاحب ہدایہ نے کہ یہ ضربیں ایک ہی عضو پر نہیں لگائی جائیں گی, ورنہ تو وہ عضو تلف ہو جانے کا خطرہ ہے بھائی. مثلا ہاتھ پر مار رہے ہیں یا پاؤں پر مار رہے ہیں تو وہ ہاتھ یا پاؤں تو شل ہو جائے گا بھائی, ضائع ہو جائے گا, لہذا پورے بدن پر پھیلا کر ضربیں لگائی جائیں گی. البتہ سر چہرے اور شرمگاہ پر یہ ضربیں نہیں لگائیں گے, کیونکہ شرمگاہ پر ضرب لگائیں گے وہ تو موت تک پہنچا دے گا, اور سر اور چہرہ یہ تو مجمع حواس ہیں, ان میں تمام حواس انسان کے جمع ہیں, اور اسی طرح چہرہ جو ہے وہ حسن کا مرکز ہے, تو ان پر ضربیں نہیں لگائیں گے. جبکہ امام یوسف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ سر پر بھی ایک ضرب لگائی جائے گی بھائی. پھر یہ بھی بتلایا صاحب ہدایہ نے کہ حدود کے اندر جو ضربیں لگائی جائیں گی وہ مرد کو کھڑا کر کے اس کو ضربیں لگائی جائیں گی اور عورت کو بٹھا کر ضربیں لگائی جائیں گی بھائی. اور اگر غلام پر حد زنا ثابت ہو گئی تو پھر اس صورت میں غلام کو آزاد کے مقابلے میں نصف مقدار کی سزا دی جائے گی, یعنی 50 کوڑے لگائے جائیں گے بھائی. جبکہ غلام یا باندی کو زنا کی وجہ سے رجم نہیں کیا جائے گا, کیونکہ رجم کے لیے محسن ہونا ضروری ہے, اور محسن کے اندر ایک شرط یہ تھی کہ وہ آزاد ہونا چاہیے بھائی. تو غلام اور باندی ان کو صرف کوڑے لگائیں گے اور وہ بھی نصف مقدار یعنی 50 کوڑے لگائے جائیں گے. اور پھر یہ بھی بتلایا کہ عورت کو جب حد زنا لگائی جائے گی تو اس نے اگر کوئی موٹے کپڑے پہنے ہوئے ہیں یعنی کوٹ وغیرہ یا سویٹر ہے یا پوستین کوئی پہنی ہوئی ہے تو وہ چیزیں اتار لی جائیں گی اور باقی اسی طرح کپڑوں کے اندر اس کو زمین پر بٹھا کر یہ ضربیں لگائی جائیں گی بھائی. اب آئیے آج کے سبق پر. قال وَإِنْ حُفِرَ لَهَا فِي الرَّجْمِ جَازَ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حَفَرَ لِلْغَامِدِيَّةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا إِلَى صَدْوَتِهَا وحفر علي رضي الله تعالى عنه لشراحة الحمدانية. یاد رکھو عورت کو اگر رجم کیا جا رہا ہے تو بہتر یہ ہے اس کے لیے گڑھا کھودا جائے اور پھر اس گڑھے کے اندر سینے تک اس کو دبا دیا جائے اور پھر اس کے بعد اسے رجم کیا جائے, کیونکہ اس میں عورت کے لیے ستر زیادہ ہے بھائی. تو کہتے ہیں وَإِنْ حُفِرَ لَهَا فِي الرَّجْمِ جَازَ, اور اگر عورت کے لیے گڑھا کھود دیا گیا رجم کے اندر جازہ تو یہ جائز ہے. لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حَفَرَ لِلْغَامِدِيَّةِ إِلَى صَدْوَتِهَا, اس لیے کیونکہ حضور علیہ السلام نے گڑھا کھودا لِلْغَامِدِيَّةِ قبیلہ غامد کی عورت کے لیے إِلَى صَدْوَتِهَا اس کی چھاتی تک. وَحَفَرَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ لِشُرَاحَةِ तल हमदानियती, और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो ने भी शुराह हमदानिया के लिए गड़ा खोदा। शुराह हमदानिया भाई ये कोई औरत थी, इन्होंने हजरत अली के जमाने में इन्होंने भी एक एतराफ किया था जिना का कि मुझ पर हद लगाकर मुझे पाक कर दिया जाए, तो इनके लिए भी हजरत अली रजी अल्लाह तआला उन्होंने गढ़ा खुदवाया था भाई। तो कहते हैं वहां फर अली रजी अल्लाह तआला अन्हु लिशुराहत अलहमदानियति, और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने भी गड़ा खोदा था शुराह हमदानिया के लिए। व इन तुरिका ला यज़ुर्रुहू, और अगर इस गड़ा खोदने को तर्क कर दिया गया ला यज़ुर्रुहू, तो ये इस रजम को कोई नुकसान नहीं देता, इसकी वजह से रजम में कोई नुकसान नहीं आया भाई। तो कहते हैं वह इन तुरिका ला यज़ुर्रुहू, और अगर गड़ा खोदने को तर्क कर दिया गया तो ला यज़ुर्रुहू, यह भी कोई नुकसान नहीं देता। लिअन्नहु अलैहि सलातु वस्सलामु लम यअमुर बिज़ालिका, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम ने इसका हुक्म नहीं दिया। गड़ा खोदना कोई लाजिम नहीं है, अगर छोड़ दिया, अगर गड़ा ना भी खोदा तो कोई हर्ज नहीं, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम ने इसका हुक्म नहीं दिया। याद रखो शारहीन यहां फरमाते हैं कि साहिबे हिदाया के कलाम के अंदर यहां तनाकुज है, क्योंकि पिछली सतर में ही उन्होंने फरमाया लिअन्नहु अलैहि सलातु वस्सलामु हफ़रा लिल गामिदियति रजी अल्लाह तआला अन्हा, कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने गामिदिया के लिए गड़ा खोदा, तो खोदने की निस्बत हुजूर की तरफ है, लेकिन यह बात जाहिर है कि हुजूर ने खुद गड़ा नहीं खोदा बल्कि सहाबा को हुजूर ने हुक्म दिया, लेकिन हुजूर की तरफ खोदने की निस्बत इसलिए की क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम हुक्म देने वाले थे, और आप पढ़ चुके हैं कि फेल की निस्बत आमिर की तरफ कर दी जाती है। तो मालूम हुआ एक सतर पहले साहिबे हिदाया ने बतला दिया कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने गड़ा खोदने का हुक्म दिया था, और अगली सतर में फरमा रहे हैं लिअन्नहु अलैहिस्सलातु वस्सलामु लम यअमुर बिज़ालिका, कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने इसका हुक्म नहीं दिया। तो ये तो दोनों बातों में तनाकुज है, पिछली सतर से पता चला हुजूर ने गड़ा खोदने का हुक्म दिया था गामिदिया के लिए, और यहां फरमा रहे हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने गड़ा खोदने का हुक्म नहीं दिया। तो शारहीन फरमाते हैं यहां साहिबे हिदाया से जुहूल हो गया, क्योंकि एक सतर पहले ही तो उन्होंने कहा है कि हुजूर ने हुक्म दिया था, और अब फरमा रहे हैं कि हुजूर ने हुक्म नहीं दिया। तो बाज उलमा ने फिर उसका यह जवाब दिया कि लम यअमुर से मुराद है लम यूजिब भाई, हुजूर अलैहिस्सलाम ने इसका हुक्म नहीं दिया, यानी हुजूर ने इसको वाजिब नहीं फरमाया, क्योंकि अमर जो है वो वजूब के लिए आता है, उसके जरिए किसी पर किसी काम को लाजिम किया जाता है। तो ये है अमर का हकीकी माना। तो यहां पर लम या अमर किस माना में है, आई लम यूजिब हु, कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने इसको वाजिब नहीं फरमाया। तो कहते हैं वह इन तुरी का ला यज़ुर्रुहू, और अगर इस गड़ा खोदने को तर्क कर दिया गया तो भी यह कोई नुकसान नहीं देता इस रजम को। लिअन्नहु अलैहि सलातु वस्सलामु लम यअमुर बिज़ालिका, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम ने इसका हुक्म नहीं दिया, यानी इसको वाजिब करार नहीं दिया। वही मस्तूरतुम बिसियाबिहा, और यह औरत भी छुपी हुई है बिसियाबिहा अपने कपड़ों के साथ। अकली दलील भी जिक्र फरमा रहे हैं साहिबे हिदाया कि गड़ा खोदना कोई जरूरी नहीं है, गड़े की वजह से सतर ज्यादा होना था, लेकिन अगर गड़ा नहीं है तो भी कोई हर्ज नहीं, क्योंकि इस औरत ने कपड़े पहने हुए हैं, इस कपड़ों के अंदर यह मस्तूर है, लिहाजा गड़ा खोदना कोई जरूरी नहीं है। तो कहते हैं वही है मस्तूर तुम भी सिया बिहा, और ये औरत जो है वो भी छुपी हुई है अपने कपड़ों के साथ। वल हफरु अहसनु, और गड़ा खोदना बेहतर है। लिअन्नहु अस्तरु, क्योंकि उसमें ज्यादा सतर है औरत के लिए। वयुहफरु इला सदरी लिमा रवैना, और ये गड़ा खोदा जाएगा सीने तक। लिमा रवैना, उस हदीस की वजह से जो हमने रिवायत कर दी कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने गामिदिया के लिए गड़ा खुदवाया था इला सदवतीहा, उसके सीने तक। आगे देखिए वला युहफरु लिर्रजुली, और मर्द के लिए गढ़ा नहीं खोदा जाएगा। लिअन्नहु अलैहि सलातु वस्सलामु मा हफरा लिमाइज़िन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम ने माइज रजी अल्लाह तआला अन्हो के लिए गड़ा नहीं खोदा, वली अन्ना मबनल इकामति अला तशहीर फिर रिजाली, और इसलिए क्योंकि हद कायम करने की बुनियाद अला तशहीर वो तशहीर पर है, फिर रिजाली मर्दों में, मर्दों में जो हद कायम की जाती है उसकी बुनियाद तशहीर पर है कि उसकी ज्यादा से ज्यादा शोहरत हो, और ज्यादा शोहरत जो है वो उस मर्द को खड़ा करके उसको रजम करने में है, गड़ा खोदकर उसमें दबाने में तशहीर नहीं है भाई। तो कहते हैं वली अन्न मबनल इकामति अला तशहीर फिर रिजाली, और इसलिए क्योंकि मर्दों के अंदर हद कायम करने की बुनियाद तशहीर पर है, व रबतु वल इमसाकु गैरु मशरूइन, रबत भाई रबता यरबितु, रबत का माना है बांधना और इमसाक का माना है रोकना। कहते हैं वह रबतु वल इमसाकु गैरु मशरूइन, और मर्द को बांधना या और उसको रोकना गैरु मशरूइन, ये गैर मशरू है, ये जायज नहीं है भाई। मर्द को खड़ा करके उसको कोड़े लगाए जाएंगे, मर्द को बांधना या उसको रोकना यानी गढ़ा वगैरह जब खोद लेंगे वह भाग भी नहीं सकता, तो मर्द को बांधना या रोकना यह गैर मशरू है, यह जायज नहीं है भाई। आगे देखिए वला युकीमुल मौलल हद अला अब्दिही इल्ला बिइज्निल इमाम। याद रखो इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि आका अपने गुलाम पर खुद भी हद कायम कर सकता है, आका अपने गुलाम पर खुद भी हद कायम कर सकता है, काजी के पास जाने की या काजी से इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है भाई। जबकि हम कहते हैं कि नहीं, आका अपने गुलाम पर काजी और हाकिम की इजाजत के बगैर खुद हद कायम नहीं कर सकता। कहते हैं वला युकीमुल मौलल हद्दा, और आका जो है हद कायम नहीं कर सकता अला अब्दिही अपने गुलाम पर, इल्ला बिइज्निल इमामी मगर हाकिम की इजाजत से। वकाल शाफियु रहिमहुल्लाहु ताला रहमतन वासिअ, और इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं लहू अन युकीमहू, आका के लिए जायज है कि वो गुलाम पर यह हद कायम कर सकता है। लिअन्न लहू विलायतन मुतलकतन अलैहि कल इमामी, इसलिए क्योंकि आका को मुतलक विलायत हासिल होती है अपने गुलाम पर, कल इमामी जैसे कि हाकिम है, जैसे हाकिम को लोगों पर विलायत हासिल होती है इसी तरह आका को भी अपने गुलाम पर मुतलकन विलायत हासिल है, बल औला बल्कि आका की ज्यादा विलायत है भाई, आका की विलायत ज्यादा है, इसलिए क्योंकि आका अपने गुलाम के अंदर वो तसरुफात भी कर सकता है जो हाकिम भी नहीं कर सकता, यानी आका जब चाहे अपने गुलाम को बेच सकता है, चाहे तो किसी और को हिबा वगैरह कर सकता है, लेकिन हाकिम के लिए तो जायज नहीं है कि किसी दूसरे के गुलाम को बेचे या किसी को हिबा करे भाई। तो मालूम हुआ आका को अपने गुलाम पर हाकिम की तरह विलायत हासिल है, बल्कि उससे भी बढ़कर विलायत हासिल है, लिहाजा जैसे हाकिम के लिए लोगों पर हद जारी करना जायज है तो आका के लिए भी अपने गुलाम पर हद जारी करना जायज है। तो कहते हैं लिअन्न लहू विलायतम मुतलकतन अलैही, इसलिए क्योंकि आका को अपने गुलाम पर मुतलक विलायत होती है, कल इमामी इमाम की तरह, बल औला बल्कि उससे बढ़कर भाई। लिअन्नहु यमलिकु मिन अत्तसर्रुफ फीहि मा ला यमलिकुहुल इमाम, लिअन्नहु यमलिकु मिन अत्तसर्रुफ फीहि, इसलिए क्योंकि आका अपने गुलाम में ऐसे तसर्रुफ का मालिक है, मा ला यमलिकुहुल इमाम, के जिसका इमाम भी मालिक नहीं, यानी आका उसको बेच सकता है या हिबा कर सकता है। कहते हैं लिअन्नहु यमलिकु मिन अत्तसर्रुफ फीहि, इसलिए क्योंकि आका अपने गुलाम के अंदर ऐसे तसर्रुफ का भी मालिक है, मा ला यमलिकुहुल इमामु, के इमाम जिसका मालिक नहीं है। फसार का ताजीर, तो ये हद भी ताजीर की तरह हो गई, ये हद भी किसकी तरह हुई, ताजीर की तरह। और ताजीर, ताजीर का माना तो है सजा देना, और वो तो काजी की राय के सुपुर्द होती है, और बिल इतफाक आका अपने गुलाम को सजा दे सकता है, अगर गुलाम कोई गलती वगैरह करता है तो आका उसको सजा दे सकता है, यानी आका को ताजीर का इख्तियार है, आका को, तो जब आका को ताजीर का इख्तियार है तो यह हद भी किसकी तरह हो गई, ताजीर की तरह, तो आका को इस हद का भी इख्तियार होगा। तो कहते हैं फसारकत ताजीरी, तो यह हद भी ताजीर की तरह हो गई। वलना, अब हमारी दलील आ गई। वलना और हमारी दलील जो है कौलुहू अलैहि सलातु व सलाम, हुजूर अलैहि सलाम का कौल है, हुजूर ने फरमाया अरबाउन इलल वुलाती, अरबाउन इलल वुलाती, वुलात जमा है वाली की, वाली कहते हैं हाकिम को, अरबाउन इलल वुलाती, चार चीजें हाकिमों के सुपुर्द हैं, ये हदीस में आता है। आगे साहिब हिदाया फरमाते हैं वज़कर मिन हल हुदूदा, और इन चार चीजों में हुजूर ने हुदूद को भी जिक्र फरमाया, चार चीजें हाकिमों के सुपुर्द हैं और उनमें हुजूर ने हुदूद को भी जिक्र फरमाया। मालूम हुआ हद कायम करना सिर्फ हाकिम का काम है, लिहाजा आका अपने गुलाम पर हाकिम की इजाजत के बगैर हद कायम नहीं कर सकता। यह हाशिए में हदीस दी हुई है भाई, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अरबातुन इला सुल्तानी, चार चीजें बादशाह के सुपुर्द हैं, अस्सलातु वज़कातु वल्हुदूदु वल्किसासु। अस्सलातु नमाज भाई, नमाज कायम करना यानी इमामत करना, इमामत करना ये बादशाह का हक है, वो इमामत करेगा, वो नमाज पढ़ाएगा, या वो किसी को खुद मुकर्रर करे अपना नाइब तो वो नमाज पढ़ाएगा। इसी तरह जकात है, जकात वसूल करना ये बादशाह का हक है, और इसी तरह हुदूद है, हुदूद कायम करना बादशाह का हक है, इसी तरह किसास है, किसास कायम करना ये बादशाह का हक है भाई। तो अरबातुन इला सुल्तानी, चार चीजें बादशाह के सुपुर्द हैं, अस्सलात व जकात वल हुदूद वल किसास, नमाज जकात हुदूद और किसास भाई। और बाज हदीसों में किसास की जगह कजा का जिक्र भी है भाई, कि चौथी चीज क्या है, कजा यानी लोगों के दरमियान फैसला करना, कि बादशाह खुद फैसला करे या किसी को अपना नायब मुकर्रर करे फैसला करने के लिए, तो ये काजी मुकर्रर करना भी बादशाह के सुपुर्द है। अब देखिए किताब पर, वलना कौलुहू अलैहि सलातु व सलाम, और हमारी दलील हुजूर अलैहि सलाम का कौल है अरबाउन इलल वुलाती, चार चीजें हाकिमों के सुपुर्द हैं, वज़कर मिनहल हुदूदा, और इन चार चीजों में हुजूर अलैहि सलाम ने हुदूद को भी जिक्र फरमाया। वली अन्नल हद हकुल्लाह ताला जी, अब दूसरी दलील जिक्र कर रहे हैं साहिब हिदाया, वली अन्नल हद हकुल्लाह ताला, और इसलिए क्योंकि हद अल्लाह का हक है, ली अन्नल मकसद मिनहा, इसलिए क्योंकि हद के जरिए मकसद जो है इखला उल आलमी अनिल फसादी, वो आलम को खाली करना है फसाद से। इखला अखला युखली, इखला का माना खाली करना, लिअन अल मकसद मिनहा, इसलिए क्योंकि हद कायम करने से जो मकसद है इखला उल आलमी अनिल फसादी, वो आलम को खाली करना है फसाद से। वलिहादा ला यस्कुतु बि इस्कातिल अब्दी, और इसीलिए हद जो है वो साकित नहीं होती बंदे के साकित करने से। मैंने जिक्र किया था कि हद अल्लाह की तरफ से मुकरर है, किसी को माफ करने का इख्तियार नहीं है। तो कहते हैं वलिहादा ला यस्कुतु बि इस्कातिल अब्दी, और इसीलिए हद जो है बंदे के माफ कर देने से मुआफ नहीं होती। फयस्तौफीहि मन हुवा नाइबुन अनिश्शरई, फयस्तौफीहि, तो इस हद को वसूल करेगा मन हुवा नाइबुन अनिश्शरई, वो शख्स जो शरीयत की तरफ से नाइब है। वह हुवल इमामू औ नाइबुहू, और वो हाकिम है, औ नाइबुहू, या उस हाकिम का जो नाइब है। फिर तर्जमा देख लीजिए, कहते हैं वलिहादा ला यस्कुतु बि इस्कातिल अब्दी, और इसीलिए जो हद है ये किसी बंदे के साकित करने से साकित नहीं होती। फयस्तौफीहि मन हुवा नाइबुन अनिश्शरई, तो इस हद को वसूल करेगा वो शख्स जो शरीयत की तरफ से नाइब है। वह हुवल इमाम, और वो इमाम है यानी मुसलमानों का हाकिम यानी खलीफा है। औ नाइबुहू, या उस इमाम का जो नाइब है भाई। बिखिलाफ ताजीरी, बखिलाफ ताजीर के लिए अन्नहु हक्कुल अब्दी, क्योंकि वह बंदे का हक है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने इस हद को कियास किया था ताजीर पर, और ताजीर तो बिल इत्तिफाक आका के लिए जायज है, वो अपने गुलाम को सजा दे सकता है। हम कहते हैं नहीं, आप हद को ताजीर पर कियास नहीं कर सकते, क्योंकि हद हकुल्लाह है और ताजीर हकुल अब्द है, तो एक जैसी चीजों को एक दूसरे पर कियास किया जाता है, दो मुख्तलिफ चीजों को एक दूसरे पर कियास नहीं किया जाता। तो कहते हैं बेखिलाफ ताजीर, बखिलाफ ताजीर के लिए अन्नहु हकुल अब्दी, क्योंकि ताजीर जो है वह तो बंदे का हक है। वलिहादा युअज़्ज़रु सबी, और इसी वजह से बच्चे को ताजीर की जाती है यानी बच्चे को सजा دی جاتی ہے. وحق الشرع موضوع عنہ, اور حال یہ ہے کہ بچے سے شریعت کا حق اٹھا لیا گیا ہے. بھئی بچہ تو شرعی احکام کا مکلف نہیں ہے, لیکن بچے کو سزا دی جاتی ہے. والدین کیا کرتے ہیں, بچہ کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کو سزا دیتے ہیں. معلوم ہوا یہ تعزیر بندے کا حق ہے, یہ شریعت کا حق نہیں. اگر شریعت کا حق ہوتا پھر تو بچے کو سزا نہیں دی جا سکتی تھی, کیونکہ بچہ جو ہے وہ تو شرعی احکام کا مکلف نہیں ہے. بھائی تو یہ مانا ہے وَلِهَذَا يُعَذَّرُ الصَّبِيُّ, اور اسی لیے بچے کو تعزیر کی جاتی ہے, یعنی اس کو سزا دی جاتی ہے. وَحَقُّ الشَّرْعِ مَوْزُوعٌ عَنْهُ, اور حال یہ ہے کہ شریعت کا حق تو بچے سے اٹھا لیا گیا ہے, یعنی وہ تو شرعی احکام کا مکلف نہیں ہے. قال واحسان الرجم ان يكون حرا عاقلا بالغا مسلما قد تزوج امراه نكاحا صحيحا ودخل بها وهما على صفه الاحسان. اب احسان الرجم کی تعریف آ گئی متن کے اندر. بھائی تو صاحب قدوری احسان الرجم کی تعریف کر رہے ہیں, اور احسان کے ساتھ رجم کی قید بڑھا دی. احسان الرجم, وجہ یہ کہ ایک احسان القذف ہے. بھائی احسان القذف آپ نے پڑھا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص پر زنا کی تہمت لگا دے تو اس پر حد قذف جاری ہوتی ہے. لیکن یاد رکھو حد قذف میں ضروری ہے کہ جس شخص پر زنا کا الزام لگایا ہے وہ محسن ہونا چاہیے. وہ جیسے حد زنا کے اندر رجم اس شخص کو کیا جائے گا جو محسن ہوگا, تو یہ محسن اور ہے اور وہ قذف کے مسئلے میں محسن اور ہے. تو دونوں میں فرق کرنے کے لیے اضافت کر دیتے ہیں. رجم کے اندر جو محسن ہونا ہے اس کو کہتے ہیں احسان الرجم, اور قذف کے اندر جو محسن ہونا ہے اس کو کہتے ہیں احسان القذف. تو احسان الرجم میں نے آپ کو بتلایا تھا اس میں سات شرطیں ہیں کہ آزاد ہو, عاقل ہو, بالغ ہو, مسلمان ہو, صحیح نکاح کیا ہو. تو نکاح صحیح کے ذریعے نکاح فاسد کو نکال دیا. نکاح فاسد کے ذریعے اگر کوئی شخص کسی عورت سے صحبت کر لیتا ہے یہ محسن نہیں ہے, تو نکاح صحیح کیا ہو. اور چھٹی شرط یہ ہے کہ اس نکاح کے بعد بیوی سے صحبت بھی کی ہو. اور ساتویں شرط یہ ہے کہ خاوند اور بیوی دونوں صفت احسان پر ہوں. یعنی عورت بھی آزاد, عاقل, بالغ, مسلمان ہو, اس نے بھی نکاح صحیح کیا ہے, اور اس کے ساتھ اس نکاح صحیح کے بعد خاوند نے صحبت کی ہے. یہ ہے احسان الرجم بھائی. جبکہ احسان القذف جو ہے, احسان القذف کے اندر ان میں سے پہلی چار شرطیں ہیں, اور اس کے علاوہ ایک پانچویں شرط یہ ہے کہ وہ زنا سے پاک دامن ہو. کہ وہ پاک دامن ہو, مرد یا عورت جس پر زنا کا الزام لگایا گیا ہے. ایک آدمی نے دوسرے آدمی پر زنا کا الزام لگایا تو اس الزام لگانے والے کو حد قذف لگائی جائے گی, لیکن شرط یہ ہے کہ وہ جس پر الزام لگایا ہے وہ محسن ہو. یعنی وہ آزاد ہو, عاقل ہو, بالغ ہو, مسلمان ہو, اور زنا سے پاک دامن ہو. پھر دوہرائیں, احسان القذف کتنی چیزیں ہیں, پانچ. چار یہی ہیں اور پانچویں ہے کہ زنا سے پاک دامن ہو. پہلی شرط کیا, آزاد, پھر عاقل, بالغ, مسلمان, اور زنا سے پاک دامن ہو. لہذا ایک آدمی نے زنا کیا تھا اور اس پر زنا ثابت ہو گیا تھا اور اس پر حد زنا جاری ہو چکی ہے, اسے 100 کوڑے لگ چکے ہیں. اگر اس کو کوئی زانی کہتا ہے تو اب یہ زانی کہنے والے پر حد قذف نہیں آئے گی, کیونکہ وہ حقیقت بیان کر رہا ہے. یہ شخص بھی کیا ہے, حقیقت میں زانی ہے بھائی. تو اس نے ناپسندیدہ فعل اگرچہ کیا اس کو زانی کہا, لیکن بہرحال اس کی وجہ سے حد قذف نہیں لگے گی, کیونکہ وہ دوسرا شخص محسن نہیں ہے. وہ آزاد بھی ہے, عاقل بھی ہے, بالغ بھی ہے, مسلمان بھی ہے, لیکن وہ زنا سے پاک دامن نہیں ہے. یہ اسی طرح ایک شخص نے نکاح فاسد کر لیا, بغیر گواہوں کے نکاح کر لیا اور عورت سے صحبت بھی کر لی, یا کسی عورت سے عدت کے اندر نکاح کر لیا اور صحبت بھی کر لی, تو یہ نکاح فاسد ہے. اور نکاح فاسد تو باطل ہے, اس کا تو کوئی اعتبار نہیں ہے. تو یہ جو اس نے صحبت کی ہے یہ زنا ہے, اگرچہ اس پر حد جاری نہیں ہوگی, کیونکہ اس کا خیال ہے میں نے تو صحیح نکاح کیا ہے, لیکن ہے تو یہ زنا ہی. لہذا اس جیسے شخص کو بھی جس نے نکاح فاسد کے بعد اس عورت سے صحبت کی ہے, اس کو بھی اگر کوئی زانی کہہ دے گا तो ये जानी कहने वाले पर हद कजफ नहीं भाई, क्योंकि वो हकीकत बयान कर रहा है। अगरचे इसने बुरा लफ्ज कहा है, इस तरह उसे नहीं कहना चाहिए था, लेकिन बहरहाल हद कजफ इस पर लाजिम नहीं होगी क्योंकि वो एक हकीकत बयान कर रहा है। तो मालूम हुआ एहसानुर रजम के अंदर 7 शर्तें हैं और एहसानुल कजफ के अंदर 5 शर्तें हैं। 4 यही पहली 4 शर्तें और एक यह है कि वो जिना से पाकदामन हो। और ये जो पहली 4 शर्तें हैं ये वही शर्तें हैं जो गवाही के लिए जरूरी थी। आपने किताबुल निकाह के शुरू में पढ़ा था कि निकाह के इनकाद के लिए जरूरी है कि कम अज कम 2 गवाह उसमें मौजूद हों। उस निकाह में 2 गवाह होने चाहिए और गवाहों की क्या शर्तें जिक्र की थी? आजाद, आकिल, बालिग और मुसलमान हो गई। तो काल साहिब कुदूरी फरमाते हैं वह एहसानुर रजमी अय्यकूना हुर्रन आकिलन बालिगन मुस्लिमन। और एहसानुर रजम यह है कि वो शख्स आजाद हो, आकिल हो, बालिग हो, मुसलमान हो। قد تزوج امرأة نكاحا صحيحا और तहकीक इसने एक औरत से निकाह सहीह किया हो। ودخل بها और इसने उस औरत से सोहबत भी की हो। وهما على صفة الإحسان और इस हाल में कि वो मियां बीवी दोनों एहसान की सिफत पर हों, यानी दोनों मोहसन हों भाई। अब एक एक कैद का फायदा बतलाएंगे कि ये आकिल होने की शर्त क्यों है, बालिग होने की शर्त क्यों है, आजाद होने की शर्त क्यों है, मुसलमान होने की शर्त क्यों है, निकाह सही की शर्त क्यों है। तो ये सारी कैदें जो हैं इनके फायदे बतलाएंगे साहिब हिदाया। कहते हैं फल अक्ल वल बुलूग शर्तुन लि अहलियतिल उकूबती। तो अकल का होना और बालिग होना शर्तुन, ये शर्त है लि अहलियतिल उकूबती, सजा की अहलियत के लिए। सजा के अहल होने के लिए जरूरी है कि आकिल बालिग हो। अगर कोई मजनून है या कोई बच्चा है वो तो सजा का मुस्तहिक नहीं है। तो कहते हैं फल अक्लु वल बुलूग शर्तुन लि अहलियतिल उकूबती। तो अकल और बुलूग जो है वो शर्त है सजा की अहलियत के लिए। इजला खिताब दूनहुमा, इसलिए क्योंकि इनके अलावा तो खिताब नहीं है। खिताब भाई मैं पहले भी बयान कर चुका हूं, खिताब वो कलाम है जो गैर की तरफ मुतवज्जे होकर किया जाए, उसको क्या कहते हैं? खिताब। ये जो मैं आपके सामने तकरीर कर रहा हूं ये खिताब है, आपकी तरफ मुतवज्जे होकर मैं ये तकरीर कर रहा हूं। तो वो कलाम जो गैर की तरफ मुतवज्जे होकर किया जाए उसे खिताब कहते हैं। और यहां खिताब से मुराद अल्लाह और उसके रसूल का खिताब है। अल्लाह और रसूल शरई अहकाम का हुक्म देते हैं, तो वो अहकाम किन के लिए होते हैं? आकिल और बालिग के लिए भाई। तो मालूम हुआ खिताब किसके लिए है? आकिल और बालिग के लिए है, उनके अलावा यानी मजनून या बच्चे के लिए खिताब नहीं है। यह माना है इजला खिताब दूनहुमा, क्योंकि इन दोनों के अलावा तो खिताब नहीं है। वमा वरा अहुमा युश्तरतुल तकामुल जिनायति बिवासितति तकामुल निअमति। भाई आकिल बालिग होने की शर्त क्यों है? उसकी वजह तो साहिब हिदायत ने जिक्र कर दी। आगे फरमाते हैं कि इनके अलावा जो बाकी 5 शर्तें हैं वो इसलिए हैं ताकि जुर्म कामिल हो जाए। कामिल दर्जे का जुर्म है, और कामिल दर्जे का जुर्म तब होगा जब कामिल दर्जे की नियामतें मौजूद हैं। जब कामिल दर्जे की नियामतें मौजूद हैं फिर भी एक आदमी जुर्म करता है तो ये इसने बहुत बड़ा जुर्म किया, इसने कामिल दर्जे का जुर्म किया है, लिहाजा इसको सजा भी कामिल दर्जे की मिलनी चाहिए भाई, और इसको रजम करना चाहिए भाई। तो आकिल बालिग होने के अलावा तो खिताब ही नहीं, आकिल बालिग ही तो मुकल्लफ हैं, उन्हीं के लिए तो सारे शरई अहकाम हैं। जबकि इनके अलावा बाकी शर्तें जो लगाई गई एहसानुर रजम के अंदर वो इसलिए हैं ताकि नियामतें कामिल हो जाएं, और जब नियामतें कामिल होंगी उसके बाद जब जुर्म पाया गया तो वह जुर्म भी बड़ा ही कामिल दर्जे का है, तो लिहाजा उसमें सजा भी कामिल दर्जे की आएगी। तो कहते हैं वमा वर्रा अहुमा, और ये अकल और बुलूग के अलावा जो हैं युश्तरतु, उनकी शर्त लगाई गई है लि तकामुलिल जिनायति, जिनायत के कामिल होने के लिए, बिवासितति तकामुलिन नियामति, नियामत के कामिल होने के वास्ते से। इद कुफरानु नियामति यतगल्लजु इंद तकस्सुरिहा, इद कुफरानु नियामति, इसलिए क्योंकि नियामत की नाशुकरी जो है यतगल्लजु वो सख्त होती है, इंद तकस्सुरिहा नियामतों की कसरत के वक्त, जब नियामतों की कसरत है उस वक्त कोई नाशुकरी करता है तो ये सख्त नाशुकरी है भाई। कहते हैं इस कुफरान उन नेमती, इसलिए क्योंकि नेमतों की नाशुक्री जो है यतगल्लजु, वो सख्त होती है इंद तकसुरिहा, नेमतों की कसरत के वक्त, वहादिहिल अशिया मिन जलाइल नेअमी, और ये चीजें जो हैं ये बड़ी नेमतों में से हैं। आजाद होना, मुसलमान होना, फिर निकाह सही कर लेना, अल्लाह ने इतने असबाब दे दिए कि निकाह सही भी कर लिया, फिर उसके बाद बीवी भी अल्लाह ने सही दी कि उसके साथ इसने सोहबत भी कर ली, और फिर उसके बाद बीवी भी इसी की तरह, उसमें भी ये सारी सिफतें मौजूद थीं, तो ये सारी बड़ी बड़ी नियामतें हैं। इनकी वजह से अब अगर ये जुर्म करेगा तो वो जुर्म भी बड़े दर्जे का होगा। तो कहते हैं वहादिहिल अशिया उमिन जलाइल नेअमी, और ये जो चीजें हैं ये बड़ी नेअमतों में से हैं। वकद शुरिया रजम बिज़िना, और तहकीक रजम बिज़िना जो है उसको मशरू किया गया है, जिना की वजह से जो रजम है उसको मशरू किया गया है। इंदस्तिजमाइहा, इन चीजों के जमा होने के वक्त, जब ये सारी चीजें जमा हो जाएं उस वक्त जिना की वजह से रजम को मशरू किया गया है। फयुनातु बिही, तो इस इस्तिजमा पर इस हुक्म का मदार होगा, जिसमें ये औसाफ जमा होंगे तो उस पर ही रजम वाला हुक्म आएगा, और जिसमें इनमें से किसी एक वसफ के अंदर भी कमी आ गई तो मालूम हुआ नेमतों में कमी आ गई, जब नेमतों में कमी आ गई तो जुर्म के अंदर भी उसी के बकदर कमी आ गई, लिहाजा फिर उसको रजम नहीं किया जाएगा, फिर उसको कोड़े लगाए जाएंगे। फिर तर्जमा देख लीजिए, कहते हैं वकद शुरिया रजम बिज़िना इंदस्तिजमाइहा फयुनातु बिही, वकद शुरिया रजम बिज़िना, और जिना की वजह से रजम को मशरू किया गया है। इंदस्तिजमाइहा, इन चीजों के जमा होते वक्त, फयुनातु बिही, नाता या नातु के माने हैं मुतअल्लिक करना, वाबस्ता करना, एक चीज को दूसरी चीज के साथ मुतअल्लिक करना, उसके साथ जोड़ देना। फयुनातु बिही, तो इन चीजों के जमा होने के साथ ही रजम का ताल्लुक होगा, इन चीजों के साथ ही रजम का ताल्लुक होगा, यानी इन्हीं चीजों पर रजम का मदार होगा। अगर ये सिफात उस मर्द और औरत में मौजूद हैं तो फिर वो मोहसन हैं, उनको रजम किया जाएगा, और अगर ये सिफात उनमें मौजूद नहीं तो फिर वो मोहसन नहीं, लिहाजा उनको रजम भी नहीं किया जाएगा। फयुनातु बिही, तो इन्हीं चीजों के जमा होने पर रजम का मदार होगा, ये चीजें हैं तो रजम होगा, ये चीजें नहीं तो रजम भी नहीं। बिखिलाफी शरफ वल इल्मी, बखिलाफ शरफ और इलम के, शरफ भाई शरूफा यशरुफ शरफा व शराफतन, इसका माना है मुअज्जज होना, और अमूमन इससे मुराद जो है खानदानी हसब नसब होता है भाई, कोई किसी शख्स का खानदान बहुत बड़ा है तो ये जो खानदानी हसब नसब है इसको शराफत कहते हैं। तो यहां एतराज होता है कि ए साहिब हिदाया, आपने हमें बताया कि ये बड़ी नियामतें हैं, यानी आजाद होना, मुसलमान होना, निकाह सही वगैरह, ये बड़ी नियामतें हैं, हालांकि खानदानी शराफत भी तो बहुत बड़ी नियामत है, कोई किसी बड़े खानदान से ताल्लुक रखता है तो ये भी बड़ी अल्लाह की नियामत है भाई, और इसी तरह किसी शख्स को अल्लाह इलम नसीब फरमा देते हैं तो इलम भी बहुत बड़ी नियामत है। तो खानदानी शराफत और इलम जो है उनको इन शराइत के अंदर जिक्र नहीं किया गया, हालांकि उन्हें भी जिक्र करना चाहिए था। तो साहिब हिदायत जवाब देंगे कि हां आपकी बात ठीक है, खानदानी शराफत और इलम बड़ी नियामत है, लेकिन बहरहाल रजम के मामले में शरीयत ने इनका एतबार नहीं किया, रजम के मामले में शरीयत ने इनका एतबार नहीं किया, लिहाजा हम अपनी राय के जरिए शरई हुक्म पर इजाफा नहीं कर सकते। तो कहते हैं बिखिलाफ शरफी वल इल्मी, बखिलाफ खानदानी शराफत के और इलम के, लिअन्न शरअ मा वरदा बेअतबारिहिमा, इसलिए क्योंकि शरीयत वारिद नहीं हुई इन दोनों के एतबार के साथ, यानी शरीयत ने इन दोनों का एतबार नहीं किया रजम के मामले में। तो कहते हैं लिअन्न शरअ मा वरदा बेअतबारिहिमा, इसलिए क्योंकि शरीयत वारिद नहीं हुई इन दोनों के एतबार के साथ। व नस्बु शरअ बिर्रय मुतअज़्ज़िरुन, व नस्बु शरअ, और शरीयत को कायम करना यानी शरी अहकाम को साबित करना, बिर्रय राय के जरिए, मुतअज़्ज़िरुन ये मुतअज़्ज़िर है, ये मुमकिन नहीं, हम अपनी अकल के जरिए शरई अहकाम साबित करना शुरू कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। बल्कि शरीयत ने जिस चीज का जैसे हुक्म दिया है हमें उसी तरह उस पर अमल करना पड़ेगा। तो कहते हैं वनस्बु शरई बिर्राय मुताअज़्ज़िरुन, और शरीयत को कायम करना यानी शरी अहकाम को साबित करना बिर्राय मुताअज़्ज़िरुन, राय के जरिए यह मुताअज़्ज़िर है। आगे देखिए वली अनल हुर्रियत मुमक्किनतुम मिनन निकाह सहीह, यह दूसरी दलील आ गई। पहली दलील क्या थी कि अकल और बुलूघ के अलावा ये जो बाकी पांच चीजें हैं ये बड़ी बड़ी नियामतें हैं। जब नियामतें बड़ी हैं तो इनकी मौजूदगी में जुर्म किया है तो सजा भी बड़ी मिलेगी, यानी रजम किया जाएगा। अब दूसरी दलील दे रहे हैं कि अकल और बुलूघ के अलावा ये जो पांच चीजें हैं ये जिना से रोकने वाली हैं। आजाद होना, मुसलमान होना, निकाह सही का होना और बीवी के साथ सोहबत करना, और इसी तरह मियां बीवी दोनों का मोहसन होना, ये वो सारी चीजें हैं जो जिना को रोकने वाली हैं, जिना को रोकने का सबब हैं, जिना को रोकने का सबब है। क्योंकि जब आजाद है तो जिना की तरफ जाने की जरूरत नहीं, निकाह कर लो, आप जहां चाहे निकाह कर सकते हैं। और फिर जब निकाह सही कर लिया है तो निकाह सही का मुयस्सर आ जाना ये भी जिना से रोकने वाला है। जब निकाह सही कर लिया अब जिना की तरफ जाने की जरूरत नहीं। और इसी तरह बीवी के साथ सोहबत कर लेना, तो बीवी से जब सोहबत कर लेगा तो देखो हलाल तरीके से अपनी ख्वाहिश पूरी कर ली, लिहाजा ये चीज भी जिना से रोकने वाली है। इसी तरह उसके बाद मुसलमान होना, जब मुसलमान भी है तो गैर मुस्लिम भी जिना को हराम समझते हैं, जिना को बुरा कहते हैं। तो जब गैर मुस्लिम जिना को बुरा कहते हैं तो मुसलमान होने की हालत में तो जिना की हुर्मत और भी बढ़ गई भाई। तो लिहाजा मालूम हो मुसलमान होना यह भी जिना से रोकने वाला है। तो यह सारे असबाब हैं जिना से रोकने वाले। तो जब जिना से रोकने वाले इतने असबाब मौजूद हैं उसके बाद भी कोई शख्स जुर्म करे तो उसकी सजा भी सख्त होनी चाहिए भाई, इसलिए उसको फिर रजम किया जाएगा। तो कहते हैं वली अन अल हुर्रियत मुमक्किनत मिन अन निकाह सहीह, और इसलिए क्योंकि आजादी जो है मुमक्किनत वो कुदरत देने वाली है मिन अन निकाह सहीह, निकाह सही की आजादी जो है वो इंसान को कुदरत दे देती है, वो निकाह सहीह कर सकता है जहां चाहे, कोई उसको रोकने वाला नहीं है भाई। तो कहते हैं वली अन अल हुर्रियत मुमक्किनत मिन अन निकाह सहीह, और इसलिए क्योंकि आजादी जो है वो निकाह सही की कुदरत देने वाली है। वन निकाह सहीह मुमक्किन मिन अल वक्त अल हलाली, और निकाह सही जो है वो कुदरत देता है हलाल वती की। वल इसाबतु शिबाउम बिल हलाली, असाब युसीबु इसाबतन का माना है पहुंचना, मुराद है बीवी तक पहुंचना यानी उसे सोहबत करना। शिबा, शिबा उनका माना है शेर हो जाना, पेट का भर जाना। कहते हैं वल इसाबतु शिबाउम बिल हलाली, और बीवी तक पहुंच जाना यानी उसे सोहबत कर लेना। शिबाउम बिल हलाली, ये हलाल के जरिए शेर हो जाना है यानी हलाल के जरिए अपनी ख्वाहिश को पूरा कर लेना है। वल इस्लाम युमक्किनुहु मिन निकाहिल मुस्लिमती, और इस्लाम जो है इसको कुदरत देता है मुसलमान औरत से निकाह की। व युअक्किदु इतिकाद अल हुर्मती, और इस्लाम जो है वो पक्का कर देता है हुर्मत के इतिकाद को। यानी आम गैर मुस्लिम भी निकाह को हराम समझते हैं, बुरा समझते हैं, लेकिन इस्लाम तो जिना के हराम होने के एतिकाद को और भी ज्यादा पक्का कर देता है। तो कहते हैं वयुअक्किदु इतिकाद अल हुर्मती, और इस्लाम जो है जिना के हराम होने के एतिकाद को पक्का कर देता है। फयकूनुल कुल्लु मसजरतन अनिज जिना, मसजरा कहते हैं रुकावट का जरिया, रुकावट का जरिया, रोकने का सबब, दूर करने का सबब। फयकूनुल कुल्लु, तो ये सारी चीजें जो हैं मसजरतन, ये रोकने का जरिया है, ये दूर करने का जरिया है। अनिज जिना, जिना से, ये सारी चीजें जिना से रोकने का जरिया है भाई। वल जिनायतु बाद तवफुर जवाजिरी, जवाजिर जमा है जाजिर की, और जाजिर कहते हैं डांटने वाली चीज, धमकाने वाली चीज, धमकाने वाली चीज। तो कहते हैं वल जिनायतु बाद तवफुर जवाजिरी, और जुर्म का होना धमकाने वाली चीजों की कसरत के बाद, इतनी सारी धमकाने वाली और रोकने वाली चीजें मौजूद हैं, उसके बाद जुर्म करना अगलाजू, ये ज्यादा सख्त है, ये जुर्म ज्यादा सख्त है। तो कहते हैं वल जिनायतु बाद तवफुरी जवाजिरी अगलाजू, और धमकाने वाली चीजों के कसीर होने के बाद जुर्म करना अगलाजू, ये बड़ा सख्त है। व शाफियु रहमहुल्लाहु तआला युखालिफुना फी इश्तिरातिल इस्लामी, और इमाम शाफी रहमहुल्लाह वो हमारी मुखालिफत करते हैं इस्लाम की शर्त लगाने में। वकदा अबू यूसुफ रहमहुल्लाहु तआला फी रिवायतिन, और इसी तरह इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह एक रिवायत में, भाई इमाम शाफी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि मोहसन होने में इस्लाम शर्त नहीं है, उस शख्स या उसकी बीवी का मुसलमान होना शर्त नहीं है। और इसी तरह की एक रिवायत इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह से भी आई है, और वो दलील देते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने दो यहूदियों को जिना की वजह से रजम फरमाया था, और यहूदी देखो वो तो गैर मुस्लिम है लेकिन फिर भी हुजूर ने रजम फरमाया, मालूम हुआ रजम के अंदर इस्लाम की शर्त नहीं है। तो कहते हैं वह शाफियु रहमहुल्लाहु ताला युखालिफुना फी इश्तिरातिल इस्लामी, और इमाम शाफी रहमहुल्लाह हमारी मुखालिफत करते हैं इस्लाम के शर्त होने में। वकदा अबू यूसुफ रहमहुल्लाह फी रिवायतिन, और इसी तरह इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह एक रिवायत में, लहू मा, इन दोनों की दलील जो है, मा रुविया, वो हदीस है जिसको रिवायत किया गया है कि अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजम यहूदियैन कद ज़नया, कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने दो यहूदियों को रजम फरमाया, कद जनाया, जिन्होंने जिना किया था। कुलना, हम कहते हैं, कान दालिक बिहुक्म तौरात, हम जवाब देते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये जो यहूदियों को रजम फरमाया था वो तौरात के हुक्म से रजम फरमाया था। तो चुनाचे हुजूर अलैहिस्सलाम ने यहूदियों से पूछा था कि तुम्हारे यहां जिना की क्या सजा है तौरात के अंदर, तो उन्होंने रजम जिक्र किया था, तो उस तौरात के हुक्म की वजह से हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनको रजम करने का हुक्म दिया, लेकिन बाद में फिर यह हुक्म मनसूख हो गया और हुजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह के नाजिल करदा अहकाम के मुताबिक ही फैसला करने का हुक्म दिया गया। कुल ना, हम कहते हैं, का नजालिक बिहुक्म तौराती, कि ये यहूदियों को रजम करना तौरात के हुक्म से था। सुम्मा नुसिखा, फिर इसको मनसूख कर दिया गया। हाशिए के अंदर दलील जिक्र की गई है नसख की, कि कुरान में अल्लाह फरमाते हैं वह अनिहकुम बैनहुम बीमा अनजलल्लाह, और इन लोगों के दरमियान फैसला फरमाइए बीमा अनजलल्लाह, उस चीज के साथ जो अल्लाह ने नाजिल फरमाई है। तो इस आयत के जरिए इस किस्म की चीजों को मनसूख कर दिया गया भाई, कि आइंदा जो भी आप फैसला लोगों में फरमाएं वो अल्लाह के नाजिल किए हुए अहकाम यानी कुरान के मुताबिक फरमाएं। तो कहते हैं सुम मनु सिखा, फिर इसको मनसूख कर दिया गया। यू अयदुहू कौलुहू अलैहि सलातु वस्सलाम, इस नसख की ताईद होती है हुजूर अलैहिस्सलाम के इस कौल से कि आपने फरमाया मन अशरक बिल्लाहि फलैसा बिमुहसनिन, जिसने अल्लाह के साथ शरीक ठहराया तो वो मोहसन नहीं है, जिसने अल्लाह के साथ शिर्क किया वो मोहसन नहीं है। आगे देखिए वल मुअतबरु फी दुखूल इलाज फिल कुबूल अला वजह यूजिबुल गुस्ला, भाई अब छठी शर्त आई थी कि निकाह सही के बाद खावंद बीवी से सोहबत भी कर ले, इस सोहबत करने से क्या मुराद है, तो अब बतला रहे हैं सोहबत का माना यह है कि कुछ ना कुछ दुखूल पाया जाए भाई। तो कहते हैं वल मुअतबरु फी दुखूली, और वो जो मुअतबर है दुखूल के अंदर, अल इलाज, वो दाखिल करना है, फिल कुबूली, औरत के अगले मकाम में, अला वजहिन, ऐसे तरीके पर, यूजिबुल गुस्ला, के वो गुसल को वाजिब कर दे। भाई आप पढ़ चुके हैं किताबु तहारत के अंदर कि गुसल उस वक्त वाजिब होगा जब इल्तिका खतानैन हो, यानी मर्द और औरत की शर्मगाहें मिल जाएं, और वहां आपने पढ़ा था कि शर्मगाहों से मिलना सिर्फ उनका मिलना मुराद नहीं है बल्कि कुछ ना कुछ दुखूल भी पाया जाए, तो वही दुखूल यहां भी मुअतबर है। बीवी के साथ सोहबत की है, कुछ मामूली सा भी दुखूल पाया गया तो ये मुअतबर है भाई, और इससे आदमी मोहसन हो जाएगा। तो कहते हैं फिर तर्जमा देख लीजिए, वल मुआतबर फी दुखूली, और वो चीज जो दुखूल के अंदर मुआतबर है, अल इलाज फिल कुबूली, वो औरत के अगले मकाम में दाखिल करना है, अला वजही यूजिबुल गुस्ला, ऐसे तरीके पर कि वो गुसल को वाजिब कर दे, व शरता सिफत अल एहसानी फी ही मा, सातवीं कैद की तशरीह कर रहे हैं। सातवीं कैद एहसान उर रजम के अंदर यह थी कि मियां बीवी दोनों सिफत एहसान पर हों, यानी दोनों मोहसन हों, अब उसकी तशरीह कर रहे हैं। कहते हैं वशारता सिफत अल एहसानी फी हिमा, और साहिब कुदूरी ने एहसान की सिफत की शर्त लगाई है, फी हिमा मियां बीवी दोनों के अंदर, इंद दुहूली सोहबत के वक्त, हत्ता लौ दखल बिल मनकूहतिल काफिरति अविल ममलूकति अविल मजनूनति अविल सबीयति ला यकून मुहसनन। भाई जब खावन बीवी से सोहबत करे तो उस वक्त मियां बीवी दोनों को मुहसन होना चाहिए, दोनों को मुहसन होना चाहिए, हत्ता कि अगर बीवी मुहसना नहीं है, यानी इस शख्स ने यहूदी औरत या ईसाई औरत से निकाह किया है और उसके अंदर तो इस्लाम की सिफत नहीं है, और इस्लाम तो जरूरी था मुहसन होने के लिए, तो इस शख्स ने अपनी ईसाई या यहूदी औरत के साथ सोहबत कर ली है, तो इस सूरत में यह आदमी मुहसन नहीं, हालांकि इस आदमी में बाकी तमाम शराइत पूरी हैं, यह आजाद भी है, आकिल भी है, बालिग भी है, मुसलमान भी है, इसने निकाह सही भी किया है इस यहूदी या ईसाई औरत से, और फिर इसने इसके साथ सोहबत भी की है, लेकिन सातवीं शर्त जो थी कि दोनों सिफत एहसान पर हों, वो नहीं पाई जा रही क्योंकि औरत मुसलमान नहीं है। तो इस सूरत में ये मर्द भी मोहसन न हुआ। जब ये मोहसन न हुआ, इस किस्म का आदमी अगर जिना करे और वो साबित हो जाए तो उसे रजम नहीं किया जाएगा। ये इसी तरह इस शख्स ने निकाह तो किया एक औरत से, लेकिन वो औरत जो है बांदी है, अब निकाह सही भी कर लिया है, सोहबत भी कर ली है, लेकिन दोनों सिफत एहसान पर नहीं है क्योंकि औरत जो है वो तो बांदी है, वो तो आजाद नहीं है, हालांकि मोहसन होने के लिए आजाद होना शर्त है। लिहाजा इस किस्म का आदमी जो अपनी मनकूहा बांदी के साथ सोहबत कर चुका है, अपनी मनकूहा बीवी जो बांदी है उसके साथ सोहबत कर चुका है, ये अगर जिना कर ले और जिना साबित हो जाए तो इसको भी रजम नहीं किया जाएगा क्योंकि मियां बीवी दोनों में सिफत एहसान नहीं। इसी तरह किसी शख्स ने निकाह किया है और इसकी बीवी नाबालिगा है और नाबालिगा होने की हालत में ये उससे सोहबत कर लेता है, तो इस सोहबत से भी ये शख्स, ये आदमी मोहसन नहीं बनेगा क्योंकि इसकी बीवी नाबालिगा है भाई। या इसी तरह एक शख्स ने एक औरत से निकाह किया और बाद में वो मजनूना हो गई और फिर इसके बाद इसने इसी मजनूना के साथ सोहबत कर ली, तो इस मजनूना के साथ सोहबत करने से भी ये शख्स मोहसन नहीं होगा क्योंकि बीवी गैर आकिला है, बीवी को भी मोहसना होना चाहिए था। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वशारता सिफत अल एहसानी फी हिमा इंद दुखूली, और साहिब कुदूरी ने मियां बीवी दोनों के अंदर एहसान की सिफत की शर्त लगाई है सोहबत के वक्त, हत्ता लौ दखल बिल मनकूहतिल काफिरति, यहां तक कि अगर किसी ने अगर सोहबत कर ली अपनी काफिरा मनकूहा से, अविल ममलूकति या अपनी ऐसी मनकूहा से जो ममलूका है यानी बांदी है, अविल मजनूनति या सोहबत कर ली अपनी ऐसी मनकूहा से जो मजनूना है यानी गैर आकिला है, अब इस सबीयती या सोहबत कर ली अपनी ऐसी मनकूहा से जो सबीया है यानी नाबालिगा है, ला यकूनु मोहसनन, तो यह शख्स मोहसन नहीं होगा क्योंकि मोहसन होने के लिए जरूरी था कि मियां बीवी दोनों में सिफत एहसान पाई जाए। वकदा इदा कान अज़्ज़ौजु मौसूफन बि इहदा हादिहि सिफाती, और इसी तरह होगा जब खावन जो है इन सिफात में किसी एक के साथ मौसूफ हो, यानी जैसे खावंद के मोहसन होने के लिए बीवी का मोहसना होना जरूरी, इसी तरह बीवी के मोहसना होने के लिए भी खावंद का मोहसन होना जरूरी है। लिहाजा एक औरत है, वो आजाद भी है, आकिल भी है, बालिग भी है, मुसलमान भी है, उसने निकाह सही भी किया हुआ है और उसके बाद खावंद ने उसके साथ सोहबत भी कर ली है, लेकिन इसका खावंद काफिर है या इसका खावंद नाबालिग है या इसका खावंद मजनून है या इसका खावन जो है वो गुलाम है, तो इन तमाम सूरतों के अंदर ये औरत भी मोहसना नहीं। लिहाजा इस किस्म की औरत भी अगर जिना कर ले और वो साबित हो जाए तो उसको रजम नहीं किया जाएगा बल्कि उसको कोड़े लगाए जाएंगे। बात समझ में आ गई। यहां पर इन्होंने आपको बतलाया कि अगर खावंद के अंदर इन सिफात में से कोई सिफत हुई, मसलन खावंद काफिर हुआ या गुलाम हुआ या मजनून हुआ या बच्चा हुआ, और इसने बीवी के साथ सोहबत कर ली, तो मुसलमान बीवी का मोहसना होना साबित नहीं होगा। तो यहां आपके जहन में इश्काल आएगा कि बीवी मुसलमान हो और खावंद काफिर हो, यह कैसे हो सकता है भाई? बीवी मुसलमान हो और खावंद गुलाम हो, यह भी हो सकता है। बीवी मुसलमान है बालिगा है और खावंद ना बालिग है, यह भी हो सकता है। बीवी मुसलमान है और खावंद जो है वो मजनून है, यह भी हो सकता है। लेकिन बीवी मुसलमान हो और खावंद काफिर हो, यह कैसे हो सकता है? तो याद रखना, फुकहा फरमाते हैं उसकी सूरत भी मुमकिन है। वो सूरत ये कि खावंद और बीवी दोनों जो हैं वो काफिर थे, खावंद और बीवी दोनों काफिर थे, और फिर उसके बाद बीवी मुसलमान हो गई। और आप जानते हैं जब बीवी मुसलमान हो जाए तो फिर उसके बाद काजी जो है खावंद पर इस्लाम को पेश करता है, और अगर खावंद इस्लाम से इनकार कर दे तो फिर इस सूरत के अंदर उनके दरमियान काजी जुदाई का फैसला कर देता है। तो अब सूरत यह है, मियां बीवी दोनों काफिर थे, फिर बीवी जो है मुसलमान हो गई, और अभी काजी ने जुदाई का फैसला नहीं किया, अभी काजी तक मसला नहीं पहुंचा, और उससे पहले ही इस खावंद ने बीवी से सोहबत कर ली, और उससे पहले तो अभी तक ये मियां बीवी हैं। जब तक काजी ने दोनों में जुदाई का फैसला नहीं किया तब तक तो ये मियां बीवी हैं। लिहाजा अब बीवी मुसलमान है और खावंद काफिर है, और दोनों में निकाह सही हो चुका है, और इस खावंद ने बीवी से सोहबत कर ली, तो इससे इस औरत का मुहसना होना साबित नहीं होगा, मोहसना होना साबित नहीं होगा। सूरत समझ में आ गई? तो यह माना है, वकदा इदा कान ज़ौज मौसूफन भी इहदा हादिहि सिफाती, और इसी तरह होगा जब खावन जो है वो मौसूफ हो इन सिफात में किसी एक के साथ, यानी उसमें कुफर हो या गुलामी हो या जुनून हो या वो नाबालिग हो। तो अगरचे अब निकाह भी मौजूद है, सोहबत भी मौजूद है, लेकिन यह औरत मोहसना नहीं बनेगी। तो अगर खावन में इन सिफात में से कोई सिफत मौजूद है, वही हुर्रतुम मुस्लिमतुन आकिलतुम बालिगतुन, और हाल यह है कि यह औरत तो आजाद है, मुसलमान है, आकिला है, बालिगा है, तो फिर भी यह मोहसना नहीं होगी। लिअन्न निअमत बिज़ालिका तकामलु, इसलिए क्योंकि नियमत जो है इन चीजों के जरिए कामिल होती है, और खावन के अंदर इन चीजों में से किसी चीज की कमी है, या बीवी में इन सिफात में से किसी सिफत के अंदर कमी है, तो नियमत कामिल नहीं। बीवी अगर काफिरा है या मजनूना है या नाबालिगा है या ममलूका है तो नियमत कामिल नहीं। अब क्यों नहीं कामिल? बीवी में अगर यह सिफात हो तो नियमत क्यों नहीं कामिल? अब उसकी वजह साहिब हिदायत आपको बतलाएंगे कि वजह यह, अगर बीवी मजनूना है तो मजनूना के साथ तो सोहबत करने से इंसान की तबीयत नफरत करती है भाई, लिहाजा नियमत कामिल नहीं। और अगर बीवी जो है नाबालिगा है तो नाबालिगा के साथ भी सोहबत करने की तरफ तबीयत कम ही रागिब होती है, क्योंकि जब वो नाबालिगा है तो खुद उसके अंदर शहवत नहीं है। तो मर्द के अंदर बेशक शहवत है लेकिन बीवी के अंदर तो शहवत नहीं है, लिहाजा उसकी शहवत न होने की वजह से तबीयत भी उसके साथ सोहबत करने की तरफ मायल नहीं होती। और नीज इसी तरह अगर वो मनकोहा जो है वो बांदी है तो उसकी तरफ भी सोहबत करने की तरफ तबीयत कम मायल होती है। वजह यह कि खावन को खौफ होता है कहीं ऐसा ना हो मेरी औलाद हो जाए इससे, अगर मेरी औलाद हो गई वो तो ममलूक होंगे, गुलाम और बांदियां होंगे भाई। तो इस वजह से बीवी अगर ममलूका है तो उसकी तरफ भी सोहबत करने की तरफ तबीयत कम माइल होती है। और इसी तरह अगर बीवी काफिरा है यानी यहूदिया या ईसाई है तो उसके साथ भी खावन का जोड़ और रबत सही नहीं, वहां भी सही मोहब्बत नहीं हो सकती। तो लिहाजा नियामत के कामिल होने के लिए जरूरी है कि बीवी जो है आजाद भी हो, आकिल भी हो, बालिग भी हो और मुसलमान भी हो भाई। तो कहते हैं लिअन्न नियमत बिदालिका तकामलु, इसलिए क्योंकि नियमत इसके जरिए कामिल होती है। इज़ तबउ युनफ्फिरु अन सोहबतिल मजनूनति, सोहबत का माना है साथ रहना। इज़ तबउ युनफ्फिरु अन सोहबतिल मजनूनति, इसलिए क्योंकि तबीयत जो है वो नफरत करती है मजनूना के साथ रहने से। वकल्लमा युरगबु फिस सबियति, और बहुत कम रगबत की जाती है नाबालिगा के अंदर। लिकिल्लति रगबतिहा, उसकी अपनी रगबत के कम होने होने की वजह से, क्योंकि उसको रगबत नहीं, उस वो बालिगा नहीं, उसमें शहबत नहीं है। वफिल मनकूहतिल ममलूकती, और इसी तरह वो मनकूहा जो ममलूका है यानी बांधी है उसके अंदर भी तबीयत कम रागिब होती है। हजारन अन रिक्किल वलदी, औलाद की गुलामी से बचने के लिए, औलाद की गुलामी से बचने के लिए ममलूका के साथ भी सोहबत करने की तरफ तबीयत कम माइल होती है। भाई वलतेलाफ माल इख्तिलाफी फी दीनी, इतलाफ का माना है जुड़ना भाई, वलतेलाफा और जोड़ नहीं होता, माल इख्तिलाफी फी दीनी, दीन में इख्तिलाफ की वजह से, यानी खावंद और बीवी में कामिल दर्जे का जोड़ और कामिल दर्जे की मोहब्बत नहीं हो सकती जब दोनों के दीन मुख्तलिफ हों भाई। वह अबू यूसुफ रहिमहुल्लाह ताला युखालिफुना फिल काफिरती, और इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह हमारी मुखालफत करते हैं काफिरा के अंदर। वो फरमाते हैं कि बीवी अगरचे काफिरा ही क्यों ना हो, यानी यहूदी या ईसाई ही क्यों ना हो, इस बीवी के साथ भी खावन सोहबत कर लेगा तो वह मोहसन बन जाएगा, वह मोहसन बन जाएगा। हम कहते हैं नहीं, वह मोहसन नहीं बनेगा। तो कहते हैं अबू यूसुफ रहमहुल्लाह ताला युखालिफुना फिल काफिरती, और इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह हमारी मुखालिफत करते हैं काफिरा के बारे में। वल हुज्जत अलैहि मा ज़करना, और दलील उनके खिलाफ वो है जो हमने जिक्र कर दिया कि जब बीवी काफिरा हो तो खावंद और बीवी में कामिल दर्जे का जोड़ और रबत नहीं आ सकता, कामिल दर्जे की मोहब्बत नहीं आ सकती, तो ये दलील है। और नीज हमारी दलील जो है वह कौलुहु अलैहि सलातु वस्सलाम, हुजूर अलैहि सलाम का ये कौल भी हमारी दलील है कि हुजूर ने फरमाया ला तुहसिनुल मुस्लिमा, कि मुसलमान को मोहसन नहीं बना सकती। अल यहूदीयतु वल नसरानीयतु, ना तो यहूदी बीवी और ना ईसाई बीवी, यहूदी या ईसाई बीवी मुसलमान को मोहसन नहीं बना सकती। वलल हुर्रल अमतु, और आजाद को बांधी, आजाद इंसान को बांधी मोहसन नहीं बना सकती। वलल हुर्रतल अब्दु, और आजाद औरत को गुलाम मोहसना नहीं बना सकता। बात समझ में आ गई, फिर तर्जमा देख लीजिए हदीस का। हुजूर अलैह सलाम फरमाते हैं ला तुहसिनुल मुस्लिम अल यहूदीयतु वल नसरानीयतु, मुसलमान को मोहसन नहीं बना सकती न यहूदी बीवी और न ईसाई बीवी। वलल हुर्रल अमतु, और न आजाद को बांदी मोहसन बना सकती है। वलल हुर्रतल अब्दु, और न आजाद औरत को गुलाम मोहसना बना सकता है। आगे देखिए काल वला युजमाउ फिल मोहसनी बैन अर्रजमि वल जल्द, भाई जो गैर शादीशुदा हो उसको कोड़े लगाए जाएंगे और जो शादीशुदा हो उसको रजम किया जाएगा, लेकिन ये रजम और कोड़े लगाने को किसी में जमा नहीं करेंगे, यानी किसी जानी को कोड़े भी लगाए जाएं और फिर उसके बाद उसको रजम भी कर दिया जाए, ऐसा नहीं किया जाएगा क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम ने ऐसा नहीं फरमाया। तो कहते हैं काला साहिब कुदूरी फरमाते हैं वला युजमाउ फिल मोहसनी, के जमा नहीं किया जाएगा मोहसन के अंदर बैन रजमी वल जल्दी, रजम और कोड़े लगाने को। लिअन्नहु अलैहि सलातु वस्सलाम लम यजमा, क्योंकि हुजूर अलैहि सलाम ने इनको जमा नहीं फरमाया। वली अन्नल जल्द यअरा अनिल मकसूदी मा रजमी, यहां से अकली दलील भी जिक्र कर रहे हैं, नकली दलील तो जिक्र कर दी कि कोड़े लगाने और रजम को जमा नहीं करेंगे क्योंकि हुजूर ने जमा नहीं फरमाया, और अकली दलील भी कहते हैं वजह यह क्योंकि अगर रजम के साथ आप कोड़े लगाएंगे तो कोड़े तो मकसूद से खाली हो गए, कोड़े लगाने का तो कोई मकसद ही नहीं बनता। वजह यह कि सजा का मकसद है लोगों को इबरत हो जाए और मुजरिम भी आइंदा के लिए रुक जाए, लोगों को भी इबरत हो और मुजरिम भी रुक जाए। तो यहां पर एक तरफ है कोड़े और एक तरफ है रजम, किससे ज्यादा इबरत होगी लोगों को? रजम से ज्यादा इबरत होगी लोगों को। तो जब रजम किया जा रहा है तो कोड़े लगाने की क्या जरूरत है? और जो मुजरिम है, मुजरिम को तो कोड़े उस वक्त लगाए जाते हैं जब उसको रजम न करना हो, ताकि खुद इस मुजरिम को अभी इबरत हो जाए, ये आइंदा ये जुर्म न करे। मुजरिम को कोड़े लगाने का मकसद क्या होता है? कि लोगों के रुकने के साथ साथ ये खुद भी रुक जाए, आइंदा ये जुर्म ना करे। लेकिन जब आपने इसको कोड़े लगाने के बाद रजम भी करना है तो कोड़े लगाने का मकसद तो यहां खत्म ही हो गया, इस मुजरिम ने तो जिंदा ही नहीं रहना, तो इसको कोड़ों के जरिए रोकना कैसे होगा भाई? तो कहते हैं वली अन नल जल्द यारा अनिल मकसूदी, अरिया यारा का माना खाली होना। कहते हैं वली अन नल जल्द यारा अनिल मकसूदी मार रजमी, और इसलिए क्योंकि कोड़े लगाना यह मकसूद से खाली है, मार रजमी रजम के साथ, जब रजम के साथ कोड़े लगा रहे हैं तो यह मकसूद से खाली है, यानी खुद लोगों को भी जो इबरत हो रही है वो तो रजम से ज्यादा हो रही है, और खुद मुजरिम जो है उसने तो जिंदा ही नहीं रहना, तो उसके लिए भी ये जजर का बायस नहीं है कोड़े। तो कहते हैं वली अन नल जल्द यारा अनिल मकसूदी मार रजमी, इसलिए क्योंकि कोड़े लगाना वो मकसूद से खाली हैं, मार रजमी रजम के साथ, ले अन नजर गैर ही यह सुलु बिर रजमी, इसलिए क्योंकि मुजरिम के अलावा और लोगों को धमकाना, यह सुलु बिर रजमी वो तो रजम से ही हासिल हो जाएगा, इद हुआ फिर उकूबती अकसाहा, इसलिए क्योंकि वो सजा के अंदर इंतहा दर्जे का है, इसलिए क्योंकि ये रजम जो है ये सजा के अंदर इंतहा दर्जे तक पहुंचा हुआ है। तो कहते हैं इस हुआ फिल उकूबती अकसाहा, इसलिए क्योंकि रजम जो है सजा के अंदर अकसाहा आखिरी दर्जे की सजा है, वजरुहु ला यहसुलु बादा हलाक ही, और ये जो जानी है खुद इसका जजर तो हासिल नहीं हुआ इसके हलाक हो जाने के बाद। कोड़े लगाने का मकसद तो क्या था कि मुजरिम को भी जजर हो जाए, वो आइंदा ऐसा न करे, वो तो हासिल नहीं हुआ क्योंकि ये तो रजम की वजह से हलाक ही हो गया। तो कहते हैं वजह जरूह ला या सुलु बादा हलाकी ही, और जानी का जजर जो है यानी जानी की डांट या जानी को धमकाना वो तो हासिल नहीं हुआ उसके हलाक हो जाने के बाद। काला साहिब खुदूरी फरमाते हैं वला युज माउफिल बिक्री बैनल जल्दी वन नफी, जल्द का माना है कोड़े लगाना और नफी का माना है जलावतन करना, किसी शख्स को अपने इलाके और वतन से निकाल देना, इसको जलावतनी कहते हैं भाई। कहते हैं वला युज माउफिल बिक्री बैनल जल्दी वन नफी, और जमा नहीं किया जाएगा बिक्र के अंदर, याद रखो बिक्र का माना है गैर शादीशुदा, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, बिक्र का क्या माना गैर शादीशुदा, चाहे मर्द हो और चाहे औरत दोनों के लिए यह लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो कहते हैं वला युज माउफिल बिक्री, और जमा नहीं किया जाएगा गैर शादीशुदा में बैनल जल्दी वन नफी, कोड़े लगाने और जलावतनी में, यानी गैर शादीशुदा के लिए जलावतनी और कोड़े लगाना दोनों को जमा नहीं करेंगे। जबकि आगे चलकर आपको बतलाएंगे इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि गैर शादीशुदा को कोड़े भी लगाएंगे और उसको जलावतन भी किया जाएगा, और यह जलावतन करना बाकायदा हद का हिस्सा है, ये बाकायदा हद का हिस्सा है। हम कहते हैं नहीं, ये जलावतन करना हद का हिस्सा नहीं है। हां बास सहाबा से बास खुलफाए राशिदीन से जलावतनी मनकूल है, उन्होंने कोड़े लगाने के बाद जलावतन भी किया था, लेकिन हम कहते हैं कि उनका यह अमल सियासतन था, उनका यह अमल सियासतन था। सियासत कहते हैं मुल्की मामलात की तदबीर और इंतजाम को, मुल्की मामलात की तदबीर और इंतजाम को सियासत कहते हैं कि मुल्की मामलात कैसे चलाने हैं, इस तदबीर और इंतजाम को सियासत कहते हैं, यानी इस हिकमत अमली को सियासत कहते हैं। तो लिहाजा हम कहते हैं वो जो सहाबा और खुलफा राशिदीन ने जलावतन फरमाया था वो सियासतन जलावतन फरमाया था, तो वो तो खलीफा की राय के सुपुर्द है। अगर वो समझता है सिर्फ कोड़े लगाना काफी नहीं बल्कि जलावतन भी करना चाहिए तो वो सियासतन जलावतन भी कर सकता है, लेकिन खुद जलावतनी ये हद का हिस्सा नहीं है भाई। काला साहिब कुदूरी फरमाते हैं वला युज माउफिल बिक्री बैनल जल्दी वन नफी, और गैर शादीशुदा के बारे में जमा नहीं किया जाएगा कोड़ों को और जलावतनी को। व शाफियो रहिमहुल्लाह ताला यजमाउ बैनहुमा हद्दन, और इमाम शाफी इन दोनों को जमा फरमाते हैं हद्दन बैतबार हद के, لقوله عليه الصلاة والسلام بوجه حضور علیہ السلام کے اس قول کے, وہ دلیل میں حضور علیہ السلام کا یہ قول ذکر فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا البکر بالبکری جلد مئة وتغریب عام, البکر بالبکری کہ غیر شادی شدہ غیر شادی شدہ کے ساتھ, बिक्र का क्या माना गैर शादीशुदा, कि अलबिक्रु बिल बिक्री गैर शादीशुदा गैर शादीशुदा के साथ, यानी जब जिना कर ले, गैर शादीशुदा जब गैर शादीशुदा के साथ जिना कर ले तो जल्द उम्मी अतिन तो 100 कोड़े हैं, व तगरीब आमिन और एक साल की जलावतनी है। आम का क्या माना? साल। व तगरीब आमिन और एक साल की जलावतनी है। वली अन्नफी ही हसमा बाबी जीना, ये इमाम शाफिर रहमतुल्लाह की दलील चल रही है भाई। एक तो वह हदीस जिक्र करते हैं अलबिक्रु बिल बिक्री जल्द उम्मी अतिन व तगरीब आमिन, और दूसरा वो अकली दलील भी देते हैं, कहते हैं वली अन्न फीही हस्मा बाबी जीना, हसमा यहसिमु हस्मन सीन के साथ है, हसमा यहसिमु हस्मन का माना है काटना जी। तो कहते हैं वली अन्न फीही हस्मा बाबी जीना, कहते हैं इसलिए क्योंकि जलावतनी के अंदर जीना के दरवाजे को काटना है जी। जलावतनी में जीना के दरवाजे को काटना है, जलावतनी की वजह से जीना खत्म हो जाएगा। इसलिए क्योंकि जो जिना होता है उमूमन मुसाहबत जान पहचान और ताल्लुक की वजह से होता है, तो जब ये नई जगह चला गया वहां अब इसका कोई जान पहचान वाला नहीं, किसी के साथ ताल्लुक वगैरह नहीं है, तो जिना के असबाब खत्म हो जाएंगे। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वली अन नफी ही हसम बाबी जिना, इसलिए क्योंकि जलावतनी के अंदर जिना के दरवाजे को काटना है यानी उसको खत्म करना है, लिकिल्लतिल मआरिफी जान पहचान के कम होने की वजह से, लिकिल्लतिल मआरिफी जान पहचान की कमी की वजह से। अब हमारी दलील आ गई वलना, और हमारी दलील जो है कौलुहू ताला, वो अल्लाह ताला का ये कौल है फजलिदू। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं अज़ानियत वज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदि मिन्हुमा मिअत जल्दा। तो यहां पर अज़ानियत वज़ानी के बाद यह फा लाई गई है, और यह फा वो है जो जज़ा पर दाखिल होती है, ये वो फा है जो जज़ा पर दाखिल होती है। तो लिहाजा इस फा के बाद जो जिक्र है वो है जज़ा, और फा के बाद तो फजलिदू सिर्फ कोड़े लगाने का जिक्र है, यहां तो जलावतनी का जिक्र नहीं है। लिहाजा मालूम हुआ सिर्फ कोड़े लगाना ये हद है, जलावतनी हद का हिस्सा नहीं है। ये थी दलील एक तरीके पर कि फा के बाद जज़ा जिक्र है, तो फा के बाद जो जिक्र किया जाता है वही जजा होती है। मालूम हुआ जिना की सजा 100 कोड़े ही हैं। यह एक तरीके से थी दलील। दूसरा तरीका यह है कि फा के बाद सिर्फ कोड़े लगाने को जिक्र किया गया है। देखो दोनों दलीलें बिल्कुल एक दूसरे के करीब करीब हैं, एक में फा को दलील बनाया, एक में फा के मां बाद जो जिक्र है उसको दलील बनाया। पहली दलील यह कि यह फा जजा वाली है, तो यही जजा होगी जो फा के बाद है, और कोई चीज जजा नहीं होगी। दूसरी दलील यह है कि फा के बाद सिर्फ कोड़े लगाना ही जिक्र हुआ है, लिहाजा वो ही सजा होगी और कोई सजा नहीं होगी। फर्क समझ में आया? बस मामूली सा फर्क है। एक तो यह कि यह फा जो है ये फा जजा पर दाखिल होती है, मालूम हुआ यही जजा है और नहीं। और दूसरे अंदाज में यूं कहो कि यहां सिर्फ कोड़े लगाना ही जिक्र है और कोई चीज जिक्र ही नहीं। अगर हद का हिस्सा कुछ और होता तो अल्लाह उसको भी जिक्र फरमाते, लेकिन अल्लाह ने जलावतनी को जिक्र नहीं फरमाया, मालूम हुआ वो हद का हिस्सा नहीं है भाई। तो कहते हैं वल्ला ना कौलुहू ताला, और हमारी दलील जो है वह अल्लाह ताला का यह कौल है फजली दू जल जल्द कुल्ल मू जबी रुजू अन इला हरफिल फा। मूजब कहते हैं मुक्तजा और हुक्म को। मूजब का क्या माना? मुक्तजा और हुक्म। इस जिना का हुक्म क्या है? कोड़े लगाना। इस जिना का मुक्तजा क्या है? यह जिना किस चीज का तकाजा करता है? कोड़े लगाने का। तो कहते हैं जालल जल्दा, अल्लाह ताला ने कोड़ों को करार दिया कुल्लल मूजबी सारा मुक्तजा। अल्लाह ने कोड़ों ही को सारा मुक्तजा करार दिया है इस जिना का, यानी यूं कहो अल्लाह ताला ने इस जिना का सारा हुक्म इस कोड़े लगाने को ही करार दिया है। तो कहते हैं जालल जल्दा कुल्लल मूजबी, अल्लाह ताला ने कोड़े लगाने को ही सारा हुक्म करार दिया है रुजू अन इला हरफिल फाई, हरफे फा की तरफ रुजू करते हुए, हरफे फा की तरफ रुजू करते हुए हम कहते हैं कि यहां फा है, तो मालूम हुआ अल्लाह ने सिर्फ कोड़े लगाने को ही इस जिना का हुक्म करार दिया है। यह माना है रुजू अन इला हरफिल फाई, हरफे फा की तरफ रुजू करते हुए, औ इला कौनी ही कुल्लल मजकूरी, यह इस बात की तरफ रुजू करते हुए कि यही सारा कुछ मजकूर है जी। कि कोड़े लगाना ही सारा मजकूर है, इसके साथ जलावतनी मजकूर नहीं, लिहाजा जलावतनी हद का हिस्सा नहीं भाई। तो कहते हैं औ इला कौन ही कुल्लल मजकूरी, या इस बात की तरफ रुजू करते हुए कि कोड़े लगाना ही वो सारा है जिसको जिक्र किया गया है। वली अन्नफी तगरीबी फतहा बाबी जीना, इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते थे जलावतन करेंगे तो जिना का दरवाजा बंद हो जाएगा। हम कहते हैं नहीं, जलावतन करेंगे तो जिना का दरवाजा खुल जाएगा। उन्होंने कहा था कि जिना ताल्लुकात की वजह से होता है, आपस में हम नशीनी से होता है, और जब किसी के साथ उठना बैठना ही नहीं, हम नशीनी खत्म हो गई तो जिना भी खत्म। हम कहते हैं नहीं, यहां जब उसको जलावतन कर दिया ये तो जिना का दरवाजा खुल गया भाई, इसलिए क्योंकि जब तक ये अपने इलाके में था तो इसको अपने खानदान वालों से, अपने कबीले वालों से हया थी, तो वह हया और शर्म मान्या बनती थी जिना से। लेकिन अब नए इलाके में चला गया, वहां तो कोई इसका जानने वाला नहीं है, किसी से कोई शर्म हया इसको महसूस नहीं होगी, तो ये तो जिना का दरवाजा और ज्यादा खुल जाएगा। और नीज वहां पर अगर इसी तरह जलावतन किया जाए, मसला औरत को जलावतन किया है, तो अब वहां पर उसके लिए असबाब माश ही नहीं है, वो कहां से कमाए कहां से खाए, लिहाजा ये तो उसके लिए जिना का दरवाजा खुल गया। और इसी माश की वजह से ही बाज औरतें जिना को अपना पेशा बना लेती हैं। तो कहते हैं वली अन्नफी तगरीबी फतहा बाबी जिना, और इसलिए क्योंकि जलावतनी के अंदर जिना का दरवाजा खोलना है, लिन इदाम इस्तिहया मिनल अशीरती, इसलिए क्योंकि हया मादूम है मिनल अशीरती खानदान वालों से, खानदान और कौम वालों से हया न होने की वजह से, क्योंकि वो वहां पर मौजूद ही नहीं है। तो लेन ऐदा मिल इस्तिहया इमिनल आशीरती, खानदान वालों से हया के न होने की वजह से, क्योंकि वहां वो खानदान वाले मौजूद ही नहीं। सुम्मफी हिकत मवाद दिल बकाई, और नीज इसके अंदर बका के मादों को काटना है। जलावतनी में तो बका के मादे यानी रोजी और माश को काटना है। कहते हैं सुम मफी हिकत मवाद दिल बकाई, और फिर इसके अंदर बका के मादे यानी रोजी और माश को काटना है। फरुबमा तत तखिजु जीना हा मकसबतन, मकसबा और मकसीबा सीन के फतहा और कसरा दोनों के साथ जायज है, और ये कहते हैं जरिया कमाई को, कमाई का जो जरिया हो। तो कहते हैं फरूबमा तत तखिजु जीना हा मकसबतन, तो बसाओकात वो जीना को ही अपनी कमाई का जरिया बना लेती है। वह हुआ मिन अकबही वजूही जीना, और ये जीना की बदतरीन असबाब में से है, ये जीना के बदतरीन असबाब में से है कि इसको कमाई का जरिया बना लिया जाता है भाई। तो कहते हैं वह हुआ मिन अकबही वजूही जिना, और ये जिना को कमाई का जरिया बनाना ये जिना के बदतरीन असबाब में से है। वहां दिहिल जिहतु मुरज्जिहतुन लिकौलि अलीन रजी अल्लाह तआला अनहु, कफा बिन नफ्य फितनतन, कफा बिन नफ्य फितनतन, ये हजरत अली रजी अल्लाह तआला अनहु का कौल है भाई। कफा बिन नफ्य, आपने पढ़ा है कि कफा के फाइल पर कभी बा को जायद बढ़ा देते हैं, तो ये बिन नफी बा की वजह से मजरूर है लफ्जन, लेकिन महल्लन ये मरफू है, ये कफा का फाइल है। तो कफा बिन नफी किस माना में है, कफन नफी के माना में, कि जलावतनी काफी है फितना तन बैतबार फितना होने के। हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जलावतनी ही बैतबार फितने के काफी है, यानी इतना बड़ा फितना है यही काफी है उसके लिए। तो हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कफा बिन नफी फितना तन, कि जलावतनी ही फितने के एतबार से काफी है। अब याद रखो यहां जो इबारत आई वहादिहिल जिहतु मुरज्जिहतुन, ये जो मुरज्जिहतुन का लफ्ज आया, शारहीन फरमाते हैं इसको इसमें फाइल पढ़ना भी सही यानी मुरज्जिहतुन, और इसको इसमें मफूल यानी मुरज्जहतुन पढ़ना भी सही है, दोनों सूरतों में माना सही होता है। पहले जरा इसको इसमें मफूल पढ़ लें, उस सूरत में माना ज्यादा वाजह है भाई। कहते हैं वहादिहिल जिहतु, और ये वाली जो जिहत है, तवज्जो है ना, एक जिहत जिक्र की इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने कि जलावतनी जिना का दरवाजा बंद कर देता है, और एक जानिब और एक जिहत हमने जिक्र की कि जलावतनी जो है वो जिना का दरवाजा खोल देता है। तो हमारी वाली जो जिहत है, हमारी वाली जो जानिब है, यानी ये जो हमने इल्लत बयान की कि जलावतनी जो है ये तो जिना के दरवाजे को खोल देती है, इससे मालूम हुआ जलावतनी एक फितना है। तो लिहाजा ये जो हमने इल्लत बयान की ये मुरज्जह है, ये राजह है हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के कौल की वजह से भी। भाई इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने भी एक इल्लत जिक्र की कि जलावतनी जो है जिना के दरवाजे को बंद कर देती है। हमने भी इल्लत जिक्र की कि जलावतनी जो है वो जिना के दरवाजे को खोल देती है। और हमारी जो इल्लत है उसकी ताईद होती है हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के कौल से कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने भी फरमाया है कफा बिन नफ़ी फितनतन, कि जलावतनी ही फितने के एतबार से काफी है। भाई तो हमारी इल्लत की ताईद होती है हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के कौल की वजह से, तो हमारी इल्लत मुरज्जह है
जी।
हमारी इल्लत मुरज्जह है यानी इसको तरजीह है, ये राजिह है
जी।
तो ये माना है वहादही जिहत मुरज्जहतुन, और ये वाली जिहत जो है ये वाली जानिब इल्लत की ये वाली जानी जो हमने बयान की मुरज्जहतुन ये राजिह है लिकौल अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के कौल की वजह से कि आपने फरमाया कफा बिन नफ़ी फितनतन के जलावतनी काफी है बैतबार फितना के। आप जरा इसको पढ़ें मुरज्जह भाई, इसमें फाइल पढ़ें, फिर इस सूरत में माना यह है वहादिहिल जिहतु, और ये जिहत जो हमने बयान की ये जानिब जो हमने इल्लत के तौर पर बयान की मुरज्जहतुन ये तरजीह दे रही है लिकौल अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के कौल को। हमारे इल्लत से हजरत अली के कौल के सही होना भी पता चल रहा है, हमारी दलील से हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के कौल का सही होना भी पता चल रहा है कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जो जलावतनी को फितना करार दिया है वो इसी एतबार से है जो हमने जिक्र किया है भाई। तो हमारी इल्लत से हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के कौल के सही होने का पता चलता है, बल्कि ज्यादा बेहतर अल्फाज में यूं कहो कि हमारी इस इल्लत की वजह से हमने जो इल्लत बयान की कि जलावतनी जिना का दरवाजा खोल देती है, हमारी ये इल्लत से हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के कौल की वजाहत हो गई, उससे हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के कौल की वजाहत हो गई कि उन्होंने जो फरमाया है कफा बिन नफ़ी फितना तन कि जलावतनी जो है वो काफी है बैतबार फितना होने के, यानी जलावतनी खुद ही एक बहुत बड़ा फितना है। तो हमने जो इल्लत बयान कर दी उससे हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के कौल की वजाहत हो गई भाई, बात समझ में आ गई। तो ये माना है वहां दिहिल जिहतु मुरज्जहतुन, और हमारी वाली जो जिहत है वो तरजीह देने वाली है लिकौल अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के कौल को कि आपने फरमाया कफा बिन नफ़ी फितना तन के जलावतनी काफी है फितना होने के एतबार से। आगे देखिए वल हदीस मनसूखुन कशतरी ही, इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने हदीस जिक्र फरमाई थी कि कूड़े लगाने के साथ जलावतन भी किया जाएगा, कि हदीस में आया है अल बिक्रु बिल बिक्री जल्द उम्मी अतियों व तगरीब आमीन। अब उसका भी जवाब दे रहे हैं, हम कहते हैं वल हदीस मनसूखुन कशतरी ही, कि यह हदीस मनसूख है कशतरी ही, जैसे कि इस हदीस का दूसरा हिस्सा, यह पूरी हदीस नहीं है। आगे देखो आगे हदीस का दूसरा हिस्सा भी जिक्र हो रहा है, वह हुआ कौलहू अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और वह हुजूर अलैहिस्सलाम का यह कौल है अस्सय्यिबु बिस्सय्यिबि जल्दु मिअतिन व रजमुन बिल हिजारा, अस्सय्यिबु बिस्सय्यिबि के शादीशुदा अगर शादीशुदा के साथ जिना करे जल्दु मिअतिन तो 100 कोड़े लगाना है व रजमुन बिल हिजारती और पत्थरों से रजम करना है
जी।
पत्थरों से रजम करना है, और इमाम शाफी रहमला भी फरमाते हैं कि रजम के साथ कोड़े नहीं जमा किए जाएंगे, हालांकि इस हदीस के दूसरे हिस्से से तो मालूम हो रहा है कि रजम के साथ कोड़े भी लगाए जाएंगे, और इसके कायल तो इमाम शाफी रहमला भी नहीं है। मालूम हुआ दूसरा हिस्सा उनके नजदीक भी मनसूख है। तो जिस तरह दूसरा हिस्सा मनसूख है इसी तरह हम कहते हैं पहला हिस्सा भी मनसूख है कुरान की आयत के जरिए। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं अज़ानियतु वज़ानी फजलिदु कुल्ल वाहिदिन मिनहुम अतजल्दा, यहां सिर्फ कोड़ों का जिक्र है उसके साथ जलावतनी का जिक्र नहीं है। तो आयत के जरिए यह हदीस का पहला हिस्सा भी मनसूख है भाई। तो कहते हैं वल हदीस मनसूख उनका शतरी ही, शतर कहते हैं किसी चीज का जुज, किसी चीज का आधा हिस्सा। तो कहते हैं वल हदीस मनसूख उनका शत्र ही, और यह हदीस मनसूख है जैसे कि इसका जूस जो है वो मनसूख है। वह कौलुहु अलैहि सलातु वस्सलाम, और वो इस हदीस का दूसरा जूस जो है हुजूर अलैहि सलाम का ये कौल है। अस्सय्यिबु बिस्सय्यिबि जल्दु मिअतिन वरजमुन बिलहिजारति, कि शादीशुदा किसा जिना करे तो उसकी सजा जो है 100 कोड़े हैं और पत्थरों से रजम करना है। वकद उरिफा तारीकुहु फी मौज़िही, और तहकीक इस नसख के तरीके को जाना गया है अपने मकाम में। वकद उरिफा तारीकुहु फी मौज़िही, इस नसख के तरीकों को अपने मकाम में जाना गया है। यानी आप तफासीर के अंदर देख लें, जहां आयत अज़ानियतु वज़ानी का जिक्र आता है वहां पर यह तफसील उलमा जिक्र फरमाते हैं, या इसी तरह उसूल फिका के अंदर जहां नासिख और मनसूख की बहस आती है वहां उलमा इसको जिक्र फरमाते हैं। तो यह माना है वकद उरिफा तारीकुहु फी मौज़िही, और इस नसख के तरीके को अपने मकाम में जाना गया है, यानी तफासीर में और कुतुबे उसूल फिका में। इल्ला अन यरल इमाम फी ज़ालिका मसलहतन, मगर यह कि इमाम जो है इस जलावतनी के अंदर कोई मसलहत देखे, जो हाकिम है अगर वो जलावतनी के अंदर मसलहत समझता है तो वो कोड़े लगाने के साथ जलावतन भी कर सकता है, लेकिन ये बतौर ताजीर के है और बतौर सियासत के है भाई। तो कहते हैं इल्ला अन यरल इमाम फी ज़ालिका मसलहतन, मगर यह कि इमाम जो है यानी मुसलमानों का हाकिम और खलीफा जो है वो इस जलावतनी के अंदर कोई मसलहत देखे, फयुगर्रिबुहु अला कदरी मा यारा, तो वो उसको जलावतन कर दे, अला कदरी मा यारा उतनी मिकदार जितनी उसकी राय हो, जितना वो मुनासिब समझे, 6 महीने या साल जितना भी जलावतन करना चाहे वो कर सकता है। फयुगर्रिबुहु, गर्रब युगर्रिबु तकरीब का माना है जलावतन करना, फयुगर्रिबुहु अला कदरी मा यारा, तो वो उसको जलावतन कर दे उतनी मिकदार जितनी उसकी राय बने। वज़ालिका ताजीरुन व सियासतुन, और यह ताजीर है और सियासत है, यानी यह हद का हिस्सा नहीं है। लिअन्नहु कद युफीदु फी बाज़िल अहवाली, इसलिए क्योंकि जलावतनी भी बाज अहवाल में फायदा देती है। फयकूनु अर्रअयु फीही इलल इमामी, तो इसके अंदर जो राय है वो इमाम के सुपुर्द है, जैसे उसकी राय बने। व अलैहि युहमलु नफ्युल मरवी अन बाज़ि सहाबति रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम, और इसी पर वो जलावतनी महमूल है जिसको रिवायत किया गया है बाज़ि सहाबा से। बाज़ि सहाबा ने जो जलावतन किया था हम कहते हैं वो ताजीर के तौर पर और सियासत के तौर पर किया था। तो कहते हैं वअलैहि युहमलु नफ्युल मरवी अन बाज़ि सहाबति रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम, और इसी पर वो जलावतनी महमूल है जिसको बाज़ि सहाबा से रिवायत किया गया है। वइज़ा ज़नल मरीज़ वहद्दुहु रज्मु रुजिमा, सूरत मसला ये, अगर मरीज ने जिना कर लिया और जिना साबित हो गया तो क्या इस बीमारी के अंदर ही उसको हद जारी की जाएगी या तंदुरुस्त होने के बाद हद जारी की जाएगी? तो आपको बतलाएंगे कि अगर इसकी हद रजम है तो फिर इसकी तंदुरुस्ती का इंतजार करने की जरूरत नहीं, क्योंकि रजम में तो इसने हलाक ही हो जाना है, लिहाजा इसी तरह बीमारी की हालत में ही रजम कर दिया जाएगा। और अगर इसकी हद जो है कोड़े हैं तो फिर इसकी तंदुरुस्ती का इंतजार किया जाएगा, क्योंकि बीमारी के अंदर अगर आपने कोड़े लगाए फिर तो यह हलाक ही हो जाएगा, और कोड़े लगाने का मकसद तो इसको हलाक करना नहीं है। तो रजम का मत तो मकसद ही इसको हलाक करना है, वो चाहे बीमारी में लगा दो उसमें उसने हलाक ही होना है हर हाल में। तो कहते हैं वह इदा जनल मरीज, और जब मरीज जीना कर ले, वह हद दुहर रजमू, और उसकी हद जो है वो रजम हो, रुजीमा, तो उसको रजम कर दिया जाएगा। लिअन्नल इतलाफ मुस्तहक़ुन, क्योंकि इसको तलफ करना इसको हलाक करना वो इस्तेहकाक इसका हो चुका है। फला यम तनियो बिसबब इल मरजी, तो लिहाजा रजम जो है वो ममनू नहीं होगा मरज की वजह से। वह इनका नहद दुहुल जल्द लम युजलत, और अगर इस मरीज की हद जो है वो कोड़े हैं, लम युजलत, तो फिर इसको कोड़े नहीं लगाए जाएंगे। हता या बरा आ, यहां तक ये तंदुरुस्त हो जाए, कैला युफजिया इलल हलाकी, ताकि कहीं ये कोड़े उसको हलाकत तक न पहुंचा दें। व लिहादा ला युकामुल क़त्उ इंद शिद्दतिल हर्रि वल बर्दी, वलिहादा, और इसी वजह से यानी हलाकत के खौफ की वजह से ही, ला युकामुल क़त्उ, हाथ काटने को कायम नहीं किया जाएगा, यानी चोरी में ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. عند شدت الحر والبردی, شدید گرمی اور شدید سردی کے وقت. اگر شدید سردی ہے یا شدید گرمی ہے تو اس وقت چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا, ورنہ تو یہ ہاتھ کا کاٹنا اسے موت تک پہنچا دے گا بھائی. تو اور حالانکہ وہ اس کو ہلاک کرنا تو یہاں مقصود نہیں ہے بھائی. تو کہتے ہیں ولہذا, اور اسی ہلاکت کے خوف کی وجہ سے, لا یقام القطع, ہاتھ کاٹنے کو قائم نہیں کیا جائے گا. عند شدت الحر, شدید گرمی کے وقت, والبردی اور شدید سردی کے وقت. وَإِذَا زَنَتِ الْحَامِلُ لَمْ تُحَدَّ حَتَّى تَزَعَ حَمْلَهَا. صورت یہ, ایک عورت حاملہ ہے, اس نے زنا کر لیا یا زنا کی وجہ سے وہ حاملہ ہو گئی, تو پھر اس صورت میں اس پر حد جاری نہیں کی جائے گی یہاں تک کہ یہ بچے کو جنم دے دے, کیونکہ اس عورت کا تو قصور ہے لیکن بچے کا تو کوئی قصور نہیں. لہذا جب یہ بچے کو جنم دے دے اس کے بعد اس پر حد جاری کی جائے گی. تو کہتے ہیں وہ اذا زنت الحامل, اور جب حاملہ زنا کر لے, میں نے بتلایا چاہے زنا کے وقت ہی حاملہ ہو چاہے زنا سے حاملہ ہو جائے, دونوں کا یہی حکم ہے بھائی. تو کہتے ہیں وہ اذا زنت الحامل, اور جب حاملہ عورت زنا کر لے, لم تو حد, تو اس کو حد نہیں لگائی جائے گی, حتی تزع حملہ, یہاں تک کہ وہ اپنے حمل کو جنم دے دے, لکیلا یؤدی الی ہلاک الولدی, تاکہ کہیں یہ حد جو ہے بچے کی ہلاکت تک نہ پہنچا دے. وہ ہوا نفس محترمت, اس حال میں کہ وہ بچہ جو ہے وہ بھی ایک محترم جان ہے. اس عورت کا تو قصور ہے لیکن بچے کا تو کوئی قصور نہیں, لہذا جب یہ بچے کو جنم دے دے اس کے بعد اس پر حد جاری کی جائے گی. وَإِن كَانَ حَدُّهَا الْجَلْدَ, اور اگر یہ جو حاملہ ہے اس کی حد کوڑے لگانا ہے, لَمْ تُجْلَدْ, تو اس کو کوڑے نہیں لگائے جائیں گے, حَتَّى تَتَعَالَى مِن نِفَاسِهَا, یہاں تک کہ یہ اپنے نفاس سے نکل آئے. تعالی کا معنی بلند ہونا, مراد ہے نکلنا. تو کہتے ہیں اگر یہ حاملہ جو ہے اس کی حد کوڑے لگانا ہے تو اس کو حد نہیں لگائیں گے, حتی تتعالی من نفاسها, یہاں تک کہ یہ اپنے نفاس سے اٹھ جائے. ای ترتفع, معنی بیان کر رہے ہیں, تتعالی کا کیا معنی ہے, ای ترتفع, یہاں تک کہ وہ اس نفاس سے اٹھ جائے. یرید بہ تخرج منہ, صاحب ہدایہ وضاحت فرما رہے ہیں کہ نفاس سے اٹھنے کا کیا معنی. کہتے ہیں یرید بہ, اس کے ذریعے صاحب قدوری ارادہ فرما رہے ہیں, تخرج منہ, کہ وہ عورت جو ہے نفاس سے نکل آئے, نفاس اس کا ختم ہو جائے. لأن النفاس نوع مرض, اس لیے کیونکہ نفاس بھی ایک قسم کا مرض ہے. فَيُؤَخَّرُ إِلَى دَمَانِ الْبُرْءِ, لہذا حد کو مؤخر کیا جائے گا اس عورت کی تندرستی کے زمانے تک, بخلاف الرجم, بخلاف رجم کے. اگر اس عورت کی حد رجم ہے تو بچے کی پیدائش کے بعد پھر نفاس کے گزرنے کا انتظار نہیں کیا جائے گا, کیونکہ اس نے ہلاک ہی ہونا ہے بھائی. کہتے ہیں بخلاف الرجم, بخلاف رجم کے, لأن التاخير لأجل الولد, اس لیے کیونکہ وہاں پر جو تاخیر تھی وہ بچے کی وجہ سے تھی. وقد انفصل, اور تحقیق بچہ جدا ہو چکا ہے, بچے کی پیدائش ہو چکی ہے, اب نفاس کے اندر بھی عورت کو رجم کیا جا سکتا ہے. وعن ابی حنیفہ رحمہ اللہ, اور امام صاحب سے روایت ہے, انہ یؤخر الی ان یستغنی ولدھا عنہا, کہ حد کو مؤخر کیا جائے گا. امام صاحب فرماتے ہیں حاملہ نے زنا کیا ہے تو پھر بچے کو جنم دے دے پھر بھی حد جاری نہیں کریں گے یہاں تک کہ بچہ بے نیاز ہو جائے, یعنی خود کھانے پینے لگے اور اپنے کام خود کرنے لگے, یعنی 7-8 سال کی عمر تک بھائی. تو کہتے ہیں وعن ابی حنیفۃ رحمہ اللہ, اور امام صاحب سے روایت ہے, انہ یؤخر الی ان یستغنی ولدھا عنہا, کہ رجم کو مؤخر کیا جائے گا یہاں تک کہ بچہ جو ہے اپنی ماں سے بے نیاز ہو جائے, یعنی اپنے کام خود کرنے لگے. اذا لم یکن احد یقوم بتربیتہ, جب کوئی ایک بھی موجود نہ ہو جو اس کی تربیت کرے, جب کوئی بھی اور تربیت کرنے والا نہ ہو پھر اس صورت میں مؤخر کیا جائے گا اتنا، اور اگر کوئی اور بچے کی تربیت کرنے والا ہے پھر اتنا مؤخر نہیں کیا جائے گا۔ تو کہتے ہیں اذا لم یکن احد یقوم بتربیته، جب کوئی ایک بھی نہ ہو جو اس بچے کی تربیت کرے، لان فی تاخیر صیانت الولد عن الضیاع، اس لیے کیونکہ مؤخر کرنے میں صیانت الولد بچے کو بچانا ہے، عن الضیاع ضائع ہونے سے، بچے کو ضائع، کیونکہ بچے کی اگر کوئی تربیت کرنے والا نہیں ہے اور آپ پھر بھی عورت کو رجم کر دیتے ہیں تو یہ تو بچے کو آپ نے ضائع کر دیا، وہ بچہ تو ہلاک ہو جائے گا، کون اس کا خیال رکھے گا، کون اس کی تربیت کرے گا، لہذا کوئی تربیت کرنے والا نہ ہو تو پھر بچے کی حفاظت کے لیے رجم کو مؤخر کیا جائے گا۔ تو کہتے ہیں لئن فی تاخیر صیانت الولد عن الضیاع، اس لیے کیونکہ رجم کو مؤخر کرنے میں بچے کی حفاظت ہے ضائع ہونے سے، وقد روی، اور تحقیق روایت کیا گیا ہے، انہ علیہ الصلاۃ والسلام قال للغامدیتی، کہ حضور علیہ السلام نے بھی غامدیہ سے فرمایا تھا، بعد ما وضعت، بعد اس کے جب اس نے بچے کو جنم دے دیا تھا، ارجعی حتی یستغنی ولدک، کہ تو واپس چلی جائے یہاں تک کہ تیرا بچہ جو ہے بے نیاز ہو جائے۔ غامدیہ رضی اللہ تعالی عنہ خود حضور کے پاس آئیں کہ میں نے زنا کیا ہے، مجھے پاک کر دیجئے، اور پھر بتلانے لگی کہ یا رسول اللہ میں زنا سے حاملہ ہوں، تو پھر حضور علیہ السلام نے ان کو واپس بھیجا یہاں تک کہ وہ بچے کو جنم دے دیں، اور پھر جب وہ بچے کو جنم دے دیا وہ لے آئیں، تو پھر حضور نے کہا کہ واپس لے جاؤ کہ یہاں تک کہ یہ روٹی وغیرہ کھانے لگے، پھر وہ 2-2.5 سال کے بعد پھر بچے کو لے کر تشریف لائیں، بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا، کہنے لگی یا رسول اللہ اب یہ خود کھاتا پیتا ہے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ پھر دوبارہ حضور علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ واپس چلی جاؤ یہاں تک کہ یہ بچہ بے نیاز ہو جائے، یعنی اپنے کام خود کرنے لگے۔ تو اس وقت ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں اس بچے کی دیکھ بھال کی ذمہ داری لیتا ہوں، تو پھر حضور علیہ السلام نے غامدیہ کو رجم کرنے کا حکم دیا۔ تو اس روایت میں ذکر ہے کہ حضور علیہ السلام نے ان سے فرمایا تھا ارجعی حتی یستغنی ولدک، کہ تو واپس چلی جائے یہاں تک کہ تیرا بچہ بے نیاز ہو جائے۔ تو اس روایت کی وجہ سے امام صاحب فرماتے ہیں کہ اگر بچے کی دیکھ بھال کرنے والا اور کوئی نہ ہو تو پھر جب تک بچہ بے نیاز نہیں ہو جاتا، یعنی تقریباً 7-8 سال کی عمر تک نہیں پہنچ جاتا، اس وقت تک اس عورت کو رجم نہیں کیا جائے گا۔ تو کہتے ہیں وقد رویا، تحقیق روایت کیا گیا ہے، انہ علیہ الصلاۃ والسلام قال للغامدیتی، کہ حضور علیہ السلام نے غامدیہ سے فرمایا، بعد ما وضعت، بعد اس کے کہ جب اس نے بچے کو جنم دے دیا تھا، کہ ارجعی حتی یستغنی ولدک، کہ تو واپس چلی جائے یہاں تک کہ بچہ بے نیاز ہو جائے، ثم الحبلۃ تحبس الى ان تلد ان کان الحد ثابتا بالبینہ، یاد رکھو اگر زنا جو ہے وہ گواہی کے ذریعے ثابت ہوا ہے اور یہ عورت حاملہ ہے تو پھر اس کو قید میں ڈالیں گے، کہیں یہ بھاگ نہ جائے، کہیں یہ بھاگ نہ جائے، اور اگر زنا اس کے اپنے اقرار سے ثابت ہوا ہے پھر قید میں نہیں ڈالیں گے، پھر قید میں نہیں ڈالیں گے۔ وجہ یہ کہ قید میں ڈالنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے پڑھا ہے کہ وہ زنا جو اقرار سے ثابت ہو جائے اس کے اندر اقرار کرنے والا جب چاہے رجوع کر سکتا ہے، وہ ایک دفعہ کہہ دے گا میں نے زنا نہیں کیا تو ساتھ ہی حد ساقط ہو جائے گی، تو لہذا اس کو قید میں ڈالنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ بھائی کہتے ہیں ثم الحبلۃ تحبس الى ان تلد، پھر حاملہ جو ہے اس کو قید میں ڈالا جائے گا یہاں تک کہ وہ بچے کو جنم دے دے، ان کان الحد ثابتا بالبینتی، اگر یہ حد ثابت ہوئی ہے گواہی کے ذریعے، کہ لا تہروب، تاکہ کہیں یہ بھاگ نہ جائے، بخلاف الاقرار، بخلاف اقرار کے، لان الرجوع عنه عامل، اس لیے کیونکہ اقرار سے رجوع کرنا وہ تو عمل کرنے والا ہے، وہ تو عمل کرتا ہے حد کو ساقط کرنے میں عمل کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں بخلاف الاقرار، بخلاف اقرار کے، لان الرجوع عنه عامل، اس لیے کیونکہ اقرار سے رجوع کرنا وہ تو عمل کرتا ہے یعنی حد کو ساقط کرنے میں، فلا يفيد الحبس، تو لہذا قید کرنا فائدہ نہیں دے گا، واللہ اعلم، اور اللہ خوب جاننے والے ہیں۔ باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه، یہ باب ہے اس وتی کے بیان میں جو حد کو واجب کرتی ہے اور اس وتی کے بیان میں جو حد کو واجب نہیں کرتی. یاد رکھو اس باب کے اندر صاحب ہدایہ آپ کو اور گہرائی کے اندر لے جائیں گے اور بتلائیں گے کون سی وتی حد کو واجب کرتی ہے اور کون سی وتی حد کو واجب نہیں کرتی. تو کہتے ہیں باب الوطی الذی یوجب الحد، یہ باب ہے اس وطی کے بیان میں جو حد کو واجب کرتی ہے. والذی لا یوجبہ، اور اس وطی کے بیان میں جو حد کو واجب نہیں کرتی. قال صاحب ہدایہ فرماتے ہیں الوط الموجب للحد ہوا الزنا، کہ وہ وطی جو حد کو واجب کرتی ہے ہوا الزنا، وہ زنا ہے. وہ وتی جو حد کو واجب کرتی ہے اس کو زنا کہتے ہیں. وَأَنَّهُ فِي عُرْفِ الشَّرْعِ وَاللِّسَانِ، اور وہ شریعت کے عرف میں اور اہل لسان کے عرف میں، یعنی عربی زبان والوں کے عرف میں. آگے تعریف کرنے لگے ہیں شریعت میں بھی زنا اس کو کہتے ہیں اور اہل لسان بھی زنا اس کو کہتے ہیں، آگے تعریف کر رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ وط الرجل المرأۃ، کہ مرد کا عورت سے وطی کرنا، فی القبولی، اس عورت کے اگلے مقام میں، فی غیر الملکی، غیر ملکیت کے اندر، کہ اس عورت پر اس کو نہ مل کے نکاح ہو اور نہ مل کے یمین ہو، یعنی نہ اس کی منکوحہ ہو نہ اس کی باندی ہو. وہ شبہ تل ملکی، اور نیز وہ شبہ ملک کے علاوہ ہو، اس میں شبہ ملک بھی نہ ہو. جیسے حضور علیہ السلام نے ایک صحابی سے فرمایا تھا انت و مالک لی ابی کا، تو اور تیرا مال تیرے باپ کے ہیں. تو یہاں پر بیٹے کی باندی سے اگر باپ صحبت کرتا ہے تو یہاں شبہ ملک موجود ہے. تو لہذا اس صورت میں آپ نے پڑھا ہے باپ پر حد نہیں آئے گی، بلکہ عین صحبت سے پہلے باپ اس باندی کا مالک بن جائے گا اور پھر باپ کو باندی کی قیمت دینا پڑے گی. پھر ترجمہ دیکھ لیجئے، قال صاحب ہدایہ فرماتے ہیں الوط الموجب للحد ہوا الزنا، کہ وہ وطی جو حد کو واجب کرتی ہے وہ زنا ہے. وَأَنَّهُ فِي عُرْفِ الشَّرْعِ وَاللِّسَانِ، اور زنا جو ہے شریعت کے عرف میں اور اہل لسان کے عرف میں. وط الرجل المرأۃ، وہ کسی مرد کا کسی عورت سے وطی کرنا ہے، فی القبول، عورت کے اگلے مقام میں، فی غیر الملک وشبہۃ الملک، یعنی ملک اور شبہ ملک کے علاوہ میں، یعنی وہاں نہ ملک ہو اور نہ شبہ ملک ہو. بھائی تو گویا تین قیدے ہیں یہاں پر، تین قیدے. ایک تو یہ کہ وطی عورت سے کی جائے، دوسرا یہ کہ وہ وطی عورت کے اگلے مقام میں ہو، اور تیسری قید یہ کہ وہاں پر نہ ملک ہو اور نہ شبہ ملک ہو. یہ تین قیدے ضروری ہیں، پھر ہی وہ زنا کہلائے گا. آگے دیکھیے، کہتے ہیں لِأَنَّهُ فِعْلٌ مَحْزُورٌ. محزور بھئی یہ دیکھو ضوا کے ساتھ ہے، طوازوا. محزور کا معنی ممنوع بھئی، آپ کو میں نے بتلایا تھا الضرورت تبیح المحزورات، یہ ضوا کے ساتھ ہے، ضرورت مباح کر دیتی ہے ممنوع چیزوں کو. تو کہتے ہیں لِأَنَّهُ فِعْلٌ مَحْزُورٌ، اس لیے کیونکہ زنا جو ہے یہ ایک ممنوع فعل ہے. وَالْحُرْمَةُ عَلَى الْإِطْلَاقِ عِنْدَ التَّعَرِّي عَنِ الْمِلْكِ وَشُبْهَتِهِ. بھئی یہاں سے یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ زنا اس وطی کو کہیں گے کہ جو ملکیت سے بھی خالی ہو اور شبہ ملکیت سے بھی خالی ہو، وہاں کسی قسم کا شبہ ملکیت بھی نہ پایا جائے. وجہ یہ کہ حد انتہا درجے کی سزا ہے، حد انتہا درجے کی سزا ہے، لہذا ضروری ہے کہ جس عورت سے زنا کیا ہے اس شخص نے وہ ملکیت سے خالی ہونے کے علاوہ شبہ ملکیت سے بھی خالی ہو. توجہ ہے، یہ کیا ذکر کر رہے ہیں؟ ملکیت سے خالی ہو، یہ بات تو سب کو علم ہے، لیکن شبہ ملکیت سے بھی خالی ہونا ضروری ہے، کیونکہ زنا کی حد انتہا درجے کی سزا ہے. تو لہذا صرف ملکیت سے خالی ہونا کافی نہیں، بلکہ شبہ ملکیت سے خالی ہونا بھی ضروری ہے بھائی. تو یہ معنی ہے لِأَنَّهُ فِعْلٌ مَحْزُورٌ، اس لیے کیونکہ یہ زنا جو ہے ایک ممنوع فعل ہے. وَالْحُرْمَةُ عَلَى الْإِطْلَاقِ، اور عَلَى الْإِطْلَاقِ حرمت جو ہوتی ہے، عِنْدَ التَّعَرِّي عَنِ الْمِلْكِ وَشُبْهَتِهِ، یہ اس وقت ہوتی ہے جب ملکیت اور شبہ ملکیت دونوں سے خالی ہو، جب وہ وطی ملکیت سے بھی خالی ہو اور شبہ ملکیت سے بھی خالی ہو، اس وقت علی الاطلاق حرمت ہے. بھئی دیکھیے، ایک ہے ملکیت، ایک ہے شبہ ملکیت. ایک جگہ پر آدمی کی ملکیت نہیں ہے، تو یہاں وتی حرام ہے, وتی حرام, لیکن علی الاطلاق حرمت یعنی کامل درجے کی حرمت وہاں آئے گی جہاں ملکیت بھی نہ ہو اور شبہ ملکیت بھی نہ ہو. مثلا باپ نے اپنے بیٹے کی باندی سے صحبت کر لی تو یہاں ملکیت تو نہیں لیکن شبہ ملکیت تو ہے, شبہ ملکیت تو ہے, تو باپ کے لیے یہ وتی حرام تو تھی لیکن علی الاطلاق حرام نہیں ہے, کامل درجے کی حرمت نہیں ہے, کیونکہ حلت کا شبہ موجود ہے. حلت کا شبہ موجود ہے اور جب تک شبہ بھی موجود ہے علی الاطلاق حرمت نہیں ہے, کامل درجے کی حرمت نہیں ہے بھائی. یہ معنی ہے والحرمت علی الاطلاق عند التعری عن الملک وشبہتہ, اور علی الاطلاق حرمت جو ہے وہ ملکیت اور شبہ ملکیت سے خالی ہوتے وقت ہوتی ہے, اس وقت علی الاطلاق حرمت ہوتی ہے بھائی. یؤید ذلک قوله علیہ الصلاۃ والسلام, اور اس کی تائید ہوتی ہے حضور علیہ السلام کے اس قول سے بھی کہ آپ نے فرمایا ادرؤوا الحدود بالشبہات. درا یا درؤوا کے معنی ہوتے ہیں ہٹانا, دور کر دینا, چھوڑ دینا. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ادرؤوا الحدود کہ تم لوگ حدود کو چھوڑ دو, بالشبہات شبہوں کی وجہ سے تم لوگ حدود کو دور کر دو شبہوں کی وجہ سے. تو اس سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ شبہ بھی پایا جائے تو پھر وہ زنا نہیں ہے بھائی. آگے دیکھیے ثم شبہۃ نوعانی شبہۃ فی الفعل وتسمى شبہۃ اشتباہ وشبہۃ فی المحل وتسمى شبہۃ حکمیۃ. بھائی یہ جگہ سمجھ لیجئے بھائی, یہ ذرا مشکل مقام ہے. یاد رکھو آپ کو بتلائیں گے کہ شبہ جو ہے وہ دو قسم پر ہوتا ہے, ایک کو شبہ فی الفعل کہتے ہیں اور ایک کو شبہ فی المحل کہتے ہیں. ایک کو شبہ فی الفعل کہتے ہیں, ایک کو شبہ فی المحل کہتے ہیں. شبہ فی الفعل وہ ہے جو انسان کے اپنے گمان کی وجہ سے آتا ہے, شبہ فی الفعل وہ ہے جو انسان کے اپنے گمان کی وجہ سے آتا ہے, اس کو شبہ فی الظن بھی کہتے ہیں. شبہ فی الفعل کا دوسرا نام کیا؟ شبہ فی الظن. تو شبہ فی الظن وہ ہے جو انسان کے اپنے گمان کی وجہ سے آتا ہے, وہاں پر کوئی شرعی دلیل موجود نہیں ہوتی. جبکہ شبہ فی المحل وہ ہے جو کسی شرعی دلیل کی وجہ سے آتا ہے. شبہ فی المحل اس محل میں, محل کیا ہے زنا کا؟ وہ موطوعہ ہے جسے وتی کی گئی ہے, اس محل میں ہی شبہ آ گیا ہے کہ یہ حرام ہے یا حرام نہیں ہے, اور شرعی دلیل کی وجہ سے وہ شبہ آیا ہے. تو ایک قسم کیا ہے؟ شبہ فی الفعل, جو انسان کے اپنے گمان کی وجہ سے شبہ آ جائے, اور ایک شبہ وہ ہے جو کسی شرعی دلیل کی وجہ سے آ جائے اور اس کو شبہ فی المحل کہتے ہیں بھائی. تو شبہ فی الفعل جو ہے اس کو شبہ فی الظن بھی کہتے ہیں اور اس کو شبہ اشتباہ بھی کہتے ہیں. یہ اس کو شبہ اشتباہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اشتباہ ہو گیا تھا اس آدمی کو, اس اشتباہ کی وجہ سے شبہ آ گیا. اور شبہ فی المحل جو ہے وہ شرعی دلیل کی وجہ سے آتا ہے اور اس کو شبہ فی الملک بھی کہتے ہیں کہ وہاں ملکیت کی وجہ سے وہاں شبہ آ گیا. اب یاد رکھنا شبہ فی الفعل جو ہے یہ بندے کے گمان کی وجہ سے شبہ آ جاتا ہے. مثلا بیٹے نے باپ کی باندی سے صحبت کر لی, بیٹے نے باپ کی باندی سے صحبت کر لی. پہلے مسئلہ برعکس تھا, باپ نے بیٹے کی باندی سے صحبت کی تھی تو ہم نے کہا تھا حد نہیں آئے گی کیونکہ حضور نے فرمایا ہے انت و مالک لی ابی کا. تو یہاں پر اس باندی کے اندر حلال ہونے کا شبہ آ گیا کہ باپ کے لیے حلال ہے. شبہ کس سے آیا؟ ایک شرعی دلیل کی وجہ سے, حضور نے فرمایا ہے انت و مالک لی ابی کا. تو یہ شبہ کس کی وجہ سے آیا؟ ایک شرعی دلیل کی وجہ سے. تو یہ شبہ فی المحل ہے, یہ جو محل ہے, یہ جو موطوعہ ہے, یعنی یہ جو بیٹے کی باندی ہے, اس کے اندر حلال ہونے کا بھی شبہ آ گیا. اور کس وجہ سے آیا؟ ایک شرعی دلیل کی وجہ سے. تو باپ جب بیٹے کی باندی سے صحبت کرے گا تو یہاں شبہ فی المحل ہے اور شبہ کی وجہ سے حد ساقط ہو جاتی ہے, لہذا باپ پر حد نہیں آئے گی. جبکہ اس کے برعکس کریں ذرا مسئلہ, بیٹے نے باپ کی باندی سے صحبت کر لی, بیٹے نے باپ کی باندی سے صحبت کر لی, آپ بیٹے سے پوچھا گیا آپ نے باپ کی باندھی سے کیوں صحبت کی، تو بیٹا کہتا ہے یہ تو میرے باپ کی باندھی ہے، میں تو سمجھ رہا تھا یہ میرے لیے حلال ہے. تو یہ جو شبہ آیا یہ کسی شرعی دلیل کی وجہ سے نہیں آیا، بلکہ اس آدمی کے، اس بیٹے کے اپنے گمان اور خیال کی وجہ سے آیا ہے. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ شبہ فی الفعل، یعنی اس کو اس فعل میں شبہ لگ گیا تھا، اس کو اس فعل میں شبہ لگ گیا تھا، تو اس کو شبہ فی الفعل بھی کہتے ہیں اور شبہ فی الظن. میں بار بار دہرا رہا ہوں ان کے نام تاکہ ذہن نشین ہو جائیں، جہاں شبہ فی المحل آئے آپ فوراً سمجھ جائیں کون سا شبہ مراد ہے، وہ شبہ جو شرعی دلیل کی وجہ سے آئے، اور شبہ فی الفعل وہ شبہ ہے جو اپنے گمان کی وجہ سے آئے ایک فعل کے اندر. بھائی تو بیٹے سے پوچھا گیا آپ نے اس باندھی سے کیوں صحبت کی، اس نے کہا میں تو سمجھا تھا یہ میرے باپ کی باندھی ہے اور میں تو باپ کی تمام چیزیں استعمال کرتا ہوں، تو میں سمجھا میرے لیے یہ باندھی بھی حلال ہوگی، میں نے اس لیے صحبت کر لی. یاد رکھو اس صورت میں بیٹے پر حد نہیں آئے گی، کیونکہ اس کا اپنا خیال تھا کہ یہ میرے لیے حلال ہے. اور نیز یہ یاد رکھو یہ اس آدمی کا اپنا گمان ہے، کوئی شرعی دلیل نہیں، لہذا یہ شبہ صرف وہیں معتبر ہے جہاں یہ شبہ آ سکتا ہے. یہ شبہ فی الفعل صرف وہیں معتبر ہوگا جہاں شبہ آ سکے. جیسے باپ بیٹا ایک دوسرے کا مال استعمال کرتے ہیں، ایک دوسرے کی چیزیں استعمال کرتے ہیں، لہذا یہاں ممکن ہے بیٹے کو شبہ ہو گیا ہو، کیونکہ یہ محل شبہ بھی ہے، یہ شبے کا مقام بھی ہے، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کی چیزیں استعمال کرتے ہیں. یا اسی طرح بیٹے نے ماں کی باندی سے صحبت کر لی، اور ماں اور بیٹے جو ہیں وہ بھی ایک دوسرے کا مال، ایک دوسرے کی چیزیں استعمال کرتے ہیں، ان میں بے تکلفی ہوتی ہے، تو یہ بھی شبے کا محل ہے. لہذا اگر بیٹے سے پوچھا گیا آپ نے ماں کی باندی سے کیوں صحبت کی، بیٹا کہتا ہے میں تو سمجھا تھا کہ یہ میری ماں کی باندی ہے، میرے لیے حلال ہے، لہذا اس صورت میں بیٹے پر حد نہیں آئے گی بھائی، کیونکہ یہ شبے کا محل ہے. یا اسی طرح خاوند اپنی بیوی کی باندی سے صحبت کر لیتا ہے، اور خاوند اور بیوی ایک دوسرے کا مال، ایک دوسرے کی چیزیں استعمال کرتے ہیں، ان میں بے تکلفی ہوتی ہے. خاوند سے پوچھا گیا آپ نے بیوی کی باندی سے کیوں صحبت کی، اس نے کہا میں تو سمجھا تھا میرے لیے حلال ہے، تو اس صورت میں خاوند پر حد نہیں آئے گی. لیکن یہ جو صورتیں میں نے ذکر کی، بیٹے نے باپ کی باندی سے صحبت کی، یا بیٹے نے ماں کی باندی سے صحبت کی، یا خاوند نے بیوی کی باندی سے صحبت کی، یاد رکھو یہ شبہ صرف اس آدمی کے گمان کی وجہ سے آیا ہے، یہاں کوئی شرعی دلیل موجود نہیں ہے. تو یہاں بندے کے گمان کا دخل ہے، یہ شبہ فی الفعل کے اندر بندے کی رائے کا دخل ہے. اگر بندے کی رائے یہ تھی کہ یہ میرے لیے حلال ہے، تو اس پر حد نہیں آئے گی، کیونکہ اس کے خیال میں حلال ہے، اس کو شبہ ہو گیا تھا. اور اگر بندے کی یہ رائے ہے کہ میرے لیے یہ حرام ہے، بیٹے نے باپ کی باندی سے صحبت کر لی، پوچھا گیا کیوں صحبت کی، کہنے لگا کہ مجھے پتا تھا یہ میرے لیے حرام ہے، پھر بھی میں نے صحبت کر لی، تو یاد رکھو بیٹے پر حد جاری ہوگی، کیونکہ یہاں شبہ کس کی وجہ سے آیا تھا؟ بیٹے کے اپنے خیال کی وجہ سے، لیکن اس کا تو یہ خیال ہے میرے لیے حرام ہے، معلوم وہ کوئی شبہ نہیں تھا اس کے حرام ہونے میں، لہذا بیٹے پر حد جاری کی جائے گی. یا بیٹے نے ماں کی باندھی سے صحبت کی، یا خاوند نے بیوی کی باندھی سے صحبت کی، پوچھا گیا کیوں صحبت کی، کہنے لگے ہمیں پتا تھا یہ حرام ہے، ہم نے پھر بھی صحبت کر لی، تو حد جاری ہوگی، کیونکہ یہاں شبہ کس وجہ سے آیا تھا؟ ان کے اپنے گمان سے. اور یہاں اب ان کا اپنا گمان ہی یہ ہے کہ یہ ان کے لیے حرام ہے، تو کسی قسم کا شبہ موجود نہیں. شبہ نے آنا تھا، کس وجہ سے آنا تھا؟ ان کے اپنے گمان کی وجہ سے، لیکن ان کا تو اپنا ہی گمان یہ ہے کہ یہ میرے لیے حرام، تو کوئی شبہ نہیں آیا. جب شبہ نہیں آیا تو حد جاری کر دی جائے گی. لیکن اگر یہ کہتے ہیں کہ ہمارا تو خیال تھا یہ ہمارے لیے حلال ہے، تو اب ان کے خیال کی وجہ سے شبہ آ گیا، تو اب حد جاری نہیں کی جائے گی. تو حاصل کلام یہ، ایک وہ شبہ ہے جو شریعت کی طرف سے آئے کسی شرعی دلیل کی وجہ سے، وہاں پر یاد رکھو بندے کی رائے کا کوئی دخل نہیں ہے. اور ایک شبہ جو ہے وہ جو بندے کے ظن اور گمان کی وجہ سے آتا ہے، اس میں بندے کے گمان کا دخل ہے. اگر بندے کا گمان ہے کہ یہ میرے لیے حلال ہے، تو پھر اس صورت میں حد نہیں. اور اگر بندے کا یہ گمان ہے کہ یہ تو میرے لیے حرام ہے، تو پھر اس صورت میں حد آ جائے گی، کیونکہ شبہ آ ہی اس کے اپنے گمان کی وجہ سے رہا تھا. لیکن یہاں تو شبہ ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کا اپنا گمان بھی یہی ہے کہ یہ میرے لیے حرام ہے. تو معلوم ہوا بندے کی رائے شبہ فی الفعل کے اندر تو معتبر ہے، شبہ فی फिर महल के अंदर बंदे की राय का कोई एतबार नहीं क्योंकि वहां शरई दलील मौजूद है। मसलन इधर देखिए, बाप ने बेटे की बांदी से सोहबत कर ली, बाप ने बेटे की बांदी से सोहबत कर ली, तो आपने पढ़ा है कि यहां हदीस में आया है अंत व मालुक अली अबी का, लिहाजा इस वजह से बाप पर हद नहीं आएगी। मालूम हुआ यह शुबा फिल महल है, ये जो महल है, ये जो बेटे की बांदी है, इसी महल के हराम होने में शुबा है। लिहाजा जब यह शुबा फिल महल हुआ तो इसके अंदर बंदे के गुमान का कोई दखल नहीं। बाप से पूछा कि आपने क्यों सोहबत की बेटे की बांदी से, बाप कहते हैं भाई मुझे पता था यह मेरे लिए हराम है, मैंने फिर भी वती कर ली। कहते हैं फिर भी हद नहीं आएगी, फिर भी बाप पर हद नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि यहां शुबा जो आया है वो एक शरई दलील की वजह से आया है, वहां बंदे को नहीं देखा जाएगा, उसके राय और गुमान को नहीं देखा जाएगा भाई। तो जहां शुबा जो है अपने गुमान की वजह से आ जाए वहां पर आदमी की अपनी राय का एतबार है, और जहां पर शुबा शरई दलील की वजह से आए वहां बंदे की राय का कोई एतबार नहीं है। और मैंने यह भी बतलाया कि शुबा फेल जो है, जो बंदे की राय की वजह से शुबा आता है, यह उसी जगह पर आएगा जो शुबे का महल भी हो। जैसे मैंने मिसालें जिक्र की, बेटा बाप की बांदी से सोहबत करता है, या बेटा मां की बांदी से सोहबत करता है, या एक खावन बीवी की बांदी से सोहबत करता है, तो ये सब आपस में एक दूसरे का माल इस्तेमाल करते हैं, तो ये शुबे का महल है। यहां शुबा पड़ सकता है वाकई भाई, यहां वाकई हकीकत में किसी को शुबा पड़ सकता है, लेकिन जो शुबे का महल ना हो वहां फिर हद ही आ जाएगी। मसलन एक भाई ने भाई की बांदी से सोहबत कर ली, या एक शख्स ने चचा की बांदी से सोहबत कर ली। अब भाई दो भाइयों के माल में तो इतनी बेतकल्लुफी नहीं होती कि वो एक दूसरे का माल खुला इस्तेमाल करें, एक शख्स और उसके चचा में तो इतनी बेतकल्लुफी नहीं होती, लिहाजा ये शुबे का महल ही नहीं है। लिहाजा यहां उसने भाई की बांदी से सोहबत की है, पूछा गया क्यों सोहबत की है, कहते हैं मैं तो समझा था मेरे लिए हलाल है। नहीं भाई, ये तो शुबे का महल ही नहीं है, लिहाजा यहां हद ही जारी होगी। तो शुबा फिल फेल वही मोतबर है जो शुबे का मकाम भी हो, जहां शुबा हो सकता है। बात समझ में आ गई जी। देखिए अब किताब पर कहते हैं सुम शुबहतु नौआनी, फिर ये शुबा जो है दो किस्म पर है, शुबहतुन फिल फेली, एक शुबा जो है फेल में, व तुसम्मा शुबा तश्तेबाहिन, और इसको शुबा इश्तेबाह भी कहते हैं। शुबा इश्तेबाह, शुबा इश्तेबा उस आदमी के लिए है जिसको इश्तेबा हुआ है, जिसको इश्तेबा नहीं उसके लिए शुबा भी नहीं। बेटे ने बाप की बांदी से सोहबत कर ली, अगर बेटे को इश्तेबा था तो हद नहीं, और अगर बेटे को इश्तेबा नहीं है, उसको पता है मेरे लिए हराम है, तो हद आ जाएगी। तो इसको शुबा इश्तेबा कहते हैं, क्योंकि इसमें दारोमदार उस आदमी के इश्तेबा पर है। इश्तेबा है तो शुबा भी है, और इश्तेबा नहीं तो शुबा भी नहीं, लिहाजा हद जारी होगी। तो कहते हैं वह तुसम मा शुभा तश्तेबाहिन, और इसको शुबा इश्तेबाह भी कहते हैं। वह शुभ तुम फिल महल्ली, और दूसरी किस्म जो है शुबा फिल महल है, और मैंने बताया इसका दूसरा नाम शुभा फिल मिल्क भी है। शुभा फिल मिल्क भाई, यानी मिल्कियत में शुबा आ जाए। कहते हैं वह शुभा तुम फिल महल्ली, और दूसरा शुबा फिल महल है। शुबा फिल महल क्या माना, यानी उस महल में ही शुबा आ गया है, उस मौतुआ के साथ सोहबत के हराम होने में शुबा आ गया, क्योंकि एक शरई दलील मौजूद है जो हिल्लत का पता दे रही है। तो कहते हैं वह शुभहतुन फिल महल्ली, और दूसरी किस्म शुबा जो है वह शुबा फिल महल है। वह तुसम्मा शुभहतन हुक्मियतन, और इसको शुबह हुक्मिया कहते हैं, इसको शुबह हुक्मिया कहते हैं, यानी यहां हलाल होने का शुबा होता है, हलाल होने का हुक्म लगाया जाए इसका शुबा होता है। जैसे हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया सहाबी से अंतवा मालुक अली अबी का, मैंने आपको बतलाया था कि बेटे का माल अलग होता है, बाप का माल अलग होता है, क्योंकि यह भी अहादीस से ही साबित है भाई। बात समझ में आ गई। जैसे बाप को बेटे का वारिस करार दिया गया है, अगर बाप बेटे के माल का मालिक है फिर तो सारा माल बाप को मिलना चाहिए मरने के बाद, लेकिन और वारिसों को भी मिलता है और बाप को भी थोड़ा हिस्सा मिलता है। मालूम हुआ बाप बेटे के माल का मालिक नहीं है भाई। तो लिहाजा और अहादीस से पता चला कि बेटे की बांदी बाप के लिए हराम है, लेकिन यह जो हदीस है अंतवा मालुकली अबी का, इस हदीस को अगर सिर्फ देखें, जरा उन दूसरी अहादीस को एक तरफ कर दें, सिर्फ अंतवा मालुकली अबी का इस हदीस को देखें, तो इससे तो यूं मालूम हो रहा है यह बांदी हलाल है बाप के लिए। तो देखो हलाल होने का शुबा आ रहा है इस हदीस की वजह से, और अगर और अहादीस ना होती तो हम हलाल ही करार दे देते भाई। तो इसलिए इसको शुबहे हुक्मिया कहते हैं। क्या माना शुबहे हुक्मिया? यानी हलाल का हुक्म होने का शुबा होता है, हलाल का हुक्म लगाने का शुबा होता है कि इस पर हलाल होने का हुक्म लगा दिया जाए। तो कहते हैं वह तू सम्मा शुभतन हुक्मियतन, और यह दूसरी किस्म जो शुभा फिल महल है इसको शुभा हुक्मिया भी कहते हैं। फल उला ततहक्कु, बस पहला शुभा जो है यानी शुभा फिल फेल, ततहक्कु वो साबित होता है, फी हक मन इश्तबाह अलैही, उस शख्स के हक में जिसको इश्तबाह हो जाए। पहला शुभा फिल फेल उस शख्स के हक में साबित है जिसको इश्तबाह हो जाए, इसलिए इसको शुबा इश्तेबाह कहते हैं, और जिसको इश्तेबाह ना हो उसके हक में वो शुबा भी साबित नहीं होगा। तो कहते हैं फल उला ततहक्कु फी हक मन इश्तबाह अलैही, तो पहली किस्म शुबा की जो है वो साबित होगी उस शख्स के हक में जिसको इश्तेबाह हो जाए। लिअन्न मानाहु, इसलिए क्योंकि इसका माना यह है भाई, इश्तेबाह हो जाए क्या माना? कहते हैं लिअन्न मानाहु, इसलिए क्योंकि इसका माना यह है, अन यज़ुन्न गैर दलील दलीलन, कि वो गैर दलील को दलील समझ बैठे। बेटे ने बाप की बांदी से सोहबत कर ली और कहता है मैं तो समझा था मेरे लिए हलाल है। भाई आप कैसे समझे थे आपके लिए हलाल है? कहते हैं बाप मेरी चीजें इस्तेमाल करता है, मैं बाप की चीजें इस्तेमाल करता हूं, तो मेरा तो ख्याल था कि ये मेरे लिए हलाल है। तो देखो उसने गैर दलील को दलील समझ लिया। तो यह माना है अन्न माना हूं, क्योंकि इसका माना यह है यानी जिसको इश्तेबाह हो जाए उसका माना यह है, अयसुन न गैर दलीली दलीलन, के वो गैर दलील को दलील समझे। वला बुद्ध मिन जन्नी, और गुमान का होना जरूरी है, लितहक्कुकिल इश्तेबाही, इश्तेबाह के पाए जाने के लिए। इश्तेबाह तभी होगा जब इस आदमी का यह गुमान है कि यह मेरे लिए हलाल है, तो हद साकित हो जाएगी। लेकिन अगर इस आदमी को इश्तेबाह ही नहीं है, गुमान ही नहीं है हलाल होने का, तो फिर हद भी साकित नहीं होगी। यह माना है वला बुद्ध मिन अज़्ज़नी, और उस आदमी का गुमान जरूरी है, लितहक्कुकिल इश्तिबाही, इश्तिबा के साबित होने के लिए। वसानियतु, और दूसरी किस्म जो शुबा की है, ततहक्कु वो साबित होता है, लिकियामि दलीलिन नाफी लिल हुरमति फी जाती ही। दूसरी किस्म का शुबा क्यों आया? क्योंकि वहां एक दलील मौजूद है जो हुरमत की नफी कर रही है। जैसे हुजूर अलैहिस्सलाम ने सहाबी से क्या फरमाया, अंतवा मालुकली अबी का, यह दलील हुरमत की नफी कर रही है। इस दलील से पता चल रहा है बेटे की बांदी बाप के लिए हलाल है, तो यानी एक शरई दलील मौजूद है। तो कहते हैं वसानियत ततहक्कु, और दूसरी किस्म का जो शुबा है यानी शुबा फिल महल, वो साबित होता है, लिकियामी दलील नाफी लिल हुरमती, इस वजह से कि एक दलील कायम होती है जो हुरमत की नफी कर रही होती है, फी जाती ही अपनी जात के एतबार से, वो दलील अपनी जात के एतबार से हुरमत की नफी कर रही है। भाई हुजूर अलैहिस्सलाम ने सहाबी से फरमाया अंतवा मालुक अली अबी का, यह हदीस अपनी जात के एतबार से हुरमत की नफी कर रही है, कतई नजर और दलीलों से, और दलीलें मौजूद हैं जो बतलाती हैं कि बेटे का माल अलग है, बाप का माल अलग है, लेकिन और दलीलों से कतई नजर, सिर्फ इस दलील को देखें तो यह दलील अपनी जात के एतबार से बतला रही है कि बेटे की बांदी बाप के लिए हराम नहीं है। तो ये ऐसी दलील है जो अपनी जात के एतबार से हुरमत की नफी कर रही है। बात समझ में आ रही है? फिर तर्जमा देख लीजिए, कहते हैं वसानियतु, और दूसरी किस्म का जो शुबा है, ततहक्कु लिकियामि दलीलिन नाफी लिल हुरमति फी जाती ही, वो साबित होती है बवजह एक ऐसी दलील के पाए जाने के जो अपनी जात के एतबार से हुरमत की नफी कर रही होती है। वला ततवक्कफु अला ज़न्निल जानी व इतिकादिही, जानी जिनायत करने वाला, वला ततवक्कफु अला ज़न्निल जानी व इतिकादिही, और ये जो दूसरी किस्म का शुबा है ये जिनायत करने वाले के गुमान और उसके एतिकाद पर मौकूफ नहीं है। मैंने आपको बतलाया कि शुबा फिल फ़िअल जो बंदे के गुमान से पैदा होता है, इसमें बंदे के गुमान का दखल है, अगर बंदे का गुमान है हलाल होने का तो फिर तो यह शुबा है, अगर बंदे का गुमान हलाल होने का नहीं तो यहां शुबा भी नहीं। जबकि शुबा फिल महल जो है वह एक शरई दलील की वजह से आया है, यहां बंदे के गुमान का कोई दखल नहीं, बंदा चाहे हलाल समझे या हराम समझे इसे कोई असर नहीं पड़ता। दोनों सूरतों में हद साकित हो जाएगी क्योंकि एक शरई दलील मौजूद है जो हुरमत की नफी कर रही है। तो यह माना है वला ततवक्कफु अला ज़न्निल जानी व इतिकादिही, और यह जो दूसरी किस्म का शुबा है यह जिनायत करने वाले के गुमान और उसके एतिकाद पर मौकूफ नहीं है। वल हद यस्कुतु बिन नौईनी, और हद जो है दोनों किस्म के शुबहों से साकित हो जाती है। लि इतलाकिल हदीस, हदीस के मुतलक होने की वजह से, हदीस में आया इदराउल हुदूद बिशुबहाती, शुभों की वजह से हुदूद को छोड़ दिया करो, हुदूद को खत्म कर दिया करो। वहां कोई तफसील बयान नहीं की गई कि शुबा फिल महल हो या शुबा फिल फेल हो, तो हदीस मुतलक है भाई। तो यह माना है वल हद यस्कुतु बिन नौईनी, और हद जो है वह साकित हो जाती है दोनों किस्म के शुभों से। लि इतलाकिल हदीसी, हदीस के मुतलक होने की वजह से। वन्ना सबु यस्बुतु फिस्सानियति इदा दअल वलदा, और यह जो दूसरी किस्म का शुबा है यानी जो शरई दलील की वजह से आया है, यहां पर नसब भी साबित हो जाएगा अगर वो वती करने वाला दावा कर दे। बाप ने बेटे की बांदी से सोहबत की और उसे औलाद पैदा हुई और बाप ने कहा ये मेरी औलाद है, तो नसब साबित हो जाएगा क्योंकि यहां जो शुबा आया था वो एक शरई दलील की वजह से आया था। जबकि पहली किस्म जो है शुबा फिल फेल, वहां अगर दावा भी कर दे फिर भी नसब साबित नहीं होगा क्योंकि वहां कोई दलील है ही नहीं। अलबत्ता उससे सिर्फ अपने गुमान की वजह से एक शुबा आया था तो उसकी वजह से हद तो साकित हो जाएगी लेकिन नसब साबित नहीं होगा। तो कहते हैं वन नसब यस्बुतु फिस्सानियति, और नसब साबित हो जाएगा दूसरी किस्म के शुबे में। इज़ा दअल वलदा, जब वो वती करने वाला बच्चे का दावा कर दे। वला यस्बुतु फिल उला, और पहली किस्म के अंदर नसब साबित नहीं होगा। व इन दआहु, अगरचे वो इस नसब का दावा कर दे। लिअन्न अल-फ़िअल तमहज़ ज़िनन फिल उला, इसलिए क्योंकि फेल जो है वह महज़ ज़िना है फिल उला, पहले शुबे की सूरत में, पहली शुबे की सूरत में वो महज़ ज़िना ही है, वहां किसी किस्म की हिल्लत की दलील मौजूद नहीं है भाई। तो कहते हैं लिअन्न अल-फ़िअल तमहज़ ज़िनन फिल उला, इसलिए क्योंकि वो फेल जो है वो महज़ ज़िना है फिल उला, पहले शुबे की सूरत में। व इन्नमा यस्कुतुल हद, और हद जो साकित हुई है, पहले शुबे में भी हद साकित हो जाती है। तो कहते हैं वह इन नमा यस्कुतुल हद, और हद जो साकित हुई है। लि अमरिन राजिइन इलैही, वो एक ऐसी चीज की वजह से जो इस जिना करने वाले की तरफ लौट रहा है। हद इसलिए साकित हुई कि एक ऐसी चीज मौजूद है जो इसी जानी की तरफ लौट रही है भाई। तो कहते हैं वह इन नमा यस्कुतुल हद लि अमरिन राजिइन इलैही, और यह जो हद साकित हुई है वह एक ऐसी चीज की वजह से है जो इसी जानी की तरफ लौट रही है। वह वश्तबाहुल अम्र अलैही, और वो उस पर मामले का मुश्तबे होना, इस जानी पर मामला मुश्तबे हो गया था इसलिए हद साकित हो गई, वरना उसका यह फेल महज़े ज़िना ही है भाई। तो कहते हैं वह वश्तबाहुल अम्र अलैही, और वो इस जानी पर मामले का मुश्तबे होना है। वलम यतमहस फिस्सानियति, और यह फेल जो है सिर्फ जिना नहीं है दूसरे शुबे की सूरत में, शुबा फिल महल की सूरत में ये जो फेल किया है, ये जो वती की है, ये महज़े ज़िना नहीं है, इसलिए क्योंकि यहां पर बाकायदा एक शरई दलील की वजह से हलाल होने का शुबा होता है भाई। तो कहते हैं वलम यतमहज़ फिस्सानियति, और दूसरी सूरत के अंदर फेल महज़े ज़िना नहीं है। आगे देखिए फशुबहतुल फ़िअली फी समानियति मवाज़िआ, पस शुबा फेल जो है वो आठ जगहों में है। साहिबे हिदाया आपको बतलाएंगे कि शुबा फिल फेल तो आठ जगह आता है, अलबत्ता शुबा फिल महल वो छह जगह हैं। तो अब पहले शुबा फिल फेल की तफसील बयान कर रहे हैं। तो कहते हैं फशुबहतुल फ़िअली फी समानियति मवाज़िआ, पस शुबा फेल जो है वो आठ जगहों में है। जारियतु अबीही व उम्मीही व ज़ौजतीही, ये जो जारिया का लफ्ज आया यहां से अब देखो वो तफसील बयान हो रही है उन आठ जगहों की, यानी माकबल में इजमालन जिक्र किया कि वो आठ जगह हैं, और फिर आगे एक एक को तफसील से बयान कर रहे हैं। तो याद रखो जब भी इजमाल के बाद तफसील आ जाए तो वहां पर तीन किस्म के एराब जायज होते हैं, तीन किस्म के एराब जायज होते हैं, रफा भी जायज, नसब भी जायज और बदल बनाना भी जायज। रफा भी जायज, नसब भी जायज और बदल बनाना भी जायज है। रफा इसलिए जारियतु अभी ही आई आहदुहा जारियतु अभी ही, तो मुब्तदा महजूफ है आहदुहा, उन जगहों में से एक जगह जो है जारियतु अभी ही वो बाप की बांदी है, तो अहदुहा ये मरफू मुब्तदा है और जारियतु अभी ही ये उसकी खबर है और खबर मरफू होती है। या इसको मफूल बना लें आनी फेल के लिए, आनी मेरी मुराद जो है जारियत अभी ही, पीछे जिक्र किया वो आठ जगह हैं, वो कौन सी आठ जगह हैं, आनी जारियत अभी ही यानी बाप की बांदी और आगे तो बाकी जगहों की तफसील। तो ये मनसूब होगा आनी के लिए, मफूल भी ही है भाई। और तीसरी सूरत ये है कि माकबल से बदल बनाएंगे, तो माकबल में फी समानियती मवाजिया वो मजरूर है, उस पर फी जारा दाखिल है, तो यहां जारियती अभी ही इस पर जर भी जायज है क्योंकि बदल और मुबदल मिनहू का एक ही एराब होता है। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं फशुबहतुल फ़िअली फी समानियती मवाज़िया, पर शुबह फेल जो है वो आठ जगहों में होता है, जारियतु अभी ही बाप की बांदी, व उम्मी ही ये उम्मी ही का आतफ है अभी ही पर, और अभी ही की तरफ इजाफत हो रही है जारिया की, आई जारियतु उम्मी ही और मां की बांदी, वह जौजती ही इस जौजती ही का आतफ भी अभी ही पर है, आई जारियतु जौजती ही यानी अपनी बीवी की बांदी। ये तीन जगह हो गई, जारियतु अभी ही, वह जारियतु उम्मी ही, वह जारियतु जौजती ही, ये तीन मकामात हो गए। वल मुतल्लकतु सलासन और वो औरत जिसको तीन तलाकें दी गई हैं, वही फिल इद्दती इस हाल में कि यह इद्दत में है, एक शख्स ने अपनी बीवी को तीन तलाकें दी और इद्दत के अंदर उसके साथ फिर सोहबत कर ली, इद्दत के अंदर सोहबत कर ली, अब ये महज़ ज़िना है, लेकिन वो कहता है भाई मैं तो समझा था अभी भी जब तक इद्दत है ये मेरे लिए हलाल है क्योंकि खर्चा भी मैं दे रहा हूं और रिहाइश भी इसको मैंने दी हुई है और नीर इसको मैं बाहर निकलने से भी रोक सकता हूं, तो लिहाजा ये मुतल्लका सलास के साथ खावंद इद्दत के अंदर सोहबत कर ले और कहे कि मेरा तो ख्याल था मेरे लिए हलाल है, तो ये शुबा फिल फ़िअल है, इसको इश्तेबाह हो गया था, तो लिहाजा इस पर हद जारी नहीं होगी। और अगर वो कहता है मुझे पता था मेरे लिए हराम है मैंने फिर भी वती कर ली, तो याद रखो इस सूरत में इस पर हद जिना जारी होगी। तो कहते हैं वल मुतल्लकतु सलासन वही फिल इद्दती और वो मुतल्लका जिसको तीन तलाकें दी गई हैं इस हाल में कि इद्दत में हो, व बाइनन बित तलाकी अला मालिन, बाइनन इसका आतफ है सलासन पर, आई वल मुतल्लकतु बाइनन बित तलाकी अला मालिन वही फिल इद्दती, या एक औरत है उसको तलाके बाइन दी गई है माल के इवज यानी उसे खुला कर लिया, आपने पढ़ा खुला भी तलाके बाइन के हुक्म में है, लेकिन मैंने आपको बतलाया था खुला के अंदर तलाक का लफ्ज नहीं होता, लेकिन अगर बकायदा तलाक का लफ्ज जिक्र कर दिया और माल लिया कि मैं तुम्हें इतने माल के बदले तलाक देता हूं तो फिर उसको तलाक आला इवस कहते हैं। तो बहरहाल चाहे खुला हो चाहे माल लेकर तलाक दे दे, यह तलाके बाइन है भाई, और तलाके बाइन के अंदर भी रिहाइश और नफका खावन के जिम्मे होता है, तो इद्दत के अंदर इसने उससे सोहबत कर ली और फिर कहता है मेरा तो ख्याल था कि मैं खर्चा भी दे रहा हूं रिहाइश भी मैंने दी हुई है, तो मैं समझा था जब तक इद्दत पूरी नहीं होती ये मेरे लिए हलाल है, तो ये शुबा इश्तेबा है, इसको इश्तेबा हो गया था लिहाजा हद साकित हो जाएगी। और अगर ये कहता है मुझे पता था मेरे लिए हराम है मैंने फिर भी वती कर ली, तो इस सूरत में इस पर हद जारी होगी। तो कहते हैं वह बाइनम बितलाकी अला मालिन, और वो मुतल्लका बाइना जिसको माल पर तलाक दी गई हो, वही फिल इद्दती इस हाल में कि ये इद्दत में है, वह उम्मु वलदिन आतकहा मौलाहा, ये छठा मकाम आ गया भाई, वह उम्मु वलदिन आतकहा मौलाहा और वो उम्मे वलद की जिसे उसका आका आजाद कर दे, भाई उम्मे बलद वो बांदी है जिसे आका ने कहा है तू मेरे मरने के बाद आजाद है, लेकिन आका ने मरने से पहले जिंदगी में ही उसको आजाद कर दिया। और आप पढ़ चुके हैं पीछे कि उम्मे वलद इस सूरत में उम्मे वलद इद्दत गुजारेगी और तीन हैज इद्दत गुजारेगी, फिर आगे निकाह कर सकती है, जब तक आगे वो निकाह भी नहीं कर सकती। तो ये जो उम्मे वलद है जिसको आका ने आजाद कर दिया है, इसके साथ आका ने इद्दत के अंदर सोहबत कर ली, तो इसका भी वही हुक्म है जो मुतल्लका सलास का था, क्योंकि यहां पर भी इस उम्मे वलद की रिहाइश और खर्चा आका के जिम्मे है इद्दत के अंदर। तो लिहाजा अगर आका को इश्तेबाह था तो हद साकित, और अगर इश्तेबाह नहीं था तो हद जारी होगी, क्योंकि ये शुबा फिल फेल है, यहां कोई शरई दलील मौजूद नहीं है। भाई तो कहते हैं वह उम्मे वलदिन आतकहा मौलाहा, और वो उम्मे वलद जिसे उसके आका ने आजाद कर दिया हो, वही फिल इद्दत इस हाल में कि ये इद्दत में है, व जारियतुल मौला फी हकिल अब्दी, और आका की बांदी गुलाम के हक में। भाई एक शख्स है उसकी एक बांदी है और एक गुलाम भी है, इस शख्स के गुलाम ने अपने आका की बांदी से सोहबत कर ली और कहने लगा मैं तो समझा था ये मेरे लिए हलाल है। वजह यह कि आका और गुलाम में बेतकल्लुफी होती है, गुलाम का सारा खर्चा आका के जिम्मे होता है, वो आका की चीजें वगैरह इस्तेमाल करता है, तो लिहाजा गुलाम कहता है कि ये तो मेरे आका की बांदी थी, मैं समझा था मेरे लिए हलाल है इसलिए मैंने सोहबत कर ली। तो यह भी शुबा इश्तेबाह है भाई, तो अगर इसका यह गुमान था तो हद साकित, हद नहीं आएगी, और अगर इसका यह ख्याल था कि यह मेरे लिए हराम है फिर भी इसने वती कर ली तो फिर हद जारी होगी। तो कहते हैं वह जारियतुल मौला फी हकिल अब्दी, और आका की बांदी उस आका के गुलाम के हक में, वल जारियतुल मरहूनतु फी हकिल मुर्तहीनी फी रिवायती किताबिल हुदूद, और वो बांदी जिसको रहन रखवाया गया है मुर्तहिन के हक में, फी रिवायती किताबिल हुदूद, किताबुल हुदूद की रिवायत में। भाई देखो एक शख्स ने दूसरे से कर्ज लिया और बतौर रहन के उसके पास अपनी बांदी रखवा दी, तो याद रखो ये जो रहन रखवाने वाला है इसको कहते हैं राहिन, और जिसके पास उसने ये बांदी रहन रखवाई है वो है मुर्तहिन। तो अब इस मुर्तहिन ने इस मरहूना बांदी से सोहबत कर ली और कहता है मेरा तो ख्याल था कि यह बांदी मेरे लिए हलाल है, तो याद रखो यह शुभा फिल फिअल है, लिहाजा उस मुर्तहिन पर हद नहीं आएगी, और अगर उसका यह ख्याल है कि यह मेरे लिए हलाल है तो फिर इस सूरत में उस पर हद आएगी। तो मरहूना बांदी के साथ मुर्तहिन सोहबत कर ले तो यह भी शुभा फिल फिअल है, यानी यह भी शुबा इश्तिबाह है भाई। तो कहते हैं वल जारियतुल मरहूनतु फी हकिल मुर्तहिनी, और मुर्तहिन के हक में यह मरहूना बांदी, इसके साथ भी वती क्या है, इसके साथ अगर वो वती कर ले तो वो शुभा फिलफेल के अंदर दाखिल है। फिर रिवायती किताबिल हुदूदी, किताबुल हुदूद की रिवायत में। याद रखो ये जो मरहूना बांदी है मुर्तहिन के पास और मुर्तहिन इस बांदी से सोहबत कर लेता है, यह शुबा फिल फेल है या यह शुबा फिल महल है, तो इस बारे में इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह से दो रिवायतें हैं। एक किताबुल हुदूद की रिवायत है जैसे यहां जिक्र हो रहा है, फिर रिवायती किताबिल हुदूद, और यह साहिब हिदायत कौन से मकामात जिक्र फरमा रहे हैं जहां शुबा फिल फेल होता है। तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ने जो मुर्तहिन मरहूना बांदी से सोहबत कर ले इसको किताबुल हुदूद के अंदर शुबा फिल फेल में जिक्र फरमाया, और किताबुल रहन के अंदर इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ने इसको शुबा फिल महल के अंदर जिक्र फरमाया। तो इसमें दोनों रिवायतें हैं, ये जो मुर्तहिन मरहूना बांदी से सोहबत करे इसके बारे में दो रिवायतें हैं, एक रिवायत के मुताबिक ये शुबा फिल फेल है और एक रिवायत के मुताबिक ये शुबा फिल महल है। और उलमा ने इस रिवायत, ये जो शुबा फिल फेल वाली रिवायत है यानी किताबुल हुदूद वाली जो रिवायत है उसको ज्यादा सहीह करार दिया है, किताबुल रहन वाली रिवायत भी सही लेकिन किताबुल हुदूद वाली रिवायत ज्यादा सही है। और ये शुबा किस तरह है, ये शुबा फिल फेल किस तरह है और ये शुबा फिल महल किस तरह है? कहते हैं देखो ये शुबा फिल महल इस तरह है कि ये जो मुर्तहिन ने बांदी को रखा है ये किस लिए रखा है, अपना कर्जा वसूल करने के लिए, لہذا اگر مرتہین کے پاس یہ باندی ہلاک ہو گئی, توجہ سے سنو, مرتہین کے پاس اگر یہ باندی ہلاک ہو گئی تو یوں ہی سمجھا جائے گا مرتہین نے اپنا قرضہ وصول کر لیا اور ابھی سے نہیں وصول کر لیا, یوں سمجھیں گے جس وقت اس کے پاس باندی رکھوائی گئی تھی بطور رہن کے اس وقت سے ہی اس نے اپنا دین وصول کر لیا تھا. باندی تو ابھی ہلاک ہوئی ہے مرتہین کے پاس, لیکن یوں سمجھا جائے گا اس نے اپنے دین پر قبضہ کر لیا, وصول کر لیا. اور کب وصول کیا تھا؟ جس دن باندی پر اس نے قبضہ کیا تھا. توجہ ہے؟ تو اس قبضے کی طرف نسبت کی جائے گی. معلوم ہوا اس وقت سے ہی یہ باندی اس کی مملوک ہو چکی ہے. جب اس وقت سے ہی باندی مملوک ہو چکی ہے تو یہ جب صحبت کر رہا ہے تو اپنی مملوکہ باندی سے صحبت کر رہا ہے, لہذا یہاں شبہ فی المحل آ گیا. توجہ ہے؟ شریعت نے اس مرتہین کے مالک ہونے کا اعتبار کیا کہ یہ اس باندی کا مالک بن گیا تھا. کب سے مالک بنا تھا؟ جب اس نے اس باندی پر قبضہ کیا تھا. معلوم ہوا جب سے اس کے قبضے میں آئی تھی یہ اسی کی مملوکہ باندی تھی, تو یہ تو اپنی مملوکہ باندی سے صحبت کر رہا ہے. تو یہ شبہ ایک شرعی دلیل کی وجہ سے آیا, لہذا یہ شبہ فی المحل ہے. اس لیے امام محمد رحمہ اللہ نے اس کو کتاب الرہن کے اندر شبہ فی المحل قرار دیا ہے بھائی, جبکہ کتاب الحدود کی روایت اس کو فقہا اور علماء نے زیادہ صحیح کہا ہے, اور اس کے مطابق یہ شبہ فی الفعل ہے. یہ شبہ فعل ہے. وجہ یہ کہ مرتہین جو ہے باندی کے ہلاک ہونے کے بعد یوں سمجھا جائے گا گویا اس نے اپنا قرضہ وصول کر لیا ہے. تو جب باندی کے ہلاک ہونے کے بعد یہ اپنا قرضہ وصول کرنے والا شمار ہو رہا ہے تو معلوم ہو اس سے پہلے باندی سے نفع اٹھانا اس کے لیے جائز نہیں ہے بھائی. ہلاکت کے بعد ملکیت ثابت ہوگی, ہلاکت سے پہلے تو ملکیت ثابت نہیں. بے شک ہلاکت کے بعد ملکیت کی نسبت اس زمانے کی طرف کی جائے گی جس وقت باندی پر قبضہ کیا تھا, لیکن جب تک باندی ہلاک نہیں اس وقت تک یہ مالک بھی نہیں. تو لہذا اس باندی سے نفع اٹھانا بھی اس کے لیے جائز نہیں. لہذا یہ جو صحبت کر رہا ہے یہ محض زنا ہی ہے. تو یہاں اگر اس کو اشتباہ ہوا ہے پھر تو حد ساقط ہوگی, اور اگر اس کو اشتباہ نہیں تھا تو پھر حد بھی ساقط نہیں ہوگی. یعنی یہ شبہ فی الفعل ہے بھائی. تو کہتے ہیں والجاریت المرہونۃ فی حق المرتہینی, اور مرہونہ باندی مرتہین کے حق میں, فی روایتی کتاب الحدود, کتاب الحدود کی روایت میں. اور میں نے بتایا علماء نے اس کو زیادہ صحیح کہا ہے کہ یہ شبہ فی الفعل ہی ہے بھائی. ففی ہادہ المواضع لا حد اذا قال ظننت انها تحل لی, تو ان جگہوں کے اندر حد نہیں ہوگی جب وہ یہ کہے کہ میرا تو یہ گمان تھا کہ انها تحل لی, کہ یہ میرے لیے حلال ہے. ولو قال علمت انها علی حرام وجب الحد, اور اگر اس نے کہا کہ میں تو جانتا تھا کہ یہ مجھ پر حرام ہے, وجب الحد, تو حد واجب ہوگی. وشبہ تو فی المحل فی ستتی مواضع, اور شبہ فی المحل جو ہے وہ چھ جگہوں کے اندر ہے. جاریت ابنی ہی, اپنے بیٹے کی باندی. اب شبہ فی المحل بیان فرمائیں گے صاحب ہدایا. سب سے پہلا مقام ہے جاریت ابنی ہی, اپنے بیٹے کی باندی. اور اپنے بیٹے کی باندی اس کے بارے میں تو حدیث ہے انت و مالوکا لی ابی کا, اس حدیث کی وجہ سے شبہ ملکیت آتا ہے. تو کہتے ہیں چھ جگہوں کے اندر شبہ فی المحل ہے. نمبر ایک جاریت ابنی ہی, والمطلقۃ طلاقم بائنم بالکنایاتی, اور وہ مطلقہ جس کو طلاق بائن دی گئی ہو کنایات کے ذریعے. بھئی آپ نے پڑھا تھا کہ طلاق کے کچھ الفاظ صریح ہیں اور کچھ کنایات ہیں. بھئی صریح لفظ کے اندر نیت کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. خاون نے بیوی سے انت طالقن کہا تو خاون سے نیت نہیں پوچھی جائے گی, کیونکہ اس یہاں انت طالقن کا اور کوئی معنی ہی نہیں ہے, طلاق فوراً واقع ہو جائے گی. جبکہ کچھ الفاظ کنایات ہیں, یعنی جہاں گول مول بات کی جاتی ہے وہاں طلاق کا بھی معنی ہوتا ہے اور غیر طلاق کا بھی معنی ہوتا ہے. جیسے انتی بائنن, خاون نے بیوی سے کہا انتی بائنن تو جدا ہے, اس کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ میں نے تجھے طلاق دے دی ہے تو مجھ سے جدا ہے, اور اس کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ تو عادتوں کے اندر اور عورتوں سے جدا ہے, یا تو حسن و جمال میں اور عورتوں سے جدا ہے. تو کنائے کے اندر اور معنی کا بھی احتمال ہوتا ہے. تو آپ نے پڑھا تھا کہ عند الاحناف صرف تین کنایات ایسے ہیں جن سے طلاق رجعی ہوتی ہے, باقی تمام کنایات سے طلاق بائن ہوتی ہے, اور باقی تمام کنایات میں اگر تین کی نیت کرے گا تو تین طلاقیں بھی ہو جائیں گی. تو البتہ صرف تین کنائے ایسے ہیں جن سے طلاق رجعی ہوگی عند الاحناف. پہلا اعتدی, تو عدت گزار. دوسرا استبرئی رحمکی, تو اپنے رحم کو صاف کر لے. اور تیسرا انتی واحدہ, تو ایک ہے, تو اکیلی ہے. تو یہ تین کنایات ہیں, اعتدی, استبرئی رحمکی اور انتی واحدہ. ان کے ذریعے طلاق رجعی ہے, اور باقی تمام کنایات کے ذریعے طلاق بائن بھی ہے, اور ان کے اندر اگر کوئی شخص تین طلاقوں کی نیت کرے گا تو تین طلاقیں بھی واقع ہو جائیں گی. یاد رکھو یہ جو کنایات کا مسئلہ ہے اس میں صحابہ کے اندر ہی اختلاف پایا جاتا تھا. بعض صحابہ فرماتے تھے کنایات کے ذریعے ہمیشہ طلاق رجعی ہوتی ہے, اور طلاق رجعی کے بعد تو عدت کے اندر خاوند کے لیے صحبت جائز ہوتی ہے, اور خاوند صحبت کر لیتا ہے تو رجوع ہو جاتا ہے. جبکہ بعض صحابہ کی رائے یہ تھی کہ کنایات کے ذریعے ہمیشہ طلاق بائن ہوتی ہے. کنایات کے ذریعے ہمیشہ طلاق بائن ہوتی ہے, تو صحابہ کے اندر ہی اس کا اختلاف تھا. لہذا ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق بائن دے دی کنائے کے ذریعے, مثلا کانتی بائن ان طلاق کی نیت کی, تو عند الاحناف طلاق بائن ہو گئی بھائی. اور پھر اس نے اس عورت کے ساتھ صحبت کر لی عدت کے اندر, تو اب یہاں حد نہیں آئے گی, کیونکہ شرعی دلیل موجود ہے کہ صحابہ کے اندر بھی اس کا اختلاف پایا جاتا تھا بھائی. تو یہ مانا ہے والمطلقت طلاقم بائنم بالکنایاتی, اور وہ مطلقہ جس کو کنایات کے ساتھ طلاق بائن دی گئی ہو, والجاریت المبیعت فی حق البائع قبل التسلیم, اور وہ باندی جس کو بیچا گیا ہے بائے کے حق میں سپرد کرنے سے پہلے. بھائی دیکھیے, ایک شخص نے اپنی باندی کسی کو فروخت کر دی کہ میں تمہیں اپنی باندی فروخت کرتا ہوں, دونوں کے درمیان بیع ہو گئی. ابھی اس نے باندی اس کے سپرد نہیں کی, اس نے سپرد کرنے سے پہلے باندی سے صحبت کر لی. یاد رکھو اس صورت میں اس شخص پر حد زنا جاری نہیں ہوگی. اس شخص پر حد زنا, یہ بائع جو ہے بیچنے والا, اس نے باندی مشتری کے حوالے کرنے سے پہلے اس کے ساتھ صحبت کر لی, تو اس پر حد جاری نہیں ہوگی. آپ کہیں گے, آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا کہ بیع کرتے ہی مشتری مبیعے کا مالک بن جاتا ہے, بیع کرتے ہی مشتری مبیعے کا مالک بن جاتا ہے, تو یہ باندی اگرچہ ابھی تک بائے کے پاس ہے لیکن مالک تو مشتری بن چکا ہے, لہذا اس کے ساتھ صحبت کرنے پر حد زنا جاری ہونی چاہیے. تو جواب یہ کہ نہیں, یہاں ایک شرعی دلیل موجود ہے. شرعی دلیل کیا؟ یاد رکھو, اگر مبیعہ مشتری کے حوالے کرنے سے پہلے ہلاک ہو جائے تو بیع ہی ختم ہو جاتی ہے, بیع ہی ختم ہو جاتی ہے. معلوم ہوا ابھی بائے کی ملکیت ختم نہیں ہوئی. اگر بائے کی ملکیت ختم ہو گئی تھی اور مشتری مالک بن گیا تھا تو پھر تو چاہے مبیعہ مر بھی جائے بیع ختم نہیں ہونی چاہیے بھائی. تو نہیں, توجہ دیکھو, مبیعہ اگر مشتری کے حوالے نہیں کیا اور اس سے پہلے ہی مبیعہ ہلاک ہو جائے تو بیع ہی ختم ہو جاتی ہے. اگر مشتری مالک بن گیا تھا پھر تو بیع کو ختم نہیں ہونا چاہیے تھا بھائی. مشتری مالک بن چکا ہے تو مشتری کی چیز ہلاک ہوئی ہے, لیکن فقہا فرماتے ہیں کہ نہیں, اس صورت میں بیع ہی ختم ہو جائے گی, گویا بیع ان کے درمیان ہوئی ہی نہیں. یوں سمجھو بائے کی چیز ہلاک ہوئی ہے, تو لہذا مشتری کو سمن بھی نہیں دینے پڑیں گے. تو یہ دلیل ہے, معلوم ہوا ابھی بھی بائے کی ملکیت ہے. معلوم ہوا مبیعہ حوالے کرنے سے پہلے اگر مبیعہ مر گیا تو بائے کی چیز ہلاک ہو گئی, اب مشتری کو سمن نہیں دینے پڑیں گے کیونکہ بیع ہی ختم ہو گئی. تو جب مبیعہ حوالے کرنے سے پہلے ہلاک ہو جائے تو یوں سمجھا جاتا ہے بائے ہی کی چیز ہلاک ہوئی ہے, معلوم ہوا ابھی بھی بائے کی ملکیت تھی, اسی لیے تو یہ شمار کیا گیا کہ بائے کی چیز ہلاک ہوئی ہے. تو اس دلیل سے شبہ پیدا ہو گیا اور یہ شبہ ایک شرعی دلیل کی وجہ سے آیا اور وہ شرعی دلیل جو میں نے ذکر کر دی کہ بائع کے سپرد کرنے سے پہلے مبیع اگر اس کے پاس ہلاک ہو جائے تو شرعاً وہ بیع ختم ہو جاتی ہے. تو معلوم ہوا یہاں ایک شرعی دلیل موجود ہے بائع کی ملکیت پر بھائی، جس سے شبہ ہوتا ہے شاید یہ باندی ابھی بھی اس کے لیے حلال ہے بھائی. اور یہ شبہ کس کی وجہ سے آیا؟ باقاعدہ ایک شرعی دلیل کی وجہ سے. لہذا بائع نے اگر اس باندی سے صحبت کر بھی لی تو بھی حد نہیں آئے گی. یہ معنی ہے والجاریت المبیعت فی حق البائع قبل التسلیمی، اور وہ باندی جس کو بیچا گیا ہے بائع کے حق میں سپرد کرنے سے پہلے. والممہورت فی حق الزوج قبل القبض، ممہورہ بھائی وہ باندی جسے مہر قرار دیا ہے، ایک شخص نے ایک عورت سے نکاح کیا ہے، ایک شخص نے ایک عورت سے نکاح کیا ہے اور اپنی باندی کو مہر مقرر کیا ہے کہ بطور مہر کے میں تمہیں یہ باندی دوں گا، چنانچہ یہ مہر مقرر کر کے خاوند نے اس عورت سے نکاح کر لیا، اور پھر یہ باندی بیوی کو دینے سے پہلے خاوند نے اس باندی سے صحبت کر لی، تو یاد رکھو خاوند پر حد نہیں آئے گی، خاوند پر حد نہیں آئے گی، کیونکہ ایک شرعی دلیل کی وجہ سے شبہ ہوتا ہے کہ شاید ابھی بھی یہ خاوند کی ملکیت اس میں ہے، ایک شرعی دلیل کی وجہ سے ابھی بھی شبہ ہوتا ہے کہ خاوند کی ابھی بھی اس کے اندر ملکیت ہے. اور وہ دلیل کیا؟ وہ دلیل یہ، توجہ سے سنو بھائی، وہ دلیل یہ کہ یہ جو مہر ہے، مہر مہر میں ایک طرف سے تو خاوند مال دے رہا ہے اور بیوی کی طرف سے تو مال نہیں ہے. تو جب صرف خاوند کی طرف سے مال ہے تو یوں سمجھو یہ عقد معاوضہ ہے ہی نہیں، یہ تو عقد تبرع ہے بھائی، یہ عقد معاوضہ ہے ہی نہیں بلکہ عقد تبرع. خاوند ویسے ہی اپنی طرف سے باندھی اس عورت کو دے رہا ہے کیونکہ اس کی طرف سے تو بدلے میں مال نہیں آ رہا، تو جب خاوند ویسے ہی اپنی طرف سے مال دے رہا ہے تو یہ تو ہبا کے درجے میں ہوا، اور ہبا کے اندر جب تک وہ دوسرا آدمی اس ہبا پر قبضہ نہ کرے وہ مالک نہیں بنتا. تو لہذا جب تک اس بیوی نے اس خاوند کی باندھی پر قبضہ نہیں کیا وہ مالک نہیں بنی، ابھی بھی اس خاوند کی ملکیت باقی ہے. تو اس وجہ سے شبہ پیدا ہو گیا، یہ جو مہر ہے یہ دیکھا جائے تو ہبا کے درجے میں ہے، جس کی وجہ سے شبہ آ گیا کہ شاید ابھی بھی خاوند مالک ہے، تو اس کی وجہ سے اب خاوند نے صحبت کر لیا تو اس پر حد جاری نہیں ہوگی. دلیل سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ معنی ہے والممہورت فی حق زوج قبل القبض، اور وہ باندی جس کو مہر مقرر کیا گیا ہے خاوند کے حق میں قبل القبض، قبضے سے پہلے، یعنی بیوی کے قبضے سے پہلے. والمشترکت بینہ وبین غیرہ، اور وہ باندی جو اس آدمی اور غیر کے درمیان مشترک ہے. بھائی صورت یہ، ایک باندی ہے اور دو آدمیوں کے درمیان مشترکہ ہے. میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ جب باندی دو یا زیادہ آدمیوں کے درمیان مشترک ہو تو کسی ایک کے لیے بھی اس کے ساتھ صحبت جائز نہیں ہے، لیکن پھر ان میں سے ایک اس کے ساتھ صحبت کر لیتا ہے تو یاد رکھو اس صورت میں حد نہیں آئے گی، اگرچہ اس نے حرام فعل کیا لیکن حد نہیں آئے گی. وجہ یہ کہ اس کی ملکیت باندی کے اندر موجود ہے، اور یہ ملکیت تو حلت کا تقاضا کر رہی ہے، تو لہذا ایک شرعی دلیل موجود ہے کہ اس آدمی کی باندی میں ملکیت موجود ہے اور ملکیت حلال ہونے کا تقاضا کرتی ہے. تو کہتے ہیں والمشترکہ تو بینہ و بین غیرہ، اور وہ باندی جو مشترک ہو اس وتی کرنے والے کے درمیان اور غیر کے درمیان. والمرہونت فی حق المرتہین فی روایت کتاب الرہنی، اور مرہونہ باندی مرتہین کے حق میں کتاب الرہن کی روایت میں، مرہونہ باندی مرتہین کے حق میں کتاب الحدود کے اندر یہ ذکر ہے کہ یہ شبہ فی الفعل کی قبیل سے ہے، اور کتاب الرہن کے اندر ذکر ہے کہ یہ شبہ فی المحل کی قبیل سے ہے، تو یہاں بھی اس کو ذکر کر دیا. تو کہتے ہیں والمرہونت فی حق المرتہین فی روایت کتاب الرہن، اور مرتہین کے حق میں مرہونہ باندی کتاب الرہن کی روایت میں. ففی ہذہ المواضع لا یجب الحد، تو ان جگہوں کے اندر حد واجب نہیں ہوگی. وان قال علمت انها علی حرام، اگرچہ وہ شخص یہ کہے کہ میں جانتا تھا کہ یہ مجھ پر حرام ہے، کیونکہ یہاں شبہ جو آیا ہے وہ باقاعدہ ایک شرعی دلیل کی وجہ سے آیا ہے، لہذا یہاں اس بندے کی رائے کی طرف نہیں دیکھا جائے گا اور اس سے کوئی اثر نہیں پڑے گا. آگے دیکھیے, ثم شبہ تو عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تثبت بالعقد. یہ اب ایک تیسری قسم کا شبہ آ گیا. عام فقہا کے نزدیک شبہ دو ہی قسم کے ہیں, ایک شبہ فی الفعل اور ایک شبہ فی المحل. جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک تیسری قسم بھی شبہ کی ہے جو عقد کی وجہ سے آئے. جب ایک شخص ایک عورت سے عقد کر لیتا ہے تو اس کی وجہ سے شبہ آ جاتا ہے, چاہے وہ عورت اس کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہی کیوں نہ ہو. مثلا ایک شخص نے اپنی رضاعی بہن سے نکاح کر لیا, اب یہ رضاعی بہن بھی وہ حقیقی بہن کی طرح ہمیشہ کے لیے انسان پر حرام ہوتی ہے, لیکن اس شخص نے تو اس سے عقد کیا ہے, اس عقد کی وجہ سے شبہ آ گیا. جب شبہ آ گیا تو لہذا اب اس شخص پر حد جاری نہیں کی جائے گی. جبکہ دیگر فقہا فرماتے ہیں کہ نہیں, اگر اس کو رضاعت کا پتا تھا, اس کو پتا تھا یہ میرے لیے حرام ہے, پھر یہ عقد کرتا ہے, تو اس صورت میں اس پر حد جاری کی جائے گی. جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں نہیں, اس عقد کی وجہ سے شبہ آ چکا ہے, اور جب شبہ آ گیا ہے تو اب حد جاری نہیں کی جائے گی. معلوم ہوا امام صاحب کے نزدیک عقد کی وجہ سے جو شبہ آئے وہ بھی شبہ فی المحل کی طرح ہے. جیسے شبہ فی المحل کے اندر اس بندے کی رائے کا کوئی اعتبار نہیں ہے, اسی طرح امام صاحب بھی فرماتے ہیں جب عقد کیا ہے تو وہ بندہ چاہے کہے کہ مجھے پتا تھا میرے لیے حرام ہے, پھر بھی اس پر حد جاری نہیں ہوگی. تو کہتے ہیں ثم شبہ تو عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی تثبت بالعقد, پھر یہ شبہ, یا یوں کریں الشبہ سے مراد شبہ فی المحل مراد لے لیں, تیسری قسم نہ بنائیں, یہ شبہ فی المحل ہی میں داخل ہے. البتہ اور علماء اس کے قائل نہیں, امام صاحب اس کے قائل ہیں. تو کہتے ہیں ثم شبہ تو, پھر یہ والا جو شبہ ہے یعنی شبہ فی المحل عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تثبت بالعقد, امام صاحب کے نزدیک یہ عقد کی وجہ سے بھی ثابت ہو جاتا ہے. وان کان متفقا علی تحریمہ, اگرچہ اتفاق کیا گیا ہو اس عقد کے حرام ہونے پر, اگرچہ اس عقد کے حرام ہونے پر سب کا اتفاق ہو, پھر بھی اگر عقد کر لیتا ہے تو شبہ آ جائے گا بھائی. تو کہتے ہیں وہ ان کانا متفقا علی تحریمی ہی, اگرچہ اس عقد کے حرام ہونے پر اتفاق کیا گیا ہو, وہ ہوا عالم بھی ہی, اور حال یہ ہے کہ وہ شخص بھی اس حرمت کو جانتا ہے, پھر بھی یہ شبہ فی المحل ہے, اس کی وجہ سے حد جاری نہیں ہوگی. وعند الباقین, اور باقی علماء کے نزدیک لا تثبت اذا علم بتحریمہ, کہ یہ شبہ جو ہے ثابت نہیں ہوگا جب وہ شخص اس عقد کے حرام ہونے کو جانتا ہے. ویظہر ذلک فی نکاح المحارم, اور یہ ظاہر ہوتا ہے محرموں سے نکاح کے اندر, یہ شبہ ظاہر ہوتا ہے محرموں سے نکاح کے اندر. علامہ یاتی کا انشاء اللہ تعالی, اس وجہ سے جو آپ کے پاس آ جائے گی انشاء اللہ تعالی, یعنی آگے صاحب ہدایہ اس کی صورت بھی بیان فرمائیں گے. تو کہتے ہیں ویظہر ذلک فی نکاح المحارم علامہ یاتی کا انشاء اللہ تعالی, اور یہ شبہ جو ہے محرموں کے نکاح میں ظاہر ہوتا ہے اس وجہ سے جو آپ کے پاس آ جائے گی, یعنی جو آپ کے سامنے ذکر کی جائے گی انشاءاللہ تعالی. اذا عرفنا هذا, جب ہم نے یہ جان لیا, صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں اذا عرفنا هذا, جب ہم نے یہ جان لیا یعنی شبہ کی قسموں کو جان لیا, اب ہم آگے انہی پر یہ مسائل بیان کرتے ہیں. تو کہتے ہیں اذا عرفنا هذا, جب ہم نے یہ جان لیا تو اب ہم ان سے متعلقہ مسائل ذکر کرتے ہیں. اب مسائل ذکر کریں گے. کہتے ہیں ومن طلق امرأته ثلاثاً, اور جس شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دیں, ثم وطئها في العدة, پھر اس کے ساتھ صحبت کر لی عدت کے اندر, وقال, اور وہ کہتا ہے علمت انها علی حرام, کہ میں جانتا تھا کہ یہ مجھ پر حرام ہے, حد, تو اس کو حد لگائی جائے گی. کہتے ہیں لزوال الملک المحلل من کل وجہ, لزوال الملک, اس لیے کیونکہ وہ ملکیت ختم ہو گئی, المحلل, جو اس عورت کو حلال کرنے والی تھی, لزوال الملک المحلل من کل وجہ, اس لیے کیونکہ وہ ملکیت جو اس کو حلال کرنے والی تھی وہ ہر اعتبار سے ختم ہو گئی, فتکون الشبہ منتفیتن, تو شبہ جو ہے وہ منتفی ہے, یہاں کسی قسم کا شبہ موجود نہیں ہے. خود اس نے بھی کہا ہے مجھے بھی کوئی شبہ نہیں تھا حرام ہونے میں. तो फतकूनु शुभतु मुंतफियतन, तो शुभा मुंतफी है। वकद नतकल किताब बिंतफा इल हिल्ली, और तहकी किताब ने भी जिक्र किया है हिल्लत के मुंतफी होने को, किताबुल्लाह के अंदर भी इसके हराम होने को जिक्र किया गया है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं फइन तल्लकहा फला तहिल्लु लहू मिन बादु, फइन तल्लकहा, अगर खावन ने बीवी को तीसरी तलाक भी दे दी, तल्लकहा से क्या मुराद है, तीसरी तलाक, फइन तल्लकहा, अगर खावन ने बीवी को तीसरी तलाक दे दी, फला तहिल्लु लहू मिन बादु, तो उसके बाद यह औरत इस आदमी के लिए हलाल नहीं, हत्ता तन की हजन गैरा, यहां तक कि यह किसी और शख्स से निकाह कर ले। तो कहते हैं वकद न तकल किताब बिंतफा इल हिल्ली, और इस हिल्लत के खत्म होने पर किताबुल्लाह ने भी नुतुक किया है, किताबुल्लाह ने भी इसको जिक्र किया है। वकद न तकल किताब बिंतफा इल हिल्ली, और किताबुल्लाह ने भी बात की है हिल्लत के मुंतफी होने की। व अला जालिकल इजमाऊ, और इस पर इजमा है, सारी उम्मत का इजमा है कि तीन तलाकों के बाद औरत मर्द के लिए मुकम्मल हराम हो जाती है भाई। वला युअतबरु कौलुल मुखालिफी फीही, और इसके अंदर मुखालिफत करने वाले के कौल का कोई एतबार नहीं है। लिअन्नहु खिलाफुन लख्तिलाफुन, इसलिए क्योंकि ये खिलाफ है न के इख्तिलाफ, भाई एक है खिलाफ एक है इख्तिलाफ। खिलाफ वो है जो बगैर दलील के हो, खिलाफ वो है जो बगैर दलील के हो, और इख्तिलाफ वो होता है जो दलील के साथ होता है। तो अगरचे बाजों ने इसके अंदर भी इख्तिलाफ किया है, लेकिन वो खिलाफ है इख्तिलाफ नहीं, यानी वो बगैर दलील के बात कर रहे हैं, लिहाजा उसकी तरफ तवज्जो नहीं की जाएगी। तो कहते हैं वला युअतबरु कौलुल मुखालिफी फीही, और इसके अंदर मुखालिफ के कौल का एतबार नहीं किया जाएगा। लिअन्नहु खिलाफुन लख्तिलाफुन, इसलिए क्योंकि ये खिलाफ है न के इख्तिलाफ। वलौ काला, और अगर ये शख्स कहता है, ये शख्स जिसने तीन तलाकें देने के बाद इद्दत के अंदर बीवी से सोहबत की है, वलौ काला, अगर इस शख्स ने कहा जनन तो अन्नहा तहिल्लु ली, कि मैंने तो यह गुमान किया था कि यह मेरे लिए हलाल है, ला युहद्दु, तो इसको हद नहीं लगाई जाएगी। लिअन्न ज़न्न फी मौज़िही, इसलिए क्योंकि यह गुमान अपने महल में है। मैंने बतलाया था कि आदमी को शुबा लग जाए तो यह भी देखा जाएगा वो शुबे की जगह भी है या नहीं, शुबे की जगह हो तो फिर उसके शुबे का एतबार है, वरना उसके शुबे का कोई एतबार नहीं, और ये शुबे का महल है। वजह यह कि इस औरत का खाना पीना रिहाइश वगैरह सब इस मर्द के जिम्मे है, लिहाजा किसी आदमी को शुबा लग सकता है भाई। तो ये माना है लिअन्ना ज़न्न फी मौज़िही, इसलिए क्योंकि ये गुमान अपने महल में है, अपने मकाम में है। लिअन्ना असर अल मिल्क क़ाइमुन, इसलिए क्योंकि मिल्कियत का असर मौजूद है, यानी इद्दत के अंदर भी मिल्कियत का असर मौजूद है। फी हक नसब वल हब्स वन नफकती, नसब के हक में भी, वल हब्स, हब्स का माना है मना करना रोकना, वन नफका नफके के हक में भी। भाई देखो, एक शख्स अपनी बीवी को तीन तलाकें दे दे और ये औरत तलाक से पहले ही हामिला हो चुकी है, तो इस औरत की इद्दत वज़ए हमल है, तो तीन तलाकें देने के बावजूद देखो इस बच्चे का नसब इस आदमी से साबित हो जाएगा, और नीज इस मुतल्लका का, मुतल्लका सलास का खर्चा भी इद्दत का खावंद के जिम्मे है, उसकी रिहाइश भी खावंद के जिम्मे है, खावंद इसको घर से बाहर जाने से भी मना कर सकता है, तो ये सब निकाह के असरात हैं, तो लिहाजा इसलिए किसी को शुबा हो सकता है। लेकिन ये याद रखना, इन्होंने कहा कि नसब भी साबित हो जाएगा, ये वो सूरत है जब ये तीन तलाकों वाली तीन तलाकों से पहले हामिला है। अगर तीन तलाकें देने के बाद इद्दत के अंदर खावंद ने सोहबत कर ली और इससे वो औरत हामिला हो गई, तो फिर याद रखो इस बच्चे का नसब नहीं साबित होगा भाई, क्योंकि ये शुबा फिल फेल है, और साहिब हिदायत ने शुरू में बताया था कि शुबा फिल फेल के अंदर नसब साबित नहीं होता भाई। तो कहते हैं लिअन असर अल मिल्क क़ाइमुन, इसलिए क्योंकि इस खावन की मिल्कियत का असर इद्दत में भी मौजूद है। फी हक नसबी, नसब के हक में, वल हब्सी, और मना करने के हक में, यानी खावन उसको घर से बाहर जाने से मना कर सकता है, तो नसब के हक में भी मिल्कियत कायम है, वल हब्सी, और मना करने के हक में भी, व नफकती, और नफके के हक में भी। फातु बिरज़न्नहु फी इस्कातिल हद्दी, लिहाजा इसके गुमान का एतबार किया जाएगा हद को साकित करने में। वह उम्मुल वलदी इदा आतकहा मौलाहा, और इसी तरह उम्मे वलद जब उसको उसका आका आजाद कर दे। वल मुख्तलियातु वल मुतल्लकतु अला मालिन, और इसी तरह मुख्तलिया यानी वो औरत जिसने खुला किया है खावंद के साथ, वल मुतल्लकतु अला मालिन, और वो औरत जिसको तलाक दी गई है माल के इवज, बिमंजिलतिल मुतल्लकति सलास, ये सब भी मुतल्लक सलास के दर्जे में है। यानी तीन तलाकों वाली की तफसील हमने बयान कर दी कि अगर खावंद को शुबा था इद्दत के अंदर तो हद नहीं, और अगर शुबा नहीं था तो हद है। इसी तरह अगर आका अपनी उम्मे वलद को आजाद कर दे और फिर इद्दत के अंदर उसे सोहबत कर ले, या एक औरत ने खुला किया है या खावन ने उसको माल के बदले तलाक दी है और इसके साथ खावन इद्दत के अंदर सोहबत कर ले, तो ये सब भी इसी कबील से हैं, इसी मुतल्लका सलास के हुक्म में हैं। फिर तर्जमा देख लीजिए, कहते हैं वह उम्मुल वलदी इदा आतकहा मौलाहा, और उम्मे वलद जब उसको उसका आका आजाद कर दे, वल मुख्तलियातु और खुला करने वाली, वल मुतल्लकतु अला मालिन और माल की शर्त पर जिसको तलाक दी गई है, बिमंजिलतिल मुतल्लकति सलास, ये भी मुतल्लक सलास के दर्जे में है, लिसुबूतिल हुरमति बिल इजमाई, बवजह हुरमत के साबित होने के बिल इजमा, कि बिल इजमा इन सब की हुरमत भी साबित है, जैसे कि मुतल्लक सलास की हुरमत बिल इजमा भी साबित है और कुरान से भी साबित है भाई। वकिया मुबाजिल आसार फिल इद्दती, और मिल्कियत के बाद आसार मौजूद हैं इद्दत में, इस वजह से कि बिल इजमा हुरमत भी साबित है। वकिया मुबाजिल आसार फिल इद्दती, और इस वजह से कि बाज मिल्कियत के आसार इद्दत में भी मौजूद हैं, इन सब के अंदर भी रिहाइश देना भी इन्हीं के जिम्मे है, खर्चा देना भी इनके जिम्मे है, बाहर जाने से भी ये मना कर सकते हैं, तो लिहाजा इन सब के अंदर इद्दत के अंदर खावन या आका की मिल्कियत के असरात पाए जा रहे हैं, लिहाजा अगर उसको शुबा हुआ है तो ये शुबा मोतबर है भाई, ये माना है। फिर तर्जमा देख लीजिए, लिसुबूतिल हुरमति बिल इजमाई, बिल इजमा हुरमत के साबित होने की वजह से, वकियाम बाजिल आसार फिल इद्दती, और इस वजह से कि खावन की मिल्कियत के बाज असरात अभी भी मौजूद हैं इद्दत में। आगे देखिए, वलव काल लहा अंति खलीयतुन औ बरीयतुन, खलीयतुन का माना है आजाद और बरियतुन का माना भी है आजाद। खावंद अपनी बीवी से कहता है अंति खलीयतुन तू आजाद है, या अंति बरियतुन तू आजाद है, तो याद रखो ये किनाया है, इसमें तलाक का माना भी है और गैर तलाक का माना भी है। एक माना यह है कि तू मेरे निकाह से आजाद है, या माना यह है आज से तू कामकाज से आजाद है, कामकाज के लिए मैं बांदी ले आऊंगा, या इसी तरह खावंद बीवी से कहता है अमरु की भी यदि की, तेरा मामला तेरे हाथ में है, तो ये भी याद रखो किनाया है तलाक का इख्तियार देने से। ये तलाक नहीं दे रहा अमरू की भी यदि की, बल्कि इख्तियार दे रहा है, लेकिन ये इख्तियार का किनाया है, तो इसके जरिए भी तलाक बाइन वाके होगी भाई। तो ये किनायात हैं, और किनायात के अंदर ऊपर मैंने बतलाया था कि सहाबा का इख्तिलाफ है, बाद सहाबा फरमाते हैं कि तमाम किनायात से तलाक बाइन होती है, और बाद सहाबा फरमाते हैं तमाम किनायात से तलाक रजई होती है, लिहाजा यहां पर भी एक शरई दलील मौजूद है। लिहाजा अगर किनाये के जरिए खावन बीवी को तलाक दे और फिर इद्दत के अंदर उससे सोहबत कर ले, तो फिर इस सूरत के अंदर उस पर हद जारी नहीं होगी। तो कहते हैं वलव काल अलहा अंति खलीयतुन औ बरीयतुन, और अगर खावन ने बीवी से कहा कि तू आजाद है, औ अमरु की भी यदि की, या तेरा मामला तेरे हाथ में है, फख्तारत नफसहा, तो उस औरत ने अपनी जात को पसंद कर लिया यानी जुदाई को इख्तियार कर लिया, सुम्मवती अहा फिल इद्दति, फिर खावन ने उसे सोहबत कर ली इद्दत में, व काला, और वो कहता है अलिम तु अन्नहा अलैया हरामुन, कि मैं जानता था कि यह मुझ पर हराम है, लम युहद्दा, तो इसको हद नहीं लगाई जाएगी, लिख्तिलाफ सहाबती रजी अल्लाह ताला अन्हुम फीही, इस वजह से कि सहाबे किराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन का इसमें इख्तिलाफ था, फमिन मजहब उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के मजहब में से है कि अन्नहा ततलीकतुन रजईयतुन, कि ये जो किनायात जो हैं ये तलाक रजई हैं, हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का यह मजहब था। वह कदल जवाब उफी साइरिल किनायाती, और इसी तरह है जवाब तमाम किनायों में, یعنی اسی طرح ہے مسئلہ تمام کنایات کے اندر. وَقَذَا اِذَا نَوَا سَلَاسًا, اور اسی طرح ہے جب وہ خاوند تین کی نیت کرے. میں نے بتایا کہ کنایات کے اندر تین کی نیت بھی جائز ہے, تو اگر خاوند تین کی نیت کر لے پھر بھی یہی حکم ہے. وجہ یہ کہ بے شک خاوند تین کی نیت کر لے, اختلاف تو صحابہ کا ہے اس کے اندر کہ طلاق بائن ہوگی یا طلاق رجعی ہوگی, تو اس اختلاف تو اپنی جگہ پر اسی طرح ہے بھائی. تو کہتے ہیں وَقَذَا اِذَا نَوَا سَلَاسًا, اور اسی طرح اگر اس نے کنائی الفاظ کے ذریعے تین کی نیت کی تو پھر بھی اسی طرح ہوگا مسئلہ. لِقِيَامِ الْاِخْتِلَافِ مَعَ ذَلِكَ, اس وجہ سے کہ اختلاف موجود ہے باوجود اس تین کی نیت کے. آگے دیکھیے, وَلَا حَدَّ عَلَى مَنْ وَطِئَ جَارِيَةَ وَلَدِهِ وَوَلَدِ وَلَدِهِ. صورت یہ, ایک شخص نے اپنے بیٹے کی باندی سے صحبت کی یا دادا نے اپنے پوتے کی باندی سے صحبت کی, یعنی چاہے اولاد ہو یا اولاد کی اولاد ہو, جس کی بھی باندی سے اوپر کا باپ دادا صحبت کر لے گا تو وہاں حد نہیں آئے گی, کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا انت و مالک لی ابی کا, اور دادا پر دادا یہ سب بھی کیا ہیں, اب ہیں, باپ ہیں, البتہ دور کے باپ ہیں. جیسے اوپر کی دادیاں نانیاں سب مائیں ہیں, البتہ ذرا دور کی مائیں ہیں بھائی. تو کہتے ہیں ولا حد علی من وطئ جاریت ولدہ وولد ولدہ, اور کوئی حد نہیں ہے اس شخص پر جس نے اپنے اولاد کی باندی سے یا اولاد کی باندی سے صحبت کی. وَإِن قَالَ عَلِمْتُ أَنَّهَا عَلَيَّ حَرَامٌ, اگرچہ وہ کہتا ہے کہ میں جانتا تھا کہ یہ مجھ پر حرام ہے. لِأَنَّ شُبْهَةَ حُكْمِيَّةٌ, اس لیے کیونکہ یہ جو شبہ ہے یہ حکمی ہے, یعنی یہ شبہ فعل محل ہے. لِأَنَّهَا نَشَأَتْ عَنْ دَلِيلٍ, کیونکہ یہ شبہ دلیل سے پیدا ہوا ہے. وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ, اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول مبارک ہے, آپ نے فرمایا انت و مالک لی ابی کا, کہ تو اور تیرا مال دونوں تیرے باپ کے ہیں. وَالْأُبُوَّةُ قَائِمَةٌ فِي حَقِّ الْجَدِّ, اور باپ ہونا دادا کے حق میں بھی ثابت ہے, دادا اور نانا کے حق میں بھی ثابت ہے. وَيَثْبُتُ النَّسَبُ مِنْهُ, اور اس سے نسب بھی ثابت ہو جائے گا, اس باپ سے نسب بھی ثابت ہو جائے گا, دادا نانا سے بھی نسب ثابت ہو جائے گا, کیونکہ وہ سب بھی اب ہیں بھائی. تو کہتے ہیں وَيَثْبُتُ النَّسَبُ مِنْهُ, اور اس باپ سے نسب بھی بچے کا ثابت ہو جائے گا. وَعَلَيْهِ قِيمَةُ الْجَارِيَةِ, اور اس پر باندی کی قیمت واجب ہوگی, وہ بیٹے کو ادا کرنا پڑے گی. وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ, اور تحقیق ہم نے اس مسئلے کو ذکر کیا تھا. وَإِذَا وَطِئَ جَارِيَةَ أَبِيهِ أَوْ أُمِّهِ أَوْ زَوْجَتِهِ, اور جب کسی شخص نے صحبت کر لی اپنے باپ کی باندی سے, او امیہ ای جاریتہ امیہ یا اپنی ماں کی باندی سے, او زوجتہ یا اپنی بیوی کی باندی سے. وقال, اور وہ کہتا ہے ظننت انھا تحل لی, کہ میرا تو یہ گمان تھا کہ یہ میرے لیے حلال ہے. فلا حد علیہ, تو اس پر حد نہیں ہے. اور آپ نے پڑھا تھا یہ شبہ فیل ہے, شبہ فیل فیل ہے, لہذا اگر اس کا خیال یہ تھا کہ یہ میرے لیے حرام ہے پھر حد جاری ہوگی. تو کہتے ہیں وقال, اور وہ کہتا ہے ظننت انھا تحل لی, کہ میرا تو یہ گمان تھا کہ یہ میرے لیے حلال ہے. فلا حد علیہ, تو اس پر کوئی حد نہیں ہے. ولا علی قاضی فیہ, اور اس پر تہمت لگانے والے پر بھی حد نہیں ہے. بھئی دیکھیے, ایک آدمی نے اپنے باپ کی باندی سے یا ماں کی باندی سے صحبت کر لی, یا خاون نے بیوی کی باندی سے صحبت کر لی, اور پھر کہتے ہیں ہم تو سمجھے تھے یہ ہمارے لیے حلال ہے, تو حد تو ساقط ہو جائے گی, لیکن یہ جو انہوں نے فیل کیا ہے یہ فیل زنا ہی ہے. لہذا ان کو اگر کوئی شخص بعد میں زانی کہہ دے تو اس پر حد قذف نہیں آئے گی, کیونکہ اب یہ محسن نہ رہے بھائی, یہ زنا سے پاک دامن نہیں رہے بھائی. یہ معنی ہے کہ فلا حد علیہ, اس پر بھی کوئی حد نہیں ہوگی. ولا علی قاضی فیہ, اور اس پر زنا کی تہمت لگانے والے پر بھی حد نہیں ہوگی. وَإِن قَالَ, اور اگر اس شخص نے کہا عَلِمْتُ أَنَّهَا عَلَيَّ حَرَامٌ, کہ میں جانتا تھا کہ یہ مجھ پر حرام ہے, حد, تو پھر اس کو حد لگائی جائے گی. وَقَذَا الْعَبْدُ إِذَا وَطِئَ جَارِيَةَ مَوْلَاهُ, اور اسی طرح غلام جب وہ وطی کر لے اپنے آقا کی باندی سے. لِأَنَّ بَيْنَهَا أُولَى انبساطًا فِي الْإِنْتِفَاعِ, انبساط پوا کے ساتھ ہے بھائی, انبسط ينبسط انبساطًا, یہ بے تکلفی کو کہتے ہیں, باپ بیٹے کے آپس میں بے تکلفی ہوتی ہے ایک دوسرے کا مال استعمال کرنے میں، اسی طرح میاں بیوی بھی بے تکلفی سے ایک دوسرے کا مال استعمال کرتے ہیں، غلام بھی آقا کا مال بے تکلفی سے استعمال کرتا ہے، تو ان سب میں انبساط ہوتا ہے، اس وجہ سے کسی کو شبہ لگ سکتا ہے بھائی۔ تو کہتے ہیں لِأَنَّ بَيْنَهَا أُولَئِ، اس لیے کیونکہ ان لوگوں کے بیچ انبساطاً فِي الْإِنْتِفَاعِ، چیزوں سے نفع اٹھانے کے اندر بے تکلفی ہوتی ہے، فَظَنُّهُ فِي الْإِسْتِمْتَاعِ مُحْتَمَلٌ، لہذا اس کا گمان نفع اٹھانے میں محتملٌ، اس کا احتمال ہے۔ استمتاع یعنی باندی سے نفع اٹھانا، تو باندی سے نفع اٹھانے کا بھی گمان کیا جا سکتا ہے، اس کا بھی احتمال ہے بھائی۔ تو کہتے ہیں فظنہ فی الاستمتاع محتمل، تو باندی سے نفع اٹھانے کے بارے میں اس کا جو گمان ہے محتمل، اس کا بھی احتمال ہے۔ فکانت شبہ اشتباہ، تو یہ شبہ اشتباہ ہے، یعنی اس کو اشتباہ لگ گیا، الا انہ زینا حقیقتا، مگر یہ کہ یہ حقیقت میں زنا ہے، فلا یحد قاذفہ، لہذا ان پر زنا کی تہمت لگانے والے کو حد نہیں لگائی جائے گی۔ وکذا اذا قالت الجاریت، اور اسی طرح ہے جب باندی نے یہ کہا، بھئی دیکھیے بیٹے نے باپ کی باندی سے صحبت کر لی، یا بیٹے نے ماں کی باندی سے صحبت کر لی، یا خاوند نے بیوی کی باندی سے صحبت کر لی، اور یہ کہتے ہیں ہمیں پتا تھا یہ ہمارے لیے حرام ہے، تو پھر ان پر حد آئے گی۔ لیکن اگر اس باندی نے کہہ دیا کہ میرا تو خیال تھا یہ میرے لیے حلال ہیں، اس لیے میں نے ان کو وتی کرنے دی، تو اس صورت میں بھی حد ساقط ہو جائے گی۔ وجہ یہ کیونکہ جب باندی نے کہہ دیا کہ میں تو سمجھتی تھی کہ یہ وتی حلال ہے، تو اس باندی کے گمان کی وجہ سے باندی پر حد نہیں آ سکتی۔ جب باندی پر حد نہیں آ سکتی تو اس باندی کے ساتھ وتی کرنے والے پر بھی حد نہیں آئے گی، کیونکہ فعل تو ایک ہی تھا بھائی، اور ایک ہی فعل کی وجہ سے ایک پر حد آئے اور ایک پر نہ آئے، ایسا نہیں ہو سکتا بھائی۔ جب حد نہیں آئے گی تو دونوں پر نہیں آئے گی، ایک ہی فعل کے اندر ایک پر سے آپ شبے کی وجہ سے حد کو ساقط کر دیں اور دوسرے پر آپ شبے کی وجہ سے حد کو ساقط نہ کریں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب باندی پر سے شبے کی وجہ سے حد ساقط ہو رہی ہے تو اس کے ساتھ جس شخص نے وتی کی ہے اس پر سے بھی حد ساقط ہو جائے گی، کیونکہ فعل تو ایک ہی ہے، ایک ہی فعل زنا ہوا ہے، تو جب ایک پر سے حد شبے کی وجہ سے ساقط ہو گئی تو دوسرے پر سے بھی شبے کی وجہ سے حد ساقط ہو جائے گی بھائی۔ تو کہتے ہیں وَقَذَا اِذَا قَالَتِ الْجَارِيَتُ، اور اسی طرح ہوگا مسئلہ، یعنی حد نہیں آئے گی جب باندی نے کہا ظننت انه يحل لي، کہ میرا تو یہ گمان تھا کہ یہ میرے لیے حلال ہے۔ والفحل لم يدعي، فحل کہتے ہیں نر کو، نر یعنی مذکر یعنی مرد مراد ہے، والفحل لم يدعي، اور حال یہ ہے کہ مرد نے یہ دعویٰ نہیں کیا، اس نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں تو سمجھتا تھا یہ میرے لیے حلال ہے، لیکن باندی نے یہ دعویٰ کر دیا کہ میں تو سمجھتی تھی یہ میرے لیے حلال ہے، تو اس صورت میں بھی حد نہیں آئے گی۔ فی الظاہری، فی ظاہری روایتی، ظاہر روایت کے مطابق، توجہ ہے، ظاہر روایت کے مطابق جب باندی پر حد نہیں ہے تو وتی کرنے والے پر بھی حد نہیں آئے گی، یہ مانا ہے۔ پھر ترجمہ دیکھ لیجئے، کہتے ہیں وقدا اذا قالت الجاریت، اور اسی طرح ہے مسئلہ، جب باندی نے کہا ظننت انه يحل لي، کہ میرا تو یہ گمان تھا کہ یہ میرے لیے حلال ہے، والفحل لم يدعي، اور حال یہ ہے کہ مرد نے یہ دعویٰ نہیں کیا، فی الظاہری اي فی ظاہر الروایت، ظاہر روایت میں اس صورت میں بھی چاہے مرد نے دعویٰ نہ کیا ہو حلال ہونے کا پھر بھی اس پر حد نہیں آئے گی۔ لِأَنَّ الْفِعْلَ وَاحِدٌ، اس لیے کیونکہ فعل تو ایک ہی ہے بھائی۔ وَإِنْ وَطِئَ جَارِيَةَ أَخِيهِ أَوْ عَمِّهِ، اور اگر کسی شخص نے اپنے بھائی کی باندی سے وتی کر لی یا اپنے چچا کی باندی سے وتی کر لی، وقال، اور وہ کہتا ہے ظننت انها تحل لي، کہ میرا تو یہ گمان تھا کہ یہ میرے لیے حلال ہے، خود اس کو حد لگائی جائے گی کیونکہ یہ شبے کا محل نہیں، بھائی اور چچا کا مال بے تکلفی کے ساتھ استعمال نہیں کیا جاتا بھائی، وہاں بے تکلفی نہیں ہوتی۔ تو کہتے ہیں خود اس کو حد لگائی جائے گی، لِأَنَّهُ لَمْ بِسَاطَ فِي الْمَالِ فِيمَا بَيْنَهُمَا، اس لیے کیونکہ ان کے بیچ میں مال کے اندر بے تکلفی نہیں ہوتی۔ وَقَدَا سَائِرُ الْمَحَارِمِ سِوَ الْوِلَادِ لِمَا بَيَّنَّا، اور اسی طرح باقی محرم بھی ہیں سِوَ الْوِلَادِ، ولادت کے علاوہ، لِمَا بَيَّنَّا، اس وجہ سے جو ہم نے بیان کر دی۔ ولاد یعنی پیدائش بھائی، جن محرم رشتہ داروں سے پیدائش والا رشتہ ہے ان میں تو مال کے اندر بے تکلفی ہوتی ہے، یعنی باپ دادا پر دادا یا اسی طرح نانا پر نانا وغیرہ، یا نیچے کی طرف چلے جائیں بیٹا پوتا پڑ پوتا ہے، یا اسی طرح نواسا پڑ نواسا وغیرہ، ان سب میں پیدائش والا تعلق ہے، ان سب میں پیدائش والا تعلق ہے، لہذا ان کے اندر تو مال کے اندر بے تکلفی ہوتی ہے، لیکن اور باقی جو محرم رشتہ دار ہیں، مامو ہے یا پھوپھی وغیرہ ہے یا خالہ ہے، ان کے ساتھ محرمیت والا رشتہ تو ہے لیکن پیدائش والا رشتہ نہیں، لہذا ان کے ساتھ بھی مال کے اندر بے تکلفی نہیں ہوتی، لہذا ان میں سے کسی کی باندی کے ساتھ کوئی صحبت کرے اور کہے میرا تو یہ خیال تھا یہ میرے لیے حلال ہے، پھر بھی اس پر حد جاری کی جائے گی، اسی وجہ سے جو صاحب ہدایہ نے بیان کر دی کہ ان کے درمیان مال کے اندر بے تکلفی نہیں ہوتی بھائی. تو کہتے ہیں وقد سائر المحارمی، اور اسی طرح باقی محرم بھی ہیں سول ولادی، ولادت کے علاوہ جن کے ساتھ محرمیت ہے، لما بینا، اس وجہ سے جو ہم نے بیان کر دی کہ ان کے ساتھ ولادت والا رشتہ نہیں ہے بھائی. بات سمجھ میں آ گئی، حل ہو گیا. چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام.